करीना और वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप की दुश्मनी कोई एक दो दिन पहले शुरू हुई बात नहीं थी। वे कई बार आपस में भिड़ चुके थे और हर बार उनकी शिकायतें बढ़ती ही जा रही थीं। इसलिए जैसे ही किलोव को पता चला कि करीना अपने बेड़े के साथ आ रही है, उसने तुरंत आदेश दे दिया और एक के बाद एक तैरते हुए युद्धपोत हॉनचेन के खंडहरों के भीतर उठने लगे। लगभग उसी समय थंडहॉक पर सवार रॉकी ने भी आदेश दिया कि वह अपने दोनों युद्धपोतों की ऊंचाई एक बार फिर कम कर दे। यह एक ऐसी रणनीति थी जिस पर उसने और करीना ने वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप को खत्म करने के अभियान के हिस्से के रूप में पहले भी चर्चा की थी। करीना दुश्मन के बेड़े के लिए जिम्मेदार थी, जबकि रॉकी जमीन से वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के अड्डे पर नियंत्रण करेगा और दोनों तरफ से हमला करके समुद्री लुटेरों का पूरी तरह से सफाया कर देगा। इसलिए जब वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का बेड़ा उड़ान भरता रहा तो रॉकी ने चुपचाप अपने दो जहाजों की ऊंचाई कम कर दी और चतुराई से मुख्य बल के नीचे छिप गया। उसके बाद रॉकी ने वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के आने पर नजर रखनी शुरू कर दी। ये कहना जरूरी है कि हालांकि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप सिर्फ लुटेरों का एक गिरोह था, फिर भी उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बाकियों को छोड़ दें तो सिर्फ उस लुटेरे समूह के पास मौजूद युद्धपोतों की संख्या ही रॉकी को हैरान करने के लिए काफी थी। उसके देखते देखते हांगचेंग के खंडहरों से एक के बाद एक तैरते हुए युद्धपोत उड़ान भरने लगे। पहले तो वे सिर्फ टोही जहाज थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक के बाद एक कई बड़े युद्धपोत ऊपर चढ़ गए। जब तक रॉकी ने फिर ऊपर देखा, उसने हांगचेंग के खंडहरों के ऊपर 50 से ज्यादा युद्धपोत तैरते देखे, जिनमें पूरे 7 बड़े युद्धपोत शामिल थे। इतना बड़ा बेड़ा न केवल रॉकी की उम्मीदों से अधिक था, बल्कि करीना के बेड़े से भी आगे निकल गया। ये वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप वास्तव में एक कठिन हड्डी है। थंडहॉक के धनुष पर खड़े होकर रॉकी भले ही यह स्वीकार न करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार करना ही पड़ा कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। दरअसल अगर सिर्फ बेड़े के आकार और ताकत की बात करें तो यह पायरेट ग्रुप उसके थंडहॉक शहर से भी ज्यादा ताकतवर था। इससे रॉकी को आश्चर्य हुआ कि लुटेरों का एक छोटा सा गिरोह इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। उसे यह नहीं पता था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप असल में लुटेरों का एक गिरोह तो था ही, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका समर्थन स्काई सिटी, एक मध्यम आकार का शहर, कर रहा था। वाइल्ड हॉर्स सिटी के गुप्त समर्थन के साथ वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप की ताकत स्वाभाविक रूप से एक औसत समुद्री डाकू समूह से कहीं ज्यादा थी। साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप कोई नया नहीं बना था। वाइल्ड हॉर्स सिटी के समर्थन से ये लुटेरे कई सालों से आसमान में छाए हुए थे और इन सालों में उन्होंने दौलत भी जमा कर ली थी। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा वाइल्ड हॉर्स सिटी को दे दिया गया था, फिर भी एक बड़ी रकम बची हुई थी जिसने निस्संदेह समुद्री लुटेरों के ग्रुप को और मजबूत किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि करीना मेरे साथ जुड़ना चाहती थी। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बेड़े को अपनी आंखों से देखकर रॉकी समझ गया कि करीना को उसके साथ क्यों जुड़ना पड़ा और उसने अपने गार्ड कोर की मदद से ही दुश्मन को खत्म करने का साहस किया। बेड़े की ताकत के मामले में करीना की ताकत वास्तव में उनके विरोधियों के बराबर थी। शायद करीना को अपने पूरे चौथी पीढ़ी के युद्धपोत बेड़े की श्रेष्ठता के साथ थोड़ा लाभ हो सकता था, लेकिन ये लाभ बहुत सीमित था। ऐसी परिस्थितियों में अगर हवाई युद्ध छिड़ जाए तो भले ही करीना अंततः जीत जाए, ये निस्संदेह एक क्षतिपूर्ण जीत होगी। पहले सफलता, फिर पतन और तीसरी बार थकावट, उसके पास निश्चित रूप से वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के अड्डे को खत्म करने की ताकत नहीं होगी। यही कारण था कि करीना को रॉकी के साथ गठबंधन करना पड़ा। रॉकी, देखो। जैसे ही रॉकी यह सोच रहा था, लिलिया की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया और उसकी फैली हुई उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए उसने करीना को 4 गार्डों के साथ कोडरोज से दूर उड़ते हुए देखा। एक प्रतिशत शासक और एक विशिष्ट युद्धप्रिय के रूप में करीना स्वाभाविक रूप से एक शून्य जादू योद्धा थी और उसका शून्य जादू कवच न केवल चौथी पीढ़ी का था, बल्कि चौथी पीढ़ी का एक विशेष कवच भी था। उसी समय उसके पास एक शून्य जादू दस्ता भी था, एक दस्ता नहीं बल्कि एक छोटा दस्ता, क्योंकि इस शून्य जादू दस्ते में केवल 4 सदस्य थे। लेकिन इस छोटे से शून्य जादू दस्ते को कम नहीं आंकना चाहिए। करीना ने उन्हें चौथी पीढ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादित कवच से सुसज्जित किया था, इसलिए उनकी युद्ध क्षमता निश्चित थी। अगर आप उनके अपने चौथी पीढ़ी के विशेष कवच को भी जोड़ दें तो इस दस्ते की युद्ध शक्ति को दुर्जेय कहा जा सकता है। ये वास्तव में इस दुर्जेय शक्ति के कारण ही था कि जब दोनों बेड़े एक दूसरे से भिड़ गए तो 4 शून्य जादू योद्धाओं के साथ करीना बेड़े के सबसे आगे उड़ गई। इसी तरह वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने भी शून्य जादू योद्धाओं को उड़ाया, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 5। धिक्कार है, इन डाकुओं के पास वास्तव में 5 शून्य जादू योद्धा हैं। 5 शून्य जादू योद्धाओं को हवा में खड़े देखकर रॉकी को गहरी सांस लेने में कठिनाई हुई और उसे वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप की ताकत का पुनः आकलन करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह चुपचाप चौंका, युद्धभूमि का माहौल अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे करीना ने कुछ कहा हो, या शायद कुछ भी नहीं, लेकिन पलक झपकते ही वह विरोधियों की ओर बढ़ गई। कोई बकवास नहीं, वह सीधे कार्रवाई में जुट गई। अचानक करीना दुश्मन से भिड़ गई और सेनापति होने के नाते जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, उसके पीछे खड़े 4 शून्य जादुई योद्धाओं ने भी स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण किया। पलक झपकते ही दोनों पक्षों के 10 शून्य जादुई योद्धा आकाश में युद्ध में उलझ गए। और जैसे ही शून्य जादुई योद्धा हवा में भीषण युद्ध कर रहे थे, तोपों की गड़गड़ाहट भी गूंज रही थी। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बेड़े ने भीषण बमबारी शुरू कर दी, जिससे हवाई युद्ध शुरू हो गया। रॉकी, क्या हम जल्दी मत करो, थोड़ी देर और इंतजार करो। युद्ध की प्रस्तावना इतनी जल्दी शुरू हो गई थी जो रॉकी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी, लेकिन सोचने पर पता चला कि यह वास्तव में करीना के व्यक्तित्व के अनुरूप थी। हालांकि रॉकी अचानक शुरू हुए युद्ध से विचलित नहीं हुआ, उसने जल्दबाजी में अपने 2 युद्धपोतों को हॉन्गचेंग खंडहर की ओर जाने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि अभी समय नहीं आया था। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और दोनों बेड़े न केवल काफी दूरी बनाए हुए थे बल्कि संयमित भी थे। ऐसे में अगर वह जल्दबाजी में हॉन्गचेंग खंडहरों की ओर बढ़ता तो वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप जरूर सतर्क हो जाता। फिर दुश्मन को अपनी पूरी सेना भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ 2 अनुरक्षक जहाजों को परेशान करने के लिए भेजने से ही उसके रक्षक दल को भारी नुकसान पहुंचता। इसलिए रॉकी ने कुछ देर और इंतजार करने की योजना बनाई, जब तक कि दोनों तरफ के बेड़े पूरी तरह से उलझ न जाएं। यही उसके लिए कोई कदम उठाने का मौका होगा। मुख्य तोपों से गोलीबारी शुरू करो। इन परिस्थितियों में रॉकी ने मुख्य तोपों से गोलीबारी शुरू करने का सीधा आदेश दिया, जिससे थंडरहॉक और एस्कॉर्ट जहाज को अपनी बमबारी के साथ हवाई युद्ध में योगदान करने का मौका मिल गया। हालांकि चूंकि दोनों युद्धपोत पूरे बेड़े के सबसे पीछे और सबसे निचले हिस्से में तैनात थे, इसलिए मुख्य तोपों से लगातार कई राउंड की गई गोलीबारी किसी भी लक्ष्य पर नहीं लगी। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि रॉकी का इस हवाई युद्ध में कोई प्रमुख भूमिका निभाने का कभी इरादा नहीं था। जमीन ही उसका असली युद्ध क्षेत्र था और जिस मौके का उसे इंतजार था वो जल्दी ही आ गया। कई राउंड की गोलाबारी के बाद करीना ने बढ़त बना ली। उसके बेड़े ने गोलीबारी के बीच धीरे धीरे अपनी स्थिति को समायोजित किया, एक चाप बनाया और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, मानो वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के बेड़े को एक बड़े जाल में घेरने का इरादा रखते हों। इसके बाद वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। 50 से ज्यादा युद्धपोत हवा में 2 समूहों में बंट गए, 2 तीखे शंकुओं की तरह करीना के बेड़े की ओर सीधे हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे करीना के बेड़े को तोड़कर तितर बितर करना चाहते हों और फिर उन्हें एक एक करके परास्त करना चाहते हों। आदेश जारी, हॉन्गचेंग खंडहर को लक्ष्य बनाओ, पूरी गति से आगे बढ़ो। जैसे ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे की ओर आक्रमण करना शुरू किया, रॉकी को पता चल गया कि उसका मौका आ गया है, इसलिए उसने तुरंत दोनों युद्धपोतों को पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश जारी कर दिया और सीधे हॉन्गचेंग खंडहर की ओर बढ़ गए, जो वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का बेस था। दोनों पक्षों के बेड़े पूरी तरह से एक गहन युद्ध में लगे हुए थे, ठीक वही अवसर जिसका रॉकी इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत थंडरहॉक और एस्कॉर्ट जहाज को हॉन्गचेंग के खंडहरों की ओर पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। दोनों बड़े युद्धपोत पूरी शक्ति से आगे बढ़े और जल्द ही युद्ध क्षेत्र के नीचे से उड़ान भरते हुए जमीन से केवल 10 मीटर की ऊंचाई पर रहते हुए तेज गति से हॉन्गचेंग के पास पहुंचे और भीषण हवाई युद्ध के कारण वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के बेड़े में किसी को भी उनकी उपस्थिति का पता नहीं चला। ये चूक वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के लिए स्पष्ट रूप से घातक थी, लेकिन रॉकी के लिए यह अच्छी बात थी, क्योंकि थंडरहॉक और एस्कॉर्ट शिप को हॉन्गचेंग के खंडहरों के पास पहुंचने पर लगभग किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। नीचे उतरो, गार्ड कोर तैयार करो। जैसे ही वे हॉन्गचेंग के खंडहरों के पास पहुंचे, रॉकी ने थंडरहॉक और एस्कॉर्ट जहाज को अपनी ऊंचाई और कम करने का आदेश दिया तथा गार्ड कोर को उतरने के लिए तैयार किया। लेकिन जैसे ही थंडरहॉक उतरने वाला था और जो गार्ड लंबे समय से जहाज पर इंतजार कर रहे थे, वे डेक पर पहुंचे ही थे कि अचानक जादुई तोप की आवाज गूंज उठी। तोपों की अप्रत्याशित गड़गड़ाहट इतनी करीब से सुनाई दी मानो कान के बिल्कुल पास हो, और ध्वनि के प्रकट होते ही थंडरहॉक का रक्षात्मक जाल जल उठा। उन्हें मारा गया है। यह महसूस करने पर कि थंडरहॉक को निशाना बनाया गया है, रॉकी, जो जहाज के धनुष पर था, ने जल्दी से बाहर देखा और फिर देखा कि हॉन्गचेंग की टूटी हुई दीवारों और खंडहरों पर 1 दर्जन से अधिक जादुई तोपें उन पर गोलीबारी कर रही थीं। जैसा कि पहले बताया गया है, एयर पायलट ग्रुप का बेस इन डाकुओं के घर जैसा है। वे अपने बेस को ऐसे मजबूत बनाते हैं जैसे अपना घर बना रहे हों। एक तरह से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रॉकी ने थंडरहॉक सिटी का निर्माण किया था, इसलिए भले ही वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का बेस खंडहरों से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से यह काफी मजबूत था। इस स्थिति में रॉकी के पास थंडरहॉक के उतरने को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और गार्ड कोर जो उतरने के लिए तैयार था को भी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इस समय जबरन उतरना और उतरने पर जोर देना निश्चित रूप से एक बुद्धिमान विकल्प नहीं होगा। शहर की दीवारों पर लगी दर्जनों जादुई तोपों का सामना करते हुए खंडहरों में भागने से पहले ही आधी गार्ड कोर मर चुकी होगी। ईमानदारी से कहें तो रॉकी को उम्मीद नहीं थी कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने खंडहरों में दर्जनों मैजिक कैनन स्थापित किए होंगे, इसलिए उसने तुरंत एक नया आदेश जारी किया। बूढ़े जैक, मेरे लिए उन दीवारों को उड़ा दो। समझ गया। डेक पर खड़े बूढ़े जैक ने चिल्लाते हुए तुरंत तोपचियों पर चिल्लाया, लड़कों, क्या तुमने नगर प्रभु का आदेश सुना? इन डाकुओं को हमारी ताकत दिखाओ। उनके आदेश के तहत थंडरहॉक पर 20 से अधिक जादुई तोपें मुख्य और द्वितीयक दीवारों पर निशाना साध रही थी और इसके साथ ही तोपों की गर्जना भी तेज हो गई। दीवारें एक स्काईशिप की तरह स्थिर थी। परिणामस्वरूप थंडरहॉक से हुई बमबारी ने लगभग सभी लक्ष्यों को मारा और हालांकि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने दीवारों की मरम्मत की थी, थंडरहॉक पर मुख्य तोप की शक्ति बहुत अधिक थी। इस प्रकार गोलीबारी के सिर्फ एक दौर के बाद दीवार का पूरा हिस्सा ढह गया और उन पर लगी जादुई तोपें भी गिरती दीवारों के साथ नष्ट हो गईं। जल्दी जल्दी नीचे उतरो। ये देखकर कि दीवारों पर लगी सभी जादुई तोपें नष्ट हो गई हैं, रॉकी ने थंडरहॉक को एक बार फिर नीचे उतरने का आदेश दिया। उनके पास वास्तव में बहुत कम समय था। आकाश में युद्ध अभी भी जारी था और अभी तक किसी विजेता का फैसला नहीं हुआ था, इसलिए उनके लिए बेस पर हमला करने का ये सबसे अच्छा मौका था। अगर वे यह मौका चूक गए और वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बेड़े ने प्रतिक्रिया देते हुए सहायता के लिए युद्धपोत भेज दिए तो ये गार्ड कोर के लिए एक विनाशकारी झटका हो सकता था। रॉकी के लगातार आग्रह पर थंडरहॉक और उसके अनुरक्षक जहाज आखिरकार जमीन पर उतर गए। उनके उतरते ही गार्ड कोर जहाज से कूद पड़े और कुछ ही मिनटों में अपनी कतारें बना ली। लेकिन उसी समय हॉन्गचेंग के खंडहरों से बड़ी संख्या में डाकू बाहर निकल आए। तुरंत ऊपर चढ़ो, फेली कमान का प्रभारी है, गार्ड कोर को कवर करो। थंडरहॉक के अनुरक्षण जहाजों की कमान फेली को सौंपने के बाद रॉकी और लिलिया धनुष से कूद गए और जैसे ही वे चले गए थंडरहॉक और अनुरक्षण जहाजों ने तुरंत उड़ान भरी रॉकी के निर्देशानुसार गार्ड कोर को कवर करने की तैयारी में। हालांकि जैसे ही दोनों युद्धपोतों ने उड़ान भरी कई टोही जहाज और एक अनुरक्षण जहाज वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के गठन से अलग हो गए जो हवाई लड़ाई में लगे हुए थे और हॉन्गचेंग खंडहर की दिशा में तेज गति से उड़ गए। वे अभी भी खोजे जा चुके थे। यह महसूस करने पर कि युद्धपोत ऊपर की ओर आ रहे हैं रॉकी ने मन ही मनाह भरी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने वास्तव में उनकी उपस्थिति का पता लगा लिया था और जवाब में युद्धपोत भेज दिए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि रॉकी का निशाना तो दुश्मन का अड्डा ही था। इसके अलावा उन्होंने शहर की दीवारें उड़ाकर काफी हंगामा मचाया था, इसलिए उनका पकड़ा जाना तो तय था। लेकिन इसका मतलब था कि थंडरहॉक और उसके एस्कॉर्ट जहाज अब गार्ड कोर को कवर नहीं कर सकते थे। दोनों युद्धपोतों को आसमान में दुश्मन के युद्धपोतों को रोकना था, लेकिन सौभाग्य से गार्ड कोर पहले ही सफलतापूर्वक उतर चुका था जिससे दोनों बड़े युद्धपोतों को अलग होने और दुश्मन से उलझने का मौका मिल गया। वरना अगर वे थोड़ा और देर से पहुंचते तो रॉकी और गार्ड कोर दुश्मन से उलझने से पहले उतर भी नहीं पाते, जो कि सबसे बुरी स्थिति होती। तो उसके बाद रॉकी ने फेली को धनुष पर हाथ हिलाया और पास आ रहे दुश्मन जहाजों की ओर इशारा किया। फेली तुरंत उसका इरादा समझ गया और थंडरहॉक और उसके अनुरक्षक जहाजों ने अपनी ऊंचाई बढ़ा दी और आने वाले दुश्मन जहाजों की ओर उड़ चले। गार्डो, यह आपके चमकने का समय है। जैसे ही थंडरहॉक धीरे धीरे दूर चला गया रॉकी ने गार्ड कोर की ओर मुड़कर देखा। बिना किसी उत्साहवर्धक बातचीत के वह गार्डों की आंखों में उत्साह और इच्छा देख सकता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे हवा में उड़ान भरी। उसके बाद गार्ड कोर जो पहले से ही साफ सुथरे वर्गों में पंक्तिबद्ध थे हॉन्गचेंग खंडहरों की ओर बढ़ने लगे। भाइयों, उन सब का वध कर दो। ठीक उसी समय रॉकी गार्ड कोर को हॉन्गचेंग खंडहर के करीब ले गया जब डाकू जो खंडहर के भीतर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भी बाहर निकल आए। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप एक बहुत बड़ा डाकू समूह था जिसमें अनगिनत सदस्य थे। सामान्य सैनिकों के विपरीत जिनके कार्य विभाजन स्पष्ट थे, नौकायन के लिए चालक दल, युद्ध के लिए सैनिक, ये डाकू अलग थे। जहाज पर वे चालक दल के सदस्य थे और हाथ में ब्लेड लिए वे कसाई थे जो बिना पलक झपकाए कत्लेआम करते थे। वे भले ही बदमाशों का एक समूह थे लेकिन वे बहुमुखी योद्धा भी थे। इसलिए जैसे ही गार्ड कोर उतरा वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के डाकू लड़ने के लिए तैयार हो गए। थंडरहॉक और एस्कॉर्ट जहाजों की बमबारी के डर से वे पहले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, लेकिन अब थंडरहॉक और एस्कॉर्ट जहाज वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप द्वारा भेजे गए दुश्मन जहाजों को रोकने के लिए उच्च ऊंचाई पर चढ़ रहे थे। जमीनी लड़ाई पूरी तरह से सैनिकों के हाथों में थी। इन परिस्थितियों में वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के डाकुओं को अब कोई हिचक नहीं रही। अपने अपने हथियार लिए वे जंगली जानवरों के झुंड की तरह हॉन्गचेंग के खंडहरों से पागलों की तरह निकलकर ध्वस्त शहर की दीवार पर चढ़ गए। आगे बढ़ो सब लोग, पागल कुत्तों की तरह झपटते हमलावरों के सामने गार्ड के कैप्टन मोटे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोरदार आवाज में आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह तुरंत अपने पीछे गार्डों के साथ एक कदम आगे बढ़ा। इस समय तक गार्ड कोर ने एक विशाल वर्गाकार संरचना बना ली थी। 300 गार्ड 50-50 की एक पंक्ति में, कुल 6 पंक्तियां थीं। आगे की तीन पंक्तियों में निकट युद्ध सैनिक थे, चौथी पंक्ति में जादूगर थे और आखिरी दो पंक्तियों में धनुर्धर थे। इसलिए जब मोटे ने आगे बढ़ने का आदेश दिया तो गार्डों की पहली तीन पंक्तियां उसके साथ आगे बढ़ी और निकट आ रहे हमलावरों की ओर दृढ़ और स्थिर कदम बढ़ाने लगी। साथ ही पीछे की तीन पंक्तियों में रिमोट यूनिट भी तैयार हो गई। सभी जादूगरों ने अपना जादू चलाया, उनके हाथों में आग के गोले उभर आए जो उनकी हथेलियों के बीच लगातार उछल रहे थे, और सभी तीरंदाजों ने अपने धनुष खींचे, डोरों को पूरी ताकत से खींचा और तीरों की नोक आसमान की ओर तान दी। ये स्पष्ट था कि कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद गार्ड कोर की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ था। उन्हें सुप्रशिक्षित कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि संख्या में थोड़ी कमी को छोड़कर समग्र गुणवत्ता के मामले में गार्ड कोर किसी औपचारिक सैन्य इकाई से लगभग अलग नहीं थे। अनुशासित पहरेदारों के विपरीत सामने से हमला करने वाले हमलावर कहीं ज्यादा अव्यवस्थित थे। खंडहरों से निकलकर बाहर निकलने वाले हमलावरों के पास कोई खास संरचना नहीं थी और वे बिखरे हुए रेत जैसे लग रहे थे। उन्हें योद्धा कहना थोड़ा ज्यादा होगा, वे जंगली जानवरों के झुंड जैसे लग रहे थे। हालांकि हमलावरों को भी फायदा हुआ, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। मलबे से कम 500 लोग निकले जो गार्ड कोर की संख्या से लगभग दोगुने थे। सच कहूं तो जब रॉकी ने इतने सारे हमलावरों को भागते देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के इतने बड़े होने की उम्मीद नहीं की थी। इन हमलावरों और बेड़े को चलाने वाले दल को मिलाकर वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप में लगभग 1000 लोग होंगे। रॉकी को यह नहीं पता था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप जैसे समूह अपने छापों में सिर्फ सामान को ही निशाना नहीं बनाते। वे न तो व्यापारी जहाजों को छोड़ते थे और न ही उन पर सवार लोगों को। इन हमलावरों ने सब कुछ लूट लिया और आकाश में एक मध्यम आकार के शहर के समर्थन से वाइल्ड हॉर्स सिटी गुप्त रूप से शहर के अपराधियों और युद्धबंदियों को वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप को सौंप देता था, जिससे उनकी संख्या नियमित रूप से बढ़ती रहती थी। यही कारण है कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप में इतने सारे लोग थे, जो असामान्य लग सकता है लेकिन करीब से विचार करने पर यह आश्चर्यजनक नहीं था। इसके बावजूद रॉकी अभी भी ज्यादा चिंतित नहीं था। हालांकि हमलावरों की संख्या काफी ज्यादा थी, फिर भी उसे अपनी गार्ड कोर पर पूरा भरोसा था। गार्ड कोर ने भी उनके भरोसे को नहीं तोड़ा। जैसे ही हमलावर जानवर गार्ड फॉर्मेशन के 100 मीटर के दायरे में पहुंचे, पीछे की रिमोट यूनिट से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। धनुर्धारी, तीर छोड़ो। आर्चर ट्रूप्स के नेता का नाम चू डोंग था। वह बैकहिल गांव से आया था और गांव में लिनफेंग का दाहिना हाथ था। वह आर्चर ट्रूप्स का भी नेता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर में शामिल होने के बाद उसने वही पद ग्रहण किया। चू डोंग की दहाड़ के बाद 100 तीरंदाजों ने एक साथ अपनी पूरी तरह खींची हुई धनुष तारें छोड़ दी। कुछ ही देर बाद हवा में एक सरसराहट की आवाज गूंज उठी और 100 तीर ऊपर की ओर उड़ गए। उन्होंने आकाश में एक चाप बनाया और फिर नीचे की ओर मुड़ गए और नीचे हमलावरों की ओर तेजी से झपटे। धनुष खींचो। तीरों की पहली बौछार के बाद चू डोंग फिर चिल्लाया। तीरंदाजों ने उसकी आज्ञा मानकर पीछे से एक समान नए तीर निकाले और फिर से धनुष तानकर आकाश की ओर निशाना साधा। मुक्त करना। आदेश के बाद तीरों की एक और बौछार शुरू हो गई। धनुष खींचो, मुक्त करना। धनुष खींचो, मुक्त करना। चू डोंग के निरंतर आदेश के तहत तीरंदाजों की टुकड़ियां यंत्रवत रूप से क्रियाओं की श्रृंखला दोहराती रहीं, तीरों को लगाना, खींचना और छोड़ना। इन्हीं दोहरावदार क्रियाओं के जरिए तीरों की एक के बाद एक लहरें आसमान में बरसती रहीं, मानो बारिश की बूंदें बरस रही हों। गार्ड कोर की ओर पागलों की तरह बढ़ते डाकुओं को लगातार तीरों की वर्षा के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा। ढाल वाले डाकू तीरों की लगातार बौछारों के बीच अपनी सुरक्षा की गारंटी बमुश्किल दे पा रहे थे, लेकिन ढालविहीन बदकिस्मत डाकुओं के पास कोई चारा नहीं था। छिपने या छुपने की कोई जगह न होने के कारण उनके पास किस्मत पर ही भरोसा करने का एकमात्र विकल्प था। अगर वे भाग्यशाली होते तो वे बिना किसी चोट के बच निकलते, अगर नहीं तो वे तीरों से छलनी होकर छलनी में बदल जाते। जो डाकू लगातार तीरों की वर्षा को झेलने में कामयाब रहे थे और 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद गार्ड कोर की मुख्य संरचना के पास पहुंच गए थे, वे पहले ही लगभग 100 लोगों को खो चुके थे। कुछ लोग तीर लगने से मारे गए, अन्य घायल होने के कारण अपनी आक्रमण क्षमता खो बैठे, जमीन पर गिर पड़े और पीड़ा से चिल्लाने लगे। कुल मिलाकर लगभग 100 लोगों ने अपनी युद्ध क्षमता खो दी। लेकिन तीरों की वर्षा के हमले को सहन करने के बाद भी जो डाकू गार्ड कोर की मुख्य पंक्ति तक पहुंच गए थे, उन्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि आग के गोले की एक श्रृंखला सामने की पंक्तियों के ऊपर से उड़ती हुई उन पर टूट पड़ी। तीरों की तुलना में जादू की मार कम होती थी, लेकिन शक्ति कहीं ज्यादा होती थी। आग के गोले से मारा गया कोई भी डाकू आग की लपटों में जलकर गंभीर रूप से घायल हो जाता था, भले ही उसके पास ढालें हों या उसने कवच पहना हो। फिर भी डाकुओं के लिए यह कोई बुरी बात नहीं थी। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि तीरों की बारिश और जादू दोनों से चोट खाने के बाद लगातार आगे बढ़ रहे गार्ड अचानक तेजी से उनकी ओर बढ़ गए। भाइयों, मुझ पर आक्रमण करो। गार्ड के कैप्टन मोटे ने दहाड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी ऊंची उठाई और डाकुओं पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति बने और युद्ध शुरू कर दिया। गर्जन, दो ही कदमों में मोटे एक डाकू के पास पहुंचा और दहाड़ते हुए अपनी चौड़ी कुल्हाड़ी को क्षैतिज दिशा में घुमाया। कुल्हाड़ी का विशाल सिरा डाकू की कमर की ओर बढ़ा और मन की रोशनी बिखेर रहा था। मोटे के पास जो कुल्हाड़ी थी वह रॉकी ने उसके लिए खास तौर पर खरीदी थी। चाहे सामग्री की बात हो या बनावट की, यह आम पहरेदारों के हथियारों से कहीं बेहतर थी। नतीजतन ये कुल्हाड़ी ऑटन के प्रायोगिक संवर्धन के लिए भी पहली पसंद थी और ऑटन द्वारा सशक्त किए जाने के बाद इसकी शक्ति दो सितारा मन हथियार से भी ज्यादा हो गई थी। दो सितारा मन हथियार पहले से ही काफी शक्तिशाली माना जाता था, जिसकी बाजार में कीमत कम से कम कई हजार स्वर्ण मुद्राएं होती थी। स्वाभाविक रूप से कोई भी इसकी जबरदस्त शक्ति की कल्पना कर सकता था। इसलिए जब मोटे की कुल्हाड़ी डाकू की कमर पर लगी तो डाकू दो टुकड़ों में कट गया। कुछ ही देर बाद डाकू के कटे हुए शरीर से खून, ढेर सारा खून उछलकर आसमान तक पहुंच गया और फिर बारिश की तरह नीचे गिरकर मोटे पर बिखर गया। जब वह खून से लथपथ था तो मोटे को एक अतुलनीय उत्तेजना के साथ चिड़चिड़ापन की लहर महसूस हुई और उसने एक धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया और उसकी ओर दौड़ रहे डाकू तुरंत दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि सभी जानते थे कि खून से उत्तेजित किसी राक्षस को कभी नहीं उकसाना चाहिए। ऐसे दुश्मन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उस दहाड़ ने जमीनी लड़ाई की प्रस्तावना भी पूरी तरह से उजागर कर दी। इस दहाड़ को शुरुआती संकेत मानते हुए ज्यादा से ज्यादा पहरेदार और डाकू एक दूसरे से भिड़ गए, आपस में भिड़ गए और फिर अपने विरोधियों को मार गिराया। भयंकर युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। हमलावर डाकू शिकारी जानवरों की तरह गार्ड कोर पर इस पागलपन के साथ टूट पड़े, जैसे कि उन्होंने सारी बुद्धि खो दी हो, जबकि गार्डों ने भी अपनी तलवारें उठाई और बिना किसी डर के डाकुओं का सामना किया। संख्या के लिहाज से डाकुओं को स्पष्ट बढ़त हासिल थी। कई दौर के लंबी दूरी के हमलों का सामना करने के बाद भी उनकी संख्या लगभग 400 थी, जो गार्डों से भी ज्यादा थी। और यह मत भूलिए कि गार्ड कोर के 300 सदस्यों में से आधे दूर से हमला करने वाली इकाइयां थीं। दूसरे शब्दों में नजदीकी लड़ाई के लिए सिर्फ 150 सैनिक जिम्मेदार थे, जबकि उन पर हमला करने वाले सभी डाकू योद्धा थे। तो सच कहें तो गार्ड कोर 400 से ज्यादा डाकुओं से लड़ने के लिए 150 सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा था। संख्यात्मक असमानता वास्तव में महत्वपूर्ण थी। सच कहूं तो अगर यह एक सामान्य इकाई होती तो संख्या में इतनी असमानता के कारण जीत की कोई उम्मीद नहीं होती। डाकू संख्या में बहुत थे और व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत लड़ाके थे। हताश होने के कारण उनमें एक अदम्य क्रूरता थी जो उन्हें लड़ाई में आसानी से पूर्ण लाभ दिला सकती थी। दुर्भाग्यवश डाकुओं का सामना रॉकी के गार्ड कोर से हो रहा था। रॉकी की कमान के तहत गार्ड कोर ने वास्तव में मनुष्यों के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं की थी। युद्ध में उनका एकमात्र अनुभव राक्षसों से लड़ने का था। डाकू वाकई खूंखार और निर्दयी थे, लेकिन जब उनकी तुलना डेमन्स की क्रूरता और आतंक से की गई तो ये सचमुच छोटी लीग और बड़ी लीग के बीच का मामला था। इस प्रकार संख्या में कम होने के बावजूद गार्ड कोर ही था जो कई क्रूर डाकुओं का सामना करते हुए और भी ज्यादा आक्रामक गति दिखाने में कामयाब रहा। मर जा छोटे शैतान, एक डाकू ने जोर से चिल्लाते हुए अपने स्टील के ब्लेड को नीचे गिराया। ब्लेड की ठंडी चमक सीधे सैंड्रो के माथे पर निशाना साध रही थी। हालांकि इस भीषण प्रहार का सामना करते हुए सैंड्रो बेहद शांत बल्कि भयावह रूप से शांत रहा। उसने ऐसा आभास दिया जैसे वह किसी अराजक युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि अपने सामने खड़े डाकू से आमने सामने की लड़ाई में लगा हुआ था। गिरते हुए ब्लेड का सामना करते हुए उसने शांति से अपने बाएं हाथ की ढाल उठाई। पलक झपकते ही एक झनझनाहट सुनाई दी और जादुई ऊर्जा ढाल ने सहज ही ब्लेड को विक्षेपित कर दिया। ठीक उसी क्षण जब स्टील का चाकू पीछे हटा, सैंड्रो अचानक आगे बढ़ा और अपनी लंबी तलवार निकाल ली। धमाका, जादुई ऊर्जा वाली तलवार डाकू की छाती में घुस गई और यह क्रूर डाकू शीघ्र ही लाश में बदल गया। रून उपकरणों के पूरे सेट पर स्विच करने के बाद गार्डों को उपकरणों में काफी बढ़त मिली। उदाहरण के लिए सैंड्रो की तलवार को ही लीजिए, जो मूल रूप से एक मानक तलवार थी, रून संवर्धन के बाद उसे 1-स्टार मैजिक एनर्जी वेपन की शक्ति मिल गई थी। सामान्य चमड़े के कवच को काटना कागज को काटने के समान था, और यहां तक कि यदि कवच का सामना स्टील से बने कवच से भी हो तो जब तक कवच धारण करने वाला पर्याप्त मजबूत हो उसे आसानी से भेदा जा सकता था। सैंड्रो स्पष्टतः एक बहुत ही सक्षम योद्धा था। इस डाकू को मार गिराने के बाद सैंड्रो ने अपनी निगाहें अगले लक्ष्य पर टिका दी, फिर हाथ में ढाल लेकर वह बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ा और अपने पीछे कम से कम 4 डाकुओं की लाशें छोड़ गया। उनका वर्तमान प्रदर्शन वास्तव में पूरे गार्ड कोर का एक सूक्ष्म रूप था। पागल और उन्मादी डाकुओं का सामना करते हुए गार्ड कोर ने अद्भुत दृढ़ता दिखाई। अत्यधिक भयंकर शत्रुओं की विशाल संख्या का सामना करते हुए एक भी गार्ड ने घबराहट नहीं दिखाई। इसके अलावा उन्होंने भीषण युद्ध के दौरान एक प्रभावशाली संरचना बनाए रखी। ऐसा करने में बैकहिल गांव के सैनिकों की मदद मिली, क्योंकि बैकहिल गांव के सैनिकों को शामिल करने के बाद गार्ड कोर के समन्वय में काफी सुधार हुआ। लिन फैंग और बैकहिल गांव के सैनिकों के पास राक्षसों के खिलाफ वर्षों के युद्ध के कारण इस संबंध में बहुत अनुभव था, जो स्वाभाविक रूप से पूरे गार्ड कोर में फैल गया था। परिणाम स्वरूप, हालांकि डाकुओं के पास ज्यादा लोग थे, फिर भी जब सचमुच नजदीकी लड़ाई शुरू हुई और समय बीतता गया तो गार्ड कोर की ताकत सामने आई। उन डाकुओं के विपरीत जो शुरुआत में तो जोरदार थे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी कमजोर होते गए, गार्ड कोर लड़ाई में और मजबूत होते गए और उनकी गति बढ़ती गई। अंततः जब युद्धभूमि में डाकुओं की लाशों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई तो कुछ बचे हुए डाकू भागने लगे, और पहले भगोड़े के आते ही और भी डाकू भागने लगे और पूरी तरह से परास्त हो गए। पाने की कोशिश करना, जैसे ही रॉकी ने देखा कि अधिकाधिक संख्या में डाकू खंडहरों की ओर भाग रहे हैं, उसने अपनी कुल्हाड़ी हॉनचेंग की दिशा में तान दी और फिर गार्डों को उनका पीछा करने के लिए प्रेरित किया। चल दर, हवा में रॉकी और लिलिया ने भागते हुए डाकुओं को एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए देखा और फिर गार्ड कोर का पीछा करते हुए हॉनचेंग खंडहर की ओर उड़ गए। हाल ही में हुई लड़ाई के दौरान दोनों में से किसी ने भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। पहली बात तो ये कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, और दूसरी बात, रॉकी इस मौके का इस्तेमाल गार्ड कोर की असली ताकत का आकलन करने के लिए भी करना चाहता था। लड़ाई के बाद वह काफी संतुष्ट था। बैकहिल विलेज के मिशन की तुलना में गार्ड कोर की समग्र ताकत में स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ था। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी क्योंकि लुटेरे हारते दिख रहे थे, लेकिन वे बस अपने गढ़ की ओर भाग रहे थे। इसका मतलब था कि न केवल और ज्यादा लड़ाई होने वाली थी, बल्कि यह शहरी युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। सचमुच यही हुआ। हालांकि युद्ध के मैदान में पराजित हुए डाकू भाग रहे थे, लेकिन अपने सैन्य अड्डे होनचेंग खंडहर में लौटते ही उनका उत्साह फिर से जाग उठा। कप्तान और उपकप्तान के रूप में मोटे और लिन फैंग अच्छी तरह से जानते थे कि सड़क पर लड़ाई सबसे खतरनाक थी, इसलिए शहर की दीवारों के आसपास पहुंचने पर उन्होंने गार्ड कोर को छोटे दस्तों में बिखरने का आदेश दिया। प्रत्येक को अपने स्वयं के दस्ते के नेता के नेतृत्व में खंडहरों में ले जाया गया। सड़क पर लड़ाई कुछ इस तरह थी। एक बार जब 300 जवानों वाली गार्ड कोर एक बड़े दल के साथ खंडहरों में घुस जाती तो उन्हें डाकुओं की गुरिल्ला रणनीति का सामना करना पड़ता। इससे न केवल भारी जनहानि होती बल्कि एक अजीब स्थिति भी पैदा हो सकती थी, जहां वे न तो आगे बढ़ पाते और न ही पीछे हट पाते। इसके तुरंत बाद गार्ड कोर के योद्धा एक दर्जन से ज्यादा टुकड़ियों में बढ़ गए और खंडहरों में घुस गए। जहां तक रेंज बलों की बात है, उन्होंने खंडहरों में ऊंची जमीन पर तुरंत कब्जा कर लिया और न सिर्फ पहरेदारों की भूमिका निभाई बल्कि युद्ध की आशंका होने पर तुरंत सहायता देने के लिए भी तैयार रहे। सतर्क रहो, छिपकर किए जाने वाले हमलों से सावधान रहो। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लिए रॉबिन ने अपनी टुकड़ी को अत्यंत सावधानी और बहुत धीमी गति से खंडहरों के बीच से गुजारा। हालांकि होनचेंग खंडहर वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का अड्डा था और डाकुओं ने उसका पुनर्निर्माण किया था, फिर भी यह एक विशाल शहर था, इसलिए ये जगह खंडहर घरों और टूटी दीवारों से भरी हुई थी। दुश्मन इन खंडहरों के किसी भी हिस्से में छिपे हो सकते थे। सावधानी न बरतना बिल्कुल भी उचित नहीं था और लापरवाही से आगे बढ़ना तो दूर की बात थी। दरअसल जैसे ही रॉबिन अपने दस्ते को लेकर खंडहर के एक हिस्से से गुजरा, 7 या 8 डाकू अचानक बाहर आ गए और दोनों पक्षों में तुरंत भिड़ंत हो गई। जल्दी करो, वहां लड़ाई चल रही है, जाकर देखो। जब रॉबिन की टुकड़ी लुटेरों से भिड़ी तो 2 गली दूर स्थित एक गार्ड दस्ते ने लड़ाई की आवाज सुनी। दस्ते के नेता ने अपने आदमियों को शोर के स्रोत की ओर ले जाने में जरा भी देर नहीं की, लेकिन वे सड़क किनारे एक जर्जर मकान से उन्हें घूर रही दुष्ट निगाहों पर ध्यान नहीं दे पाए। जैसे ही दस्ता अनजाने में उस मकान के पास से गुजरा, अचानक मकान के अंदर से एक व्यक्ति उन पर टूट पड़ा। हाँ, केवल एक व्यक्ति बाहर भागा, लेकिन यह व्यक्ति एक शून्य जादू योद्धा था। एक पल में शून्य जादू योद्धा एक गार्ड पर टूट पड़ा, जिसे चिल्लाने का भी समय नहीं मिला इससे पहले कि एक तलवार उसकी छाती में घुसकर उसे आर पार कर दे। इसके बाद शून्य जादू योद्धा उछलकर दूसरे गार्ड के पास पहुंचा, अपनी तलवार घुमाए और उसका सिर साफ साफ काट दिया। ये केवल उस क्षण था जब 2 गार्ड पहले ही नष्ट हो चुके थे कि बाकी दस्ते को एहसास हुआ कि वे एक शून्य जादू योद्धा द्वारा हमला कर रहे थे। स्पष्टतः वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का बेस इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसकी सुरक्षा शून्य जादू योद्धाओं द्वारा की जा रही थी। शून्य जादू योद्धाओं की अचानक भीड़ से गार्ड दस्ता अचंभित रह गया और एक पल में 2 गार्ड मारे गए। इस समय तक गार्ड कोर ने बिल्कुल नए रून उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि हर गार्ड ने रून उपकरणों का पूरा सेट पहन लिया था। इस प्रकार चाहे आक्रमण हो या बचाव, उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी। ये बात पिछली लड़ाइयों में भी साफ दिखाई देती थी, जहां डाकुओं का सामना करते समय गार्ड कोर को उपकरणों में पूरी बढ़त हासिल थी। फिर भी ये लाभ शून्य जादू कवच के खिलाफ अभी भी अपर्याप्त था। रून उपकरण शक्तिशाली था, लेकिन इस स्तर पर यह केवल मन उपकरण के स्तर तक ही पहुंचा था। आखिरकार ऑर्टन अभी भी रूनों पर गहन शोध कर रहा था और रूनों का वास्तविक लाभ पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। अतः एक ही आदान प्रदान के बाद वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के शून्य जादू योद्धा ने दो योद्धाओं को न केवल कुशलतापूर्वक मार डाला बल्कि गार्डों को प्रतिरोध करने में भी शक्तिहीन बना दिया। यह एक शून्य जादू योद्धा है, सिग्नल लॉन्च करें। लगातार दो लोगों की मौत के बाद छोटे रक्षक दस्ते ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक शून्य जादुई योद्धा से हो रहा है तो दस्ते के कप्तान ने जोर से चिल्लाया और तुरंत एक जादुई फ्लैश फेंका। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपना हाथ उठा पाता शून्य जादुई योद्धा तेजी से उसकी ओर बढ़ा और फिर जैसे उसने पिछले दो को मार डाला था उसने अपनी तलवार से जोरदार वार किया। तेज तलवार कप्तान के कंधे पर लगी और बिना किसी प्रतिरोध के उसकी छाती चीरती हुई निकल गई। एक और मारा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दस्ते के कप्तान को मारने के बाद शून्य जादुई योद्धा ने क्षण भर के लिए अपना हमला रोक दिया। फिर उसने व्यंग्य किया, तलवार को मुंह के पास उठाया और जीभ से तलवार पर से ताजा खून चाटा, फिर होठों को सिकुड़कर मुस्कुराया। खून! अपने उपहास में शून्य जादू योद्धा ने अपने मुंह में खून थूक दिया और फिर शेष सात सैनिकों को लगभग मनोरोगी नजर से देखा। हालांकि उसी क्षण जब उसने अपनी नजर गार्डों की ओर घुमाई तो अचानक सभी के सिर के ऊपर एक चमक उठी। स्पष्टतः जैसे ही दस्ते का कप्तान मारा गया अन्य गार्डों में से एक ने तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए आकाश में एक जादुई फ्लैश छोड़ा। ये गार्ड कोर के लिए एक सार्वभौमिक संकेत था। जब भी किसी दस्ते का सामना किसी अपराजेय शत्रु जैसे कि राक्षसों या शून्य जादुई योद्धा से होता तो वे सहायता के लिए जादुई फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऊपर जादू की चमक के विस्फोट को देखते हुए वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के शून्य जादू योद्धा ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकुड़ा और कुछ ही सांसों के बाद एकाकृति आकाश से नीचे उड़ी और एक पल बाद भारी होकर जमीन पर उतरी। चट्टान का गार्ड कोर के होमचेंग खंडहरों में बिखर जाने के बाद रॉकी और लिलिया हवा में गश्त कर रहे थे, किसी भी समय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार। लिलिया पहले ही एक अन्य दस्ते की सहायता के लिए जा चुकी थी, इसलिए जब रॉकी ने आकाश में चमक देखी तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। एक शून्य जादू योद्धा। उतरते ही रॉकी की नजर सबसे पहले शवों के पास खड़े दुश्मन पर पड़ी, जिससे वह कुछ आश्चर्यचकित हुआ। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के पास अभी भी शून्य जादू योद्धा थे। उसके सामने वाला आदमी निस्संदेह वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का एक डाकू था, जिसका मतलब था इस एयर पायरेट ग्रुप में वास्तव में छह शून्य जादू योद्धा थे, जिनमें से पांच करीना के साथ युद्ध में लगे हुए थे जबकि शेष एक बेस पर ही रुका हुआ था। रॉकी को ये देखकर सचमुच झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप की जड़ें इतनी गहरी होंगी। न सिर्फ उनके पास एक विशाल बेड़ा होगा बल्कि उनके पास भारी संख्या में शून्य जादू योद्धा भी होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि ये डाकू इतने सालों से बेरोकटोक आसमान में घूम रहे थे, उनमें वाकई ताकत थी। लेकिन जब रॉकी ने अपनी नजर शून्य जादू योद्धाओं से हटाकर खून के तालाब में पड़ी तीन लाशों पर डाली तो उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। ये लोग, क्या तुमने इन्हें मार डाला? जमीन पर पड़े शवों को देखते हुए रॉकी ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया। क्या तुम इस कचरे के नेता हो? उसके प्रश्न का सामना करते हुए रक्षक लाशों के पास खड़े शून्य जादू योद्धा ने अपने होठों को एक व्यंग्य में मोड़ लिया और लापरवाही से अपने पैर से एक लाश को लात मार दी, जैसे कि वह कचरे के ढेर से निपट रहा हो। इस क्रिया से रॉकी ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठा लिया और उसकी आंखें अनजाने में सिकुड़ गईं। अच्छा, जैसे ही ये शब्द निकले वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ गया। रॉकी का उस आदमी पर कोई नरमी बरतने का इरादा नहीं था जिसने उसके गार्ड्स का कत्लेआम किया था। बिना कुछ कहे उसने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि अपनी रून तलवार उठाकर दौड़ते हुए वार भी किया। हालांकि उसकी तलवार के वार का सामना करते हुए प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में पहले से ही विचित्र भाव अचानक खूनी पागलपन से भर गया। उसने चकमा नहीं दिया बल्कि सीधे उसकी ओर झपटा। जब दो मन अस्त्र हवा में टकराए तो एक झनझनाहट की आवाज गूंजी, जिससे प्रकाश की एक चमक पैदा हुई और फिर आकाश में दोनों आकृतियां कुछ दूरी तक पीछे हट गईं। आपका कवच, क्या इसे संशोधित किया गया है? रॉकी के साथ आमने सामने की भिड़ंत के बाद वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के शून्य जादू योद्धा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस शून्य जादू योद्धा के लिए एक समान परिणाम की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने दूसरी पीढ़ी का कवच मैडमैन मॉडल 4 पहना था, जिसका जादुई ऊर्जा मूल्य 1100 था। इसके विपरीत रॉकी ने पहली पीढ़ी का कवच पहना था, जो उसके ज्ञान के अनुसार 500 के जादुई ऊर्जा मूल्य से अधिक नहीं था। उनका मुकाबला ड्रॉ कैसे हो सकता था? लेकिन इस शून्य जादू योद्धा की प्रतिक्रिया काफी तीव्र थी, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि रॉकी के कवच को संशोधित किया गया होगा। दुर्भाग्य से रॉकी का उसके सवाल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। अपनी वापसी रोककर वह तुरंत पूरी ताकत से आगे बढ़ा और अपनी रून तलवार उठाकर एक और हमला करने लगा। हम्फ, रॉकी को बिना किसी चर्चा के ऐसा करते देख विरोधी शून्य जादू योद्धा ने क्रूरता से उपहास किया और बिना किसी डर के सीधे अपने आरोप का सामना किया। टॉस नाम के इस शून्य जादुई योद्धा को वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप में कसाई उपनाम दिया गया था। उसका व्यक्तित्व असामान्य था, उसे कत्लेआम और खून खराबे का जुनून सवार था। जहां दूसरे लोग हताशा या लालच में समुद्री डकैती की ओर रुख करते थे, वहीं वह सिर्फ हत्या की सुविधा के लिए इसमें शामिल हुआ था। यहां तक कि एयर पायरेट ग्रुप का नेता किलोब भी टॉस के चरित्र से परेशान था, क्योंकि वह बहुत ही अलग थलग था। कई बार किलोब भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जिससे टॉस बैंडिट ग्रुप में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाता था। हालांकि उसकी ताकत वाकई जबरदस्त थी और यही वजह थी कि किलोब ने अनिच्छा से उसे शून्य जादुई कवच का एक सेट दिया, हालांकि सिर्फ दूसरी पीढ़ी का। ज्यादातर समय किलोब टॉस को अपने पास नहीं रखता था, वह उस आदमी की टेढ़ी निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब रॉकी के एक और हमले का सामना करते हुए टॉस ने वह घृणित रूप दिखाया जिसे किलोब जैसे हताश व्यक्ति को भी नापसंद होगा। वह रॉकी के आगे बढ़ने पर अजीब तरह से हंसने और चीखने लगा। भले ही आपके कवच को संशोधित किया गया हो, फिर भी यह कबाड़ है। रॉकी पर हमला करते हुए आगे बढ़ते हुए टॉस ने अपनी लंबी तलवार उठाए और उसे काट डाला। टॉस के लिए यह मायने नहीं रखता था कि रॉकी कौन था, उसे तो हत्या के रोमांच की परवाह थी। गार्ड कोर के हमले ने टॉस को उत्साहित कर दिया था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का बेस गिर जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये गार्ड स्वादिष्ट व्यंजन थे, उसकी जानलेवा इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए एक दावत, और उनमें से मुख्य व्यंजन रॉकी और लिलिया थे। बेस पर तैनात टॉस ने पहले की लड़ाई में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने शहर के भीतर से चुपचाप पूरी लड़ाई देखी थी, जिसने शुरू से ही उसके अंदर हत्या करने की लालसा जगा दी थी। इस प्रकार जब गार्ड कोर खंडहरों में बिखर गया तो वह एक विषैले सांप की तरह टूटी हुई दीवारों के बीच छिप गया और धैर्यपूर्वक अपने भोजन के आने की प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि टॉस थोड़ा निराश था कि रॉकी ने उसे इतनी जल्दी खोज लिया था। उसने शुरू में रॉकी और लिलिया से निपटने से पहले गार्ड कोर के सभी गार्डों को खत्म करने की योजना बनाई थी। वास्तव में टॉस की मूल योजना यही थी, गार्ड कोर के सभी गार्डों को अकेले ही मार डालना। हालांकि यह विचार पागलपन भरा लग रहा था, लेकिन टॉस के व्यक्तित्व, उसकी ताकत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उसके शून्य जादू कवच को देखते हुए यह वास्तव में संभव लग रहा था। दुर्भाग्यवश गार्ड कोर पहले से ही इसके लिए तैयार था, जिसके कारण उसे जल्दी ही वहां पहुंचना पड़ा जहां रॉकी से मुठभेड़ से पहले उसने केवल 3 गार्डों को ही मारा था। फिर भी टॉस को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए चाहे वह गार्ड हो या रॉकी स्वयं, वे सभी उसके शिकार थे। ये केवल मुख्य व्यंजन और साइड डिश के बीच का अंतर था, जिस क्रम में वह उन्हें खाता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस प्रकार रॉकी का सामना करने के बाद टॉस ने अपने शरीर को हवा में झुका लिया, अपनी ओर आती तलवार को चकमा दे दिया और फिर अपने शून्य जादू कवच को अचानक तेज कर दिया। रॉकी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसके पीछे आ गया और तेजी से अपनी तलवार से उस पर वार किया। दूसरी पीढ़ी के शून्य जादू कवच के रूप में मैडमैन टाइप 4 का ऊर्जा मूल्य चौंका देने वाले 1100 अंकों तक पहुंच गया और जादू ऊर्जा मूल्य जितना अधिक होगा कवच का समग्र प्रदर्शन उतना ही मजबूत होगा, जिसमें हमला, बचाव और अचानक विस्फोट की गति शामिल है। इसलिए टॉस के विचार में अपने ही हमले का सामना करते हुए रॉकी, जो पहली पीढ़ी के कवच में था, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और यदि वह कुछ प्रतिक्रिया करने में सफल भी हो गया तो ब्लड पैटर्न मार्क 2 प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा, इसलिए ये हमला अकेले ही परिणाम निर्धारित कर सकता था। जब उसने आत्मविश्वास से अपना कदम बढ़ाया तो उसने एक आवाज सुनी, जब उसकी तलवार रून लॉन्गस्वॉर्ड की नोक पर जोर से लगी और पहले की तरह ही एक चमकदार रोशनी में फूट पड़ी। पीछे से हमला होने के बावजूद रॉकी ने बहुत तेजी से मुड़कर हमला रोका। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने हमले को बाल बाल रोक दिया, लेकिन वास्तव में उसने आसानी से उसे रोक दिया। प्रहार को रोकने के बाद बिना रुके आगे बढ़ते हुए वह हवा में उछला, नाटकीय ढंग से अपना कद इतना ऊंचा कर लिया कि वह टॉस से आधे शरीर की लंबाई ऊपर हो गया, फिर एक ऊंचे स्थान से वह भयंकर रूप से नीचे की ओर टूट पड़ा। जैसा कि पहले बताया गया है, शून्य जादू कवच की लड़ाई शैली एक सपाट सतह वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि एक त्रिआयामी स्थानिक लड़ाई है जो इसे अविश्वसनीय रूप से लचीला और बहुमुखी बनाती है। इसलिए जब तलवार नीचे आई तो टॉस को उसे रोकने के लिए अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से उठाना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अत्यंत शक्तिशाली बल ने अचानक ऊपर से दबाव डाला, जिससे वह हवा से जमीन पर गिर गया। ऐसी अविश्वसनीय शक्ति स्वाभाविक रूप से रॉकी से आती थी, नहीं, सटीक रूप से कहें तो उसके द्वारा पहने गए ब्लड पैटर्न मार्क 2 कवच से, एक ऐसी चाल जो उसने चुपके से बैरन बोलिन से सीखी थी। बैरन बोलिन के साथ पिछली हवाई लड़ाई में रॉकी युद्ध तो जीत गया था, लेकिन बैरन बोलिन से लड़ाई हार गया था। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। बोलिन के हाथों बच निकलना ही रॉकी के लिए एक चमत्कार था, जीत का सपना तो दूर की बात थी। फिर भी हालांकि वह बैरन बोलिन से हार गया, रॉकी ने उनके टकराव के दौरान बहुत कुछ सीखा और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वोलिन का सामना करने के बाद उसकी युद्ध संबंधी अवधारणाओं में काफी सुधार हुआ और उसने कई अत्यधिक व्यावहारिक चालें भी सीखी। उदाहरण के लिए, अब एक ऊंचे स्थान से हमला करने के लिए अपनी स्थिति को ऊंचा करने का उनका कारण उस प्रकार का दमन पैदा करना था जो वे वर्तमान में लागू कर रहे थे। बैरन वोलिन के साथ अपने मुकाबलों में रॉकी को बैरन के कवच के लाभ से कई बार दबाया गया था, हमेशा इस हद तक दबाया गया था कि वह अपना सिर नहीं उठा सकता था, और अब रॉकी ने टॉस को दबाने के लिए उसी विधि का उपयोग करने का इरादा किया था। ये चाल अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी। अचानक शक्तिशाली प्रहार ने टॉस को चौंका दिया और पलक झपकते ही वह 10 मीटर से भी ज्यादा नीचे दब गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने एक तेज धमाका सुना जिसके साथ धूल का एक गुबार उठा। वह सचमुच जमीन पर गिर चुका था। अरे नहीं, टॉस को यह एहसास हुआ कि वह जमीन पर गिर गया है। उसने मन ही मन गाली दी और तुरंत एक तरफ हट गया तथा रॉकी के नीचे की ओर वार से बाल बाल बच गया। टॉस ने अजीब तरह से हमले से बचते हुए जल्दी से उड़ान भरी, लेकिन रॉकी पहले ही उसके ऊपर पहुंच चुका था। जैसे ही टॉस ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, रॉकी ने तलवार से एक और वार किया और जैसे ही वह ऊपर उठने ही वाला था, उसे जोर से नीचे धकेल दिया। निम्न भूमि के विरुद्ध उच्च भूमि का लाभ उठाते हुए रॉकी ने तुरंत टकराव पर नियंत्रण कर लिया, फिर ऊपर से लगातार हमला शुरू कर दिया। जबकि टॉस शून्य जादू कवच से सुसज्जित होने के बावजूद हवा में रॉकी के खिलाफ कोई रणनीति न होने के कारण लगातार जमीन पर दबा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ऊपर चढ़ने का प्रयास करते समय लगातार 3 बार नीचे गिरने के बाद टॉस के चेहरे पर भयावह मुस्कान और उसकी आंखों में जानलेवा भाव दोनों गायब हो गए तथा उनकी जगह तनाव और भ्रम ने ले ली। वह समझ नहीं पा रहा था कि रक पैटर्न मार्क 2 कवच पहने हुए भी उसे पुराने शून्य जादू कवच द्वारा क्यों दबाया जा रहा था। इससे टॉस सचमुच घबरा गया। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के साथ वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार इस तरह दबा दिए जाने पर उसके पलटवार करने के अवसर कम हो जाएंगे। इसलिए कोई और विकल्प न होने पर उसने ऊपर उड़ने का विचार त्याग दिया और इसके बजाय जमीन पर तेजी से फिसलने लगा, अपने ऊपर रॉकी से दूरी बनाने और आसमान पर वापस लौटने की कोशिश में। पूरी रफ्तार से वह जमीन पर सीधी रेखा में दौड़ा, पलक झपकते ही 10 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि रॉकी अभी भी उसके ठीक ऊपर था। धत्तेरी की जिद्दी रॉकी की ओर देखते हुए टॉस ने गालियां दी और पाया कि उसे फिर से गति बढ़ाने की जरूरत है और वह 10 मीटर से अधिक आगे बढ़ गया। लेकिन रॉकी, जो पहले से ही उसकी योजना का अनुमान लगा चुका था, स्वाभाविक रूप से आसानी से विचलित नहीं हुआ और जल्दी से उसका पीछा करने लगा। हालांकि जैसे ही रॉकी ने टॉस को पकड़ लिया और अपनी दमनकारी स्थिति बनाए रखी, लगातार आक्रमण कर रहा टॉस अचानक पलटा और रॉकी की ओर दोनों हाथ बढ़ा दिए। गरजती हुई दोहरी तोपें, रॉकी की ओर हथेलियां तानते हुए टॉस के चेहरे पर फिर से एक भयावह मुस्कान तैर गई। मुस्कान के प्रकट होते ही उसकी उठी हुई हथेलियां तीव्र प्रकाश में फूट पड़ी और उसके बाद 2 जादुई ऊर्जा तोपों के धमाके रॉकी की ओर तेजी से बरसने लगे। मैडमैन टाइप 4 आर्मर का सबसे गौरवशाली हथियार थंडरस डबल कैनन्स हथेलियों में मौजूद मैना लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके शक्तिशाली मैना कैनन बॉल्स बनाता है। इन दोनों विस्फोटों की संयुक्त शक्ति 300 ऊर्जा मान तक पहुंच गई, जो एक असली मैजिक एनर्जी कैनन को टक्कर देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। एक क्षण बाद 2 जोरदार विस्फोट सुनाई दिए और रॉकी हवा में प्रतिक्रिया करने में असमर्थ सीधे 2 तोप के गोलों से टकरा गया। शक्तिशाली जादुई ऊर्जा की गोलियां हवा में फट गईं और धुएं का एक बादल छा गया। हालांकि धुआं छटने से पहले ही एक आकृति आसमान से जमीन पर गिरकर जोर से गिरी। वह रॉकी था जो थंडरस डबल तोपों से मारा गया था। हंफ, रॉकी को आसमान से गिरते देख टॉस को अब घबरा कर भागने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब भागने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके विचार से रॉकी, जो थंडरस डबल कैनन्स की सीधी मार झेल चुका था, बच नहीं सकता था और निस्संदेह बर्बाद हो चुका था। इस तरह एक भयावह हंसी के बीच वह कुछ दूर आगे सरक गया, जमीन पर गिरा और फिर जमीन पर मुंह करके लेटे रॉकी को देखा। फौरन उसने अपने हाथ में पकड़ी रून तलवार उठाई, रॉकी की छाती पर निशाना साधा और जोर से नीचे गिरा दिया। रॉकी की ओर सरकते हुए टॉस ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इससे निपटना बहुत कठिन है। हो, 2 बार उपहास करने के बाद उसने अपने हाथ में तलवार उठाए और रॉकी की छाती पर निशाना साधा। उसके चेहरे पर एक विकृत भाव उभर आया। यद्यपि रॉकी के साथ हुई इस बातचीत ने टॉस पर अप्रत्याशित दबाव डाल दिया था, लेकिन जितना अधिक दबाव, यहां तक कि खतरा, उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से महसूस हुआ, उतना ही अधिक उसे इसमें आनंद आया। किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि उसे मारने का रोमांच। इसलिए जब रॉकी को मारने का समय आया तो उसे बहुत उत्साह महसूस हुआ। वाकई रॉकी एक ऐसी दावत थी जिसका उसने भरपूर आनंद लिया। एक सांस के अंतराल में टॉस ने अपनी लंबी तलवार को रॉकी की छाती की ओर क्रूरतापूर्वक फेंक दिया। एक खनक के साथ तलवार जमीन पर गिरी और प्रचंड बल ने उसे आधा फुट जमीन में धकेल दिया, लेकिन वह रॉकी को नहीं लगी। जिस क्षण तलवार नीचे आ रही थी, रॉकी, जो मृत व्यक्ति से लगभग अप्रभेद्य रूप से जमीन पर पड़ा था, अचानक एक ओर लुढ़क गया, जिससे तलवार का निशाना चूक गया। क्या? टॉस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रॉकी में अभी भी चकमा देने की शक्ति थी, और यह उसके अचंभे के क्षण के दौरान था कि रॉकी, जो घातक हमले से बच गया था, अचानक जमीन से उछलकर आया, जैसे कोई पैंथर अपने शिकार पर झपटता है और उस पर झपटा। उसी समय रॉकी की रून तलवार हरकत में आ गई, उसकी नोक रून प्रकाश से चमक रही थी और उसने एकदम सटीक चाप बनाते हुए एक क्षण में टॉस की गर्दन को चीर दिया। एक तेज आवाज के साथ लंबी तलवार तेजी से गुजरी और रॉकी टॉस के ठीक सामने रुक गया। फिर एक गुर्राहट की आवाज आई और टॉस का सिर उसकी गर्दन से लुढ़क कर रॉकी के पैरों पर गिर पड़ा और वहीं गिर पड़ा। एयर पायरेट ग्रुप में टॉस, जिसे विकृत हत्या की इच्छा वाले कसाई के रूप में जाना जाता था, मर चुका था। जैसे ही सिर जमीन पर गिरा, टॉस का शरीर धीरे धीरे नीचे गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद उसकी गर्दन पर कटोरे के आकार के घाव से बड़ी मात्रा में ताजा खून बहने लगा। किसी वजह से टॉस की गर्दन से असामान्य मात्रा में खून बहकर 2-3 मीटर ऊपर तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फव्वारा बह रहा हो, और जब खून बिखर कर नीचे गिरा तो वह पूरी तरह से खून की बारिश में बदल गया। खून की बारिश रुक गई और नीचे खड़ा रॉकी भीग गया। हालांकि उसे घिन आ रही थी, पर उसे मानना पड़ा कि कत्लेआम से मिलने वाला आनंद किसी भी चीज से अतुलनीय था। उस पल उसे भी थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। शुक्र है कि रॉकी ने जल्दी ही अपनी उत्तेजना को दबा दिया, और फिर उसने नीचे देखा तो टॉस का सिर उसके पैरों पर पड़ा था। नहीं, टॉस का सिर। यहां तक कि मृत्यु के बाद भी टॉस के चेहरे पर आश्चर्य और भ्रम की झलक थी, जो उसके जीवन के अंत के साथ शाश्वत हो गई। अपने अंतिम क्षण तक टॉस एक बात समझ नहीं पाया, उसकी मृत्यु कैसे हुई। 2 थंडर तोपों से घायल रॉकी के पास जवाबी हमला करने की क्षमता कैसे हो सकती थी? उसने तो सिर्फ पहली पीढ़ी का कवच पहना हुआ था। थंडर तोप की शक्ति लगभग एक मानक जादुई ऊर्जा तोप के बराबर थी, और सीधे प्रहार से रॉकी को कम से कम गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेहोश हो जाना चाहिए था। तो टॉस की मृत्यु हो गई। उसे यह समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। वह ये समझ ही नहीं पाया कि रॉकी ने उसके साथ स्थिति को कैसे उलट दिया। लेकिन उसका हैरान होना स्वाभाविक था, क्योंकि टॉस को कभी पता ही नहीं चला होगा कि रॉकी का कवच रून संवर्धित होने के बाद 900 अंकों के जादुई ऊर्जा मूल्य तक पहुंच गया था। यह मूल्य पहले से ही दूसरी पीढ़ी के कवचों के औसत के बराबर था। इसलिए जादुई ऊर्जा मूल्य के मामले में रॉकी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, और थंडर तोप से घायल होने के बावजूद वह पूरी तरह से अक्षम नहीं था। इसके अलावा टॉस ने रॉकी को कम आंका था, ये सोचकर कि पहली पीढ़ी का कवच पहनने का मतलब है कि उसे गंभीर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसे यह एहसास नहीं था कि इसी कवच के साथ रॉकी ने बैरन बोलिन जैसे महान योद्धाओं से लड़ा था और उनसे बच निकला था। इस प्रकार टॉस ने सोचा होगा कि कवच और ताकत के मामले में वह रॉकी से बेहतर है, लेकिन वास्तव में वह किसी भी पहलू में ज्यादा बेहतर नहीं था। नतीजतन रॉकी द्वारा प्रतिहत्या एक तार्किक परिणाम था। टॉस को आंखें बंद करके मरना ही चाहिए था। चट्टान का, जैसे ही रॉकी टॉस का सिर उठाने और उसके शून्य जादू कवच का हेलमेट उतारने के लिए नीचे झुका, लिलिया की आवाज ऊपर से आई और फिर एक लाल आकृति उसके बगल में आ गिरी। तुम ठीक हो? रॉकी की दयनीय स्थिति और फिर खून से लथपथ पड़े टॉस के शरीर को देखकर लिलिया को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था, और उसने जल्दी से पूछा। सब ठीक है, रॉकी ने हल्की मुस्कान के साथ कटा हुआ सिर और हेलमेट हाथ में हिलाते हुए कहा। देखो, मेरे हाथ पैर सब सही सलामत हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? ठीक। लिलिया मूर्ख नहीं थी, वह जल्दी से वहां पहुंची थी क्योंकि उसने थंडर तोप की गड़गड़ाहट सुनी थी, इसलिए रॉकी के लापरवाह रवैये ने उसे तुरंत क्रोधित कर दिया। तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? रॉकी को घूरते हुए लिलिया इस बार सचमुच गुस्से में थी, इतनी कि उसने उसके पलटवार का इंतजार भी नहीं किया और मशीन गन की तरह बड़बड़ाती रही। मैं तुम्हारी रक्षक हूं और दुश्मन से निपटने वाली मैं ही होनी चाहिए। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मेरी भावनाओं का कभी ख्याल ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चलो भूमिकाएं बदल लेते हैं, ताकि मुझे हर समय तुम्हारी चिंता न करनी पड़े। ठीक है, अब से तुम नगर के स्वामी बनो और मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। लिलिया के क्रोध का सामना करते हुए रॉकी ने हंसते हुए मूर्ख बनने का नाटक शुरू कर दिया। आप, लिलिया उसकी हरकतों से इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपना पैर पटका और गुस्से में उड़ गई। मोटे और लिन फैंग को पहले ही एयर पायरेट ग्रुप का मुख्यालय मिल गया है, अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। हवा में उड़ने के बाद लिलिया ने रॉकी पर गुस्से से चिल्लाया, फिर तेजी से उड़ गई। उसकी बातें सुनकर रॉकी खुश हुआ और आसपास के पहरेदारों को टॉस से शून्य जादुई कवच निकालकर छुपाने का निर्देश देकर जल्दी से लिलिया के पीछे चला गया। लिलिया के पीछे पीछे चलते हुए उसे ये देखने में ज्यादा समय नहीं लगा कि गार्डों का एक समूह 3 मंजिला इमारत को घेर रहा है। यह इमारत स्पष्टतः वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप द्वारा निर्मित की गई थी, जिसे एक परित्यक्त स्थल की नींव पर पुनः खड़ा किया गया था और इसे ग्रुप का मुख्यालय बना दिया गया था। इस समय 100 से ज्यादा पहरेदार 3 मंजिला इमारत को घेर रहे थे। मोटे की कमान में पहरेदारों के योद्धा एक पंक्ति में खड़े थे और हर कोई इमारत से उड़ते तीरों और जादू से बचाव के लिए अपनी ढाल ऊंची उठाए हुए था। इस बीच पहरेदारों के तीरंदाजा और जादूगर दूर से अंदर मौजूद डाकुओं पर लगातार वार कर रहे थे। पिछली सड़क लड़ाई के बाद डाकुओं ने कुछ दबाव जरूर डाला था और गार्ड कोर को चोटें भी पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें धीरे धीरे अपने मुख्यालय में वापस धकेल दिया गया, जो एक हारी हुई लड़ाई का संकेत था। फिर भी डाकू हठपूर्वक प्रतिरोध कर रहे थे, जिससे गार्ड के लिए फिलहाल उनके अड्डे में घुसना मुश्किल हो रहा था। इस स्थिति में मोटे ने अपेक्षाकृत सुरक्षित रणनीति चुनी, जो कि दुश्मन को कमजोर करना था, क्योंकि गार्ड कोर के पास एक वास्तविक रेंज वाली इकाई थी और तीरों और जादू का आदान प्रदान करते समय उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी समय रॉकी और लिलिया वहां पहुंचे। ये कैसा चल रहा है? रॉकी मोटे और लिन फैंग के बगल में उतरा और तुरंत पूछा। सर, ये लोग आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे किसी युद्धपोत के आने का इंतजार कर रहे हैं, मोटे ने उत्तर दिया, क्योंकि वह डाकुओं के जिद्दी प्रतिरोध का कारण पहले ही समझ चुका था। वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किलो हवाई लड़ाई में जीत हासिल कर लेगा और उन्हें बचाने के लिए वापस आ जाएगा। समझा, रॉकी ने मोटे के स्पष्टीकरण पर सिर हिलाया और फिर आकाश में उड़ गया। आप उसे फिर से अकेले ही भागता देख, लिलिया ने झुंझलाहट में अपना पैर पटक दिया। वह कुछ भी करने में असमर्थ थी, लेकिन जल्दी से उसके पीछे चली गई। हालांकि एक बार हवा में रॉकी ने इमारत के अंदर डाकुओं पर चिल्लाया, तुम इस आदमी को कौन जानता है? चिल्लाने के बाद रॉकी ने टॉस का सिर उठाया। तुम उसे कौन पहचानता है? हवा में मंडराते हुए रॉकी ने कटा हुआ सिर अपने हाथ में उठा लिया और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख ने अराजक युद्ध को तुरंत रोक दिया। गार्डकोर ने हमला करना बंद कर दिया और इमारत में मौजूद लुटेरे इस शून्य जादुई योद्धा के अचानक प्रकट होने पर एक पल के लिए रुक गए। और जब इन लुटेरों ने देखा कि रॉकी के हाथ में किसका सिर है, तो वे सभी घबरा गए। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप में हजारों लुटेरे थे, लेकिन जब शोहरत की बात आती थी तो टॉस सबसे ऊपर था। एयर पायरेट ग्रुप का लगभग हर लुटेरा इस खूनी कसाई को जानता था, इसलिए जब रॉकी ने टॉस का सिर उठाया तो जिद पर अड़े लुटेरे वहीं घबरा गए। इन लुटेरों की नजर में टॉस न सिर्फ एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति था, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शून्य जादू योद्धा भी था। इसलिए ये देखकर कि टॉस का भी सिर काट दिया गया है, उनका मनोबल तुरंत टूट गया। मैं तुम्हें एक मिनट देता हूँ। टॉस का सिर देखकर लुटेरे घबरा गए और रॉकी की आवाज एक बार फिर उनके कानों में गूंजी, एक मिनट के भीतर आत्मसमर्पण कर दो और तुम जीवित रह सकोगे। एक मिनट के बाद जो लोग विरोध करने की हिम्मत करेंगे उनका भी वही हश्र होगा जो उसका है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रॉकी ने टॉस का सिर हवा में उछाल दिया और मैजिक बुलेट का जादू चलाया। पलक झपकते ही उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जैसे ही सिर के टूटे हुए अवशेष वर्षा की बूंदों की तरह नीचे गिरे, इमारत से तुरंत आत्मसमर्पण की चीखें गूंजने लगी और फिर एक डाकू अपना धनुष पकड़े हुए खिड़की से बाहर आ खड़ा हुआ। मैं भी आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे मत मारो। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हमने आत्मसमर्पण कर दिया है, हमें मत मारो। पहले डाकू के खुलेआम आत्मसमर्पण करने के बाद और भी डाकू खिड़कियों पर खड़े हो गए। हर एक ने अपने हथियार ऊंचे उठाए और रॉकी पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। साफ है कि रॉकी की धमकी के आगे इन लुटेरों ने प्रतिरोध करना पूरी तरह छोड़ दिया था। दरअसल उनके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वे इतने लंबे समय तक गार्ड कोर के सामने टिके रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मोटे कोई अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने कोई कड़ा हमला नहीं करने का फैसला किया था। दूसरा कारण ये था कि लुटेरों को इलाके का लाभ मिल गया था, जिससे वे गार्ड कोर को रोकने के लिए इमारत की आड़ का उपयोग कर सके। लेकिन अब जब रॉकी और लिलिया दोनों आ गए थे, तो दो शून्य जादुई योद्धाओं के सामने लुटेरों, जो कि साधारण इंसान थे, के पास कोई मौका नहीं था। याद है टॉस ने तीन गार्ड्स को कैसे मारा था? अगर रॉकी और लिलिया इमारत पर हमला करते तो लुटेरों का भी यही हश्र होता। इसलिए रॉकी की चेतावनी के सामने लुटेरों ने आत्मसमर्पण करने से पहले एक मिनट भी विचार नहीं किया। सभी लोग अपने हथियार छोड़ दें और अंदर से एक पंक्ति में बाहर आ जाएं। कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत करेगा तो उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले लुटेरों को चिल्लाकर रॉकी ने आदेश दिया और लुटेरों ने आज्ञाकारी ढंग से अपने हाथ ऊपर उठाए और इमारत से बाहर निकलने के लिए कतार में खड़े हो गए। मोटे, इन सभी लोगों को बांध दो और उन पर नजर रखो। समझा। पुष्टि के साथ मोटे ने गार्डों को आत्मसमर्पण करने वाले लुटेरों को एक एक करके बांधने के लिए प्रेरित किया और फिर उन सभी को सामूहिक हिरासत में इकट्ठा किया। वास्तव में इमारत के अंदर प्रतिरोध कर रहे लुटेरों की संख्या कम नहीं थी। मोटे ने मोटे तौर पर उनकी संख्या गिनी और पाया कि वास्तव में उनकी संख्या 150 से अधिक थी। बैककोट बैककोट बैककोट, ये संख्या छोटी नहीं है और क्योंकि ये सभी लोग डाकू हैं जिनमें स्वाभाविक रूप से काफी लड़ाकू क्षमताएं होती हैं, इसलिए 150 से अधिक व्यक्तियों को सीधे एक दल बनाने के लिए केवल कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। बेशक ये सभी लुटेरे करीना के युद्ध में लूटे गए माल थे, और रॉकी और करीना पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके थे कि इस ऑपरेशन से प्राप्त सभी बंदी करीना के होंगे, जबकि बेचे जाने वाले सभी कीमती सामान रॉकी को मिलेंगे। 150 से अधिक लुटेरों के आत्मसमर्पण के साथ इसका यह भी मतलब था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के गढ़ पर रॉकी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि लड़ाई खत्म हो गई थी, क्योंकि आसमान अभी भी गोलियों से धधक रहा था और करीना के नेतृत्व में हवाई युद्ध अभी भी जारी था। हवाई युद्ध में किसी के विजयी होने पर ही इस लड़ाई को वास्तव में समाप्त माना जा सकता था। इस स्थिति में रॉकी ने बाद में मोटे से कहा, मैं अब कमान संभालने के लिए थंडरहॉक की ओर वापस जा रहा हूँ। तुम यहाँ इन लुटेरों पर नजर रखना, लेकिन किसी भी समय पीछे हटने के लिए भी तैयार रहना। अगर करीना हार गई तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तब तक तुम्हें तैयार रहना होगा। समझ गया महाराज, निश्चिंत रहिए। मोटे को भारी स्वर में सिर हिलाते देख रॉकी ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत लिलिया को अपने साथ ले लिया और आकाश की ओर थंडरहॉक की ओर उड़ चला, जो दुश्मन के साथ युद्ध में लगा हुआ था। जब रॉकी ने गार्ड कोर का नेतृत्व करते हुए हॉन्गचिंग खंडहर पर हमला किया तो फेली भी लगातार दो युद्धपोतों को दुश्मन से बचाने के लिए कमान संभाल रहा था, इसलिए जब रॉकी और लिलिया थंडरहॉक की ओर उड़े तो वह अभी भी दुश्मन के साथ उलझा हुआ था। हालांकि बैरन बोलिन के साथ पिछली हवाई लड़ाई की तुलना में थंडरहॉक को इस बार जिन विरोधियों का सामना करना पड़ा वे काफी कमजोर थे। आखिरकार यह मोर्चा मुख्य युद्ध क्षेत्र नहीं था। करीना की विशाल सेना का सामना कर रहे वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप उन्हें परेशान करने और बांधने के लिए सीमित संख्या में ही युद्धपोत भेज सकते थे, हालांकि उन्होंने कुछ युद्धपोतों को ध्यान भटकाने के लिए भेजा था। करीना और उसके बेड़े के भारी दबाव में किलोव ने केवल एक अनुरक्षक जहाज और 5 टोही जहाज भेजे थे, जो स्पष्ट रूप से सीमित संख्या थी, लेकिन वह इतना ही भेज सकता था। अगर वह रॉकी से निपटने के लिए और युद्धपोत भेजता तो वह मुख्य युद्ध क्षेत्र में करीना के हमले का सामना नहीं कर पाता। लेकिन किलोव द्वारा भेजे गए युद्धपोतों से रॉकी और गार्ड कोर को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि इन सभी युद्धपोतों को थंडरहॉक और स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप द्वारा रोक लिया गया था। दुश्मन का सामना करते हुए थंडरहॉक और स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए, जिससे लोहे और कांसे की एक दीवार बन गई, जिसने हॉन्गचिंग खंडहर के बाहर दुश्मनों को पूरी तरह से रोक दिया। ऐसे विशालकाय जहाजों का सामना करते हुए दुश्मन के टोही जहाजों ने पास आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे पास आए तो दोनों युद्धपोतों पर मौजूद दर्जनों जादुई तोपें उन्हें तुरंत उड़ाकर चूर चूर कर देंगी। यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी का एस्कॉर्ट जहाज भी ऐसा ही था, जो दो बनाम एक की स्थिति में कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था, तथा यहां तक कि युद्धपोतों की मुख्य तोपों द्वारा पहली ही गोलाबारी में डूब जाने का खतरा भी था। अतः समय बीतने के बावजूद दोनों पक्षों ने केवल सुरक्षित दूरी पर मैजिक बुलेट तोप से गोलीबारी की तथा कोई विशेष रूप से तीव्र मुठभेड़ नहीं हुई। स्वाभाविक रूप से फेली यही स्थिति देखना चाहता था। उसका मानना था कि रॉकी के नेतृत्व में गार्ड कोर की जीत निश्चित है, इसलिए उसका काम हॉन्गचिंग खंडहरों को सहायता प्रदान करने की कोशिश करने वाले किसी भी दुश्मन जहाज को रोकना था। बस इतना ही करना काफी होगा। हालांकि रॉकी के आगमन के साथ ही यह गतिरोध की स्थिति समाप्त हो गई। मेरे नाथ, जैसे ही रॉकी और लिलिया थंडरहॉक के डेक पर उतरे, फेली अपनी आंखों में स्पष्ट आशा के साथ जल्दी से वहां पहुंचा और इसी आशा में उसने रॉकी को अपनी ओर सिर हिलाते हुए देखा। ये बहुत अच्छा है। रॉकी को सिर हिलाते देख फेली को पता चल गया कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के गढ़ पर कब्जा कर लिया गया है, जिसका मतलब था कि उन्होंने इस महान लड़ाई में आधी जीत हासिल कर ली है। जल्दबाजी में जश्न मत मनाओ। हम सच्ची जीत का दावा तभी करते हैं जब हवाई युद्ध जीत लिया जाता है। फेली के कंधे पर थपथपाते हुए रॉकी ने विरोधी युद्धपोतों की ओर देखा। फेली, पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दो, हम करीना की सहायता करने जा रहे हैं। हाँ, रॉकी के आदेश के तहत थंडरहॉक और स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप ने धीरे धीरे अपने पतवारों को मोड़ना शुरू कर दिया और फिर पूरी ताकत से तेजी से आगे बढ़ते हुए वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के युद्धपोतों के करीब पहुंच गए। लड़कों, गोली चलाओ, उन्हें जोर से मारो। जैसे ही थंडरहॉक दुश्मन के करीब पहुंचा, ओल्ड जैक, जो डेक कमांड का प्रभारी था, तोपचियों पर गरजा, लेकिन उसकी आवाज जल्द ही तोपों की गोलीबारी में डूब गई। थंडरहॉक की मुख्य और द्वितीयक तोपों ने एक साथ गोलीबारी की। चूंकि वे दुश्मन का सामना कर रहे थे, इसलिए दोनों युद्धपोतों पर मौजूद जादुई तोपों में से केवल आधी ही निशाना साध सकी, लेकिन फिर भी मारक क्षमता इतनी मजबूत थी कि जैसे ही उन्होंने गोलीबारी शुरू की, एक टोही जहाज तुरंत डूब गया। इस बीच जैसे ही थंडरहॉक और स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट जहाज निकट आए, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के एस्कॉर्ट जहाजों ने प्रतिरोध करने की हिम्मत किए बिना जल्दी से पीछे हटकर भागने का फैसला किया। उनकी कार्रवाई स्पष्ट रूप से सही थी, क्योंकि अगर व्यापक ताकत की बात करें तो एस्कॉर्ट जहाज थंडरहॉक जैसे एक भी युद्धपोत को नहीं हरा सकता था। स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट जहाज का सामना तो दूर की बात थी। इसलिए जब रॉकी ने अपने दोनों युद्धपोतों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, तो दुश्मन ने एक भी गोली चलाए बिना भागने का फैसला किया। एस्कॉर्ट जहाज गार्ड कोर की रक्षा के लिए पीछे रहता है, थंडरहॉक युद्ध के मैदान में शामिल होता है। दुश्मन को आसानी से पीछे खदेड़ते हुए, रॉकी ने स्कवेंजर टाइप एक एस्कॉर्ट शिप को पीछे रहकर नीचे के गार्ड्स की सुरक्षा करने का नया आदेश जारी किया। वरना एक बार जब वह युद्ध के मैदान में उतर जाता तो अगर दुश्मन ने परेशान करने के लिए युद्धपोत भेजे तो ही जहाज भी गार्ड कोर के लिए खतरा बन सकते थे। उसके बाद रॉकी ने थंडरहॉक को आकाश में मुख्य युद्ध क्षेत्र की ओर निर्देशित किया। जब रॉकी ने थंडरहॉक को हवाई युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया तब तक बड़े पैमाने पर लड़ाई काफी समय से चल रही थी और इतनी लंबी लड़ाई के बाद लिलिया का बेड़ा और वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का बेड़ा दोनों ही भयंकर रूप से भिड़ गए, अपनी अपनी संरचना खो बैठे और सबसे क्रूर हाथापाई शुरू हो गई। इस स्थिति में रॉकी ने थंडरहॉक को युद्ध में ले जाने में संकोच नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि जब रॉकी और लिलिया डेक पर खड़े होकर थंडरहॉक को युद्ध में ले जा रहे थे तो वे भयंकर युद्ध में लगे शून्य जादू योद्धाओं के पास से उड़ते हुए निकल गए, जिससे वे सभी विरोधी शून्य जादू योद्धाओं को दिखाई देने लगे। इतना समय बीत जाने के बाद बेड़े भयंकर गोलीबारी में बंद हो गए और उनके संबंधित शून्य जादू योद्धा एक घातक लड़ाई में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप हताहत हुए। करीना के चार रक्षकों में से एक मारा गया था और किलोव ने भी इसी तरह एक साथी खो दिया था, जिससे 10 शून्य जादू योद्धाओं की मूल लड़ाई 4 के खिलाफ 4 के संघर्ष में बदल गई। स्पष्टतः कोई भी पक्ष नहीं चाहता था कि दूसरे पक्ष के शून्य जादू योद्धा बेड़े की लड़ाई में शामिल हों, क्योंकि दोनों पक्षों के शून्य जादू योद्धाओं द्वारा पहने गए कवच की गुणवत्ता बहुत अधिक थी, जिसमें पूरी तरह से चौथी पीढ़ी के मॉडल शामिल थे। ऐसी स्थिति में यदि दोनों पक्षों में से कोई भी युद्ध से अलग हो जाए, नहीं यहां तक कि यदि केवल एक व्यक्ति भी बेड़े की लड़ाई में शामिल होने के लिए पीछे हट जाए तो यह एक बड़ा खतरा बन सकता है जो पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। इतने लंबे हवाई युद्ध के बावजूद दोनों पक्षों के शून्य जादुई योद्धा लगातार अपने विरोधियों से उलझे हुए थे। उनमें से करीना और किलोव सबसे ज्यादा सक्रिय थे, दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, दोनों एक दूसरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और दोनों अपने बेड़े की मदद के लिए जल्दी से लड़ाई से निकलने के रास्ते तलाश रहे थे। अफसोस की बात है कि दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी उन पर विशेष ध्यान दे रहे थे, खासकर करीना। वह उनमें से अकेली थी जिसने विशेष कवच पहना हुआ था। हालांकि किलोव की ताकत और अनुभव स्पष्ट रूप से बेहतर थे, उसका कवच चौथी पीढ़ी का बड़े पैमाने पर उत्पादित कवच था। हो सकता है कि किलोव का कवच बड़े पैमाने पर उत्पादित कवचों में अलग दिखता हो, लेकिन फिर भी उसकी तुलना असली विशेष कवच से नहीं की जा सकती। इसके विपरीत हालांकि करीना ताकत के मामले में किलोव से थोड़ी कमजोर थी, उसका विशेष कवच वाकई अद्भुत था। चौथी पीढ़ी का ये विशेष कवच 6000 अंकों की जादुई ऊर्जा का दावा करता था। इसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि यह अकेले ही एक बड़े युद्धपोत का सामना कर सकता था। इस तरह के दुर्जय कवच ने करीना को सभी के तीरों का लक्ष्य बना दिया, क्योंकि दुश्मन के सभी शून्य जादू योद्धा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जैसे कि गुलाब के चारों ओर मधुमक्खियों का झुंड। और ऐसी तीव्र झड़प के बीच ही रॉकी का आगमन हुआ। एक बार जब वह प्रकट हुआ तो उसने वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया तथा 8 शून्य जादू योद्धाओं का केंद्र बिंदु बन गया। इन योद्धाओं की नजरों में रॉकी थंडरहॉक के धनुष पर अकेला खड़ा था, लिलिया उसके साथ खड़ी थी। दोनों निश्चिंत और सहज लग रहे थे और जब उन्होंने बाकी सबको देखा तो रॉकी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ हाथ भी हिलाया। इस दृश्य ने सभी 8 शून्य जादू योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया, जो सभी चौथी पीढ़ी के कवच पहने हुए थे, क्योंकि वे रॉकी से अचंभित थे जिसने केवल रक्त पैटर्न मार्क 2 पहना था। लेकिन एक संक्षिप्त सदमे और आश्चर्य के बाद उनमें से प्रत्येक की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। करीना के पक्ष में निश्चित रूप से उत्साह था, क्योंकि रॉकी और लिलिया की उपस्थिति ने निस्संदेह संकेत दिया कि जमीनी लड़ाई समाप्त हो गई थी, जिसका अर्थ था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप की मांड पर उनका कब्जा हो गया था। स्वाभाविक रूप से करीना ऐसा ही परिणाम देखना चाहती थी, इसलिए उनका मनोबल तुरंत बढ़ गया। इसी तरह किलोव की भी रॉकी और लिलिया को देखकर उल्लेखनीय प्रतिक्रिया हुई, लेकिन वह उत्साह नहीं था बल्कि उसका दिल बैठ गया। वह शायद नहीं जानता था कि ये दो लोग कौन थे, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति जिसने सिर्फ ब्लड पैटर्न मार्क 2 पहना हुआ था वही था जिसने पहले उसके अड्डे पर हमला किया था। और रॉकी को देखते ही उसे तुरंत एहसास हो गया कि शायद उसका अड्डा गिर गया है। हालांकि किलोव को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर उनका बेस कब्जा भी हो जाता तो भी जब तक वे चल रही हवाई लड़ाई जीतते रहते बेस पर अंततः कब्जा कर लिया जाता। आखिरकार जमीनी सेना चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो वायु सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। तो किलोव को वास्तव में चिंता अपने बेस की नहीं बल्कि रॉकी और लिलिया की तथा उनके द्वारा कमांड किए गए थंडरहॉक की थी। इस समय आकाश में युद्ध अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुका था। हालांकि दोनों बेड़े कुछ देर से हाथापाई में उलझे हुए थे, फिर भी कोई स्पष्ट विजेता सामने नहीं आया था। ऐसी परिस्थितियों में एक मुख्य युद्धपोत और दो शून्य जादुई योद्धाओं का युद्ध में प्रवेश निस्संदेह परिणाम को बहुत प्रभावित करेगा, एक ऐसा परिणाम जिसे किलोव देखना नहीं चाहता था। उन्हें रोको रॉकी और थंडरहॉक के युद्ध में शामिल होने के बाद होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में सोचते हुए किलोव ने तुरंत चिल्लाया और दूसरों के कार्य करने की प्रतीक्षा किए बिना वह अपनी पूरी ताकत के साथ थंडरहॉक की ओर टूट पड़ा। किलोव ने चौथी पीढ़ी का कवच पहना हुआ था जो मास प्रोडक्शन प्रकार का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला कवच था, इसलिए उसने तुरंत गति बढ़ा दी। उसकी आवाज़ धीमी होने से पहले ही वह थंडरहॉक की ओर उड़ रहा था। किलोव की तेजी से बढ़ती आकृति का सामना करते हुए लिलिया ने उड़ान भरी, लेकिन धनुष पर खड़े रॉकी ने उसे रोक दिया। फिर लिलिया को आगे बढ़ने देने के बजाय रॉकी ने तेजी से आगे बढ़ते किलोव की ओर हाथ हिलाया, मानो अलविदा कह रहा हो। इस हरकत से किलोव क्रोधित हो गया और गुस्से में उसने अपने कवच की गति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया तथा और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ाई, करीना की आकृति इतनी तेज गति से उसके पास आ गई कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था और उसने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। उसने किलोव को रोकने के लिए कदम बढ़ाया और अपना बायां हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अरे नहीं, यह महसूस करते हुए कि लिलिया उस पर अपना हाथ रख रही है, किलोव तुरंत भयभीत हो गया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गया, रॉकी के बारे में पूरी तरह से भूल गया। जब वह जल्दी से कई दर्जन मीटर पीछे हट गया तो उसे एहसास हुआ कि लिलिया ने वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं किया था, वह केवल दिखावा कर रही थी। मुझे धोखा दिया गया है। यह एहसास होने पर कि उसके साथ धोखा हुआ है, किलोव ने जल्दी से रॉकी की ओर देखा और पाया कि थंडरहॉक पहले ही दूर जा चुका था। धत तेरी की, थंडरहॉक को धीरे धीरे भागते देख किलोव उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके पास उसका पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। वह और लिलिया पहले भी भिड़ चुके थे और वह उसकी चालों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए जब उसने लिलिया को उस पर हाथ उठाते देखा तो उसे चकमा देना पड़ा। हालांकि वह जानता था कि वह उसे डराने की कोशिश कर रही है, यह उसकी सबसे घातक चाल थी जो उसे एक ही बार में मार सकती थी। इसलिए अनिच्छा से गालियां देने के बाद किलोव ने एक बार फिर लिलिया का सामना किया। जैसे ही रॉकी थंडरहॉक को युद्ध में ले गया, स्थिति वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के खिलाफ होने लगी। किलोव को लिलिया को व्यस्त रखना था और उसे भी युद्ध में शामिल होने से रोकना था। कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हवाई युद्ध में, जिसमें दोनों बेड़े के लगभग 100 जहाज शामिल थे, क्या सिर्फ रॉकी, लिलिया और थंडरहॉक की भागीदारी युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। सचमुच ऐसा हो सकता है। जब सेनाएं बराबर बराबर हों तो बाहरी बल का कोई भी छोटा सा जोर संतुलन बिगाड़ सकता था और महायुद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकता था, भले ही वह बल सिर्फ दो लोग और एक जहाज ही क्यों न हो। यह अंतिम तिनका सिद्धांत दर्शाता है। पूरी गति से आगे बढ़ो। शून्य जादू योद्धाओं के समूह से दूर हटकर रॉकी ने थंडरहॉक को पूरी गति से युद्ध के मैदान में आने का आदेश दिया। उनके नेतृत्व में थंडरहॉक एक क्रूर बाघ की तरह सीधे युद्ध के केंद्र की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही थंडरहॉक ने हिंसक रूप से लड़ाई में प्रवेश किया, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बेड़े ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। कई टोही जहाजों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप में कई अनुभवी कमांडर थे। जब उन्होंने देखा कि फ्लैगशिप लड़ाई में शामिल हो रहा है तो उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया और तुरंत जवाबी कार्रवाई की। थंडरहॉक के लिए टोही जहाजों से खतरा लगभग शून्य था, क्योंकि पांचवीं पीढ़ी के टोही जहाजों की जादुई तोपें भी थंडरहॉक के रक्षात्मक जाल को भेद नहीं सकती थी। समुद्री डाकुओं के बेड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो ज्यादा से ज्यादा चौथी पीढ़ी के थे और कई तो तीसरी और दूसरी पीढ़ी के भी थे। इन जहाजों का सामना करते हुए थंडरहॉक को जरा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन यह मत भूलिए कि टोही जहाजों को संख्यात्मक लाभ प्राप्त था। आमने सामने तो थंडरहॉक का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन 10 बनाम एक का क्या। अगर थंडरहॉक के चारों ओर 10 या 20 टोही जहाज होते तो भले ही वे उसे नुकसान न पहुंचा पाते, फिर भी उसे अपने बीच फंसाना जरूर मुमकिन था। अतः कुछ ही समय में अनेक टोही जहाजों ने थंडरहॉक को घेर लिया तथा उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। गोली दागो, गोली दागो, अपनी पूरी ताकत से गोली चलाओ। अरे मुख्य तोप से नहीं, तुम अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी तोपों का इस्तेमाल करो, दूसरी तोपों से उन पर जोर से वार करो। जब बड़ी संख्या में टोही जहाजों ने थंडरहॉक को घेरना शुरू कर दिया तो थंडरहॉक पर लगी जादुई तोपों ने भी भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। प्रमुख पोत होने के नाते थंडरहॉक की मारक क्षमता निर्विवाद थी। प्रमुख पोत होने के नाते इसकी मारक क्षमता पहले से ही समान प्रकार के अनुरक्षक जहाजों की तुलना में अधिक थी, और ऑटन के रून संवर्धन के बाद थंडरहॉक की मारक क्षमता अधिकांश तीसरी पीढ़ी के प्रमुख पोतों से भी आगे निकल गई थी। हालांकि उन्हें घेरने वाले दुश्मन जहाज बहुत ज्यादा थे। वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप ने पूरी ताकत लगा दी थी और थंडरहॉक को पूरी तरह से घेरने के लिए 20 से ज्यादा टोही जहाज भेज दिए थे। चारों ओर देखने पर पता चला कि टोही जहाजों की संख्या थंडरहॉक पर मौजूद जादुई तोपों की संख्या से भी अधिक थी, तथा हित दर जैसी समस्याओं के कारण थंडहॉक के पास कम समय में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हे प्रभु, हम फंस गए हैं। जैसे जैसे अधिकाधिक टूही जहाज चारों ओर एकत्रित होते गए, फेली तेजी से रॉकी की ओर दौड़ा, जिससे ये संकेत मिलता था कि वे चारों ओर से घिर चुके हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। इन टूही जहाजों को अनदेखा करो, सीधे आगे बढ़ो। भौहें चढ़ाते हुए रॉकी ने फेली की ओर देखा और अपना आदेश दोहराया। लेकिन मेरे प्रभु, अगर हम भागने पर मजबूर होंगे तो हम टकराएंगे। रॉकी को घूरते देख फेली कुछ डर गई, लेकिन फिर भी उसने जिद की। वह गलत नहीं था। थंडहॉक पहले से ही घिरा हुआ था। भागने की कोशिश करने का एकमात्र नतीजा रास्ता रोके हुए टोही जहाजों से टकराना ही था। हालांकि थंडहॉक एक बड़ा युद्धपोत और प्रमुख जहाज था, एक दो टोही जहाजों से टकराना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक दो जहाज ही उनकी प्रगति में बाधा नहीं बन रहे थे। अगर थंडहॉक ने एक के बाद एक कई टोही जहाजों से टकरा कर एक बड़ी सफलता हासिल कर ली तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। मेरा ऑर्डर पास करो, पूरी गति से आगे बढ़ो। हालांकि फेली की आपत्तियों के बावजूद रॉकी अभी भी वही आदेश जारी कर रहा था, थंडहॉक को बलपूर्वक घेरा तोड़ने का आदेश दे रहा था। यह आदेश जारी करने के बाद रॉकी और लिलिया ने उसके बगल में एक नज़र का आदान प्रदान किया और फिर दोनों ने धनुष से छलांग लगाए और हवा में उड़ गए, दो दिशाओं में विभाजित हो गए, थंडहॉक के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले टोही जहाजों की ओर भागे। रॉकी और लिलिया को धनुष से हवा में उड़ते देख फेली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसे होश आ गया और उसने तुरंत अपने पीछे के नाविकों को चिल्लाकर कहा, पूरी गति से आगे बढ़ो, घेरा तोड़ दो। फेली के आदेश के बाद पहले से रुका हुआ थंडहॉक फिर से आगे बढ़ने लगा, जबकि रॉकी, जो हवा में उड़ चुका था, पहले से ही एक टोही जहाज की ओर बढ़ चुका था जो थंडहॉक के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। पूरी ताकत से दौड़ते हुए रॉकी ने तुरंत टोही जहाज के रक्षात्मक जाल को तोड़ दिया। पलक झपकते ही डेक पर भारी रूप से उतरा और उसका सामना करते हुए डेक पर मौजूद समुद्री डाकू मौके पर ही स्तब्ध रह गए, पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। रॉकी ने इन लुटेरों की परवाह नहीं की। जमीन पर उतरते ही उसने हाथ बढ़ाकर अपने पैरों के नीचे डेक पर जादुई गोलियों की एक श्रृंखला छोड़ी, जिससे डेक में एक छेद हो गया और फिर नीचे कूद गया। जब तक वह केबिन में कूदा, अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि अचानक एक जोरदार धमाके के साथ रॉकी केबिन से बाहर निकला और उड़ गया। जब तक वह धीरे धीरे उड़कर दूर नहीं चला गया, तब तक टोही जहाज पर सवार समुद्री लुटेरों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। सब अभी भी स्तब्ध थे। लेकिन ठीक उसी समय, जब ये लोग स्थिति को समझे बिना शून्य से देख रहे थे, जहाज के अंदर से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, मन ड्राइव फटने वाली है, भागो जल्दी। इससे पहले कि केबिन में बैठे समुद्री डाकू चिल्लाना बंद कर पाते, तो ही जहाज में विस्फोट हो गया और वह सीधे हवा में आग के गोले में बदल गया। इसके तुरंत बाद पास में ही एक अन्य टोही जहाज भी तेज आवाज के साथ फट गया और उसी तरह आग के गोले में बदल गया। दो टोही जहाजों के विस्फोटों से उत्पन्न प्रकाश के विलुप्त होने से पहले ही थंडहॉक ने एक क्रूर जानवर की तरह अपनी पूरी शक्ति से तेजी से आगे बढ़ते हुए हवा में ही आग को पूरी तरह से बिखेर दिया। उसी समय थंडहॉक का रास्ता रोकने वाले टोही जहाज एक एक करके आग के गोले में तब्दील होने लगे। कुछ ही मिनटों में 5-6 टोही जहाज एक के बाद एक फट गए और थंडहॉक के भागने के लिए आधार बन गए। टोही जहाजों के बीच हुए विस्फोटों की इतनी तीव्र श्रृंखला ने तुरंत ही सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही युद्ध दलों ने थंडहॉक को आग के गोले तोड़ते और घेरा तोड़ते देखा, दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। थंडहॉक को देखते ही करीना के बेड़े का मनोबल तुरंत बढ़ गया और उन्होंने इसे अपना ही एक अतिरिक्त जहाज मान लिया। करीना के दल में कई अनुभवी सैनिक थे, जिन्हें थंडहॉक को देखते ही एहसास हो गया कि इस हवाई युद्ध का निर्णायक क्षण आ गया है। एस्कॉर्ट जहाजों के कप्तान, जिनमें प्रमुख जहाज कोड रोज का कमांडर भी शामिल था, थंडहॉक की ओर बढ़ने लगे। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के सदस्यों ने भी थंडहॉक की उपस्थिति देखी। अपने विरोधियों के बढ़ते मनोबल के विपरीत समुद्री लुटेरों ने भी उतनी ही सक्रियता और तेजी से जवाब दिया और बड़ी संख्या में युद्धपोत, जिनमें एस्कॉर्ट जहाज भी शामिल थे, सीधे थंडहॉक की ओर बढ़ गए। इस घटनाक्रम ने अराजकता में कायम क्षणिक गतिरोध को तोड़ दिया और दोनों पक्षों ने थंडहॉक के चारों ओर एक निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी। ये सचमुच एक पत्थर से हजार लहरें उठने जैसा मामला था। सच कहें तो रॉकी को उम्मीद नहीं थी कि उसके आने से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन यह उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। थंडहॉक के आसपास कोई बड़ा युद्धपोत नहीं था, इसलिए जब दोनों पक्ष एक ही समय पर पास आने लगे तो थंडहॉक की मारक क्षमता की श्रेष्ठता स्पष्ट हो गई। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बड़े युद्धपोतों के पहुंचने से पहले ही थंडहॉक अजय हो चुका था। इस स्थिति में फेली, जो कमान का प्रभारी था, ने निश्चयपूर्वक वहीं प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और इसके बजाय दुश्मन की ओर आक्रमण कर दिया। अनावश्यक हताहतों से बचने के लिए वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के निकटतम एस्कॉर्ट जहाज के पास गति बढ़ाने और थंडहॉक से सीधे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों बड़े युद्धपोत एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़े और कुछ ही मिनटों में एक दूसरे की फायरिंग रेंज में पहुंच गए। फौरन उन्होंने एक दूसरे पर भीषण तोपों की बौछार शुरू कर दी। गोली दागो, गोली दागो। दोस्तों, ध्यान से निशाना साधो और जोर से मारो। ये सिर्फ एक एस्कॉर्ट जहाज है, इसे नीचे गिरा दो। आग, आग, उन्हें बेरहमी से मारो, इन कमीनों को हमारी ताकत का एहसास करा दो। उस फ्लैगशिप को गिरा दो। जल्दी जल्दी निशाना लगाओ और फायर करो। जैसे ही दोनों युद्धपोतों के बीच तोपों से गोलीबारी शुरू हुई, अपने अपने डेक पर मौजूद कमांडरों ने अपने गनर से आग्रह किया कि वे कम से कम समय में अधिक से अधिक राउंड फायर करें। गोलियों की गगनभेदी गर्जना के बीच तोपों की पहली बौछार जल्दी ही थम गई, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। और तोपों की हर बौछार के साथ दोनों युद्धपोत और भी करीब आते गए। हालांकि जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई और तोपों की गोलाबारी बढ़ती गई, थंडरहॉक का लाभ धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। प्रमुख जहाज होने के नाते थंडरहॉक की युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से एक साधारण अनुरक्षक जहाज से कहीं ज्यादा मजबूत थी, चाहे वह रक्षात्मक जाल हो या मुख्य और द्वितीयक तोपों की संख्या और मारक क्षमता। जब आप ये भी जोड़ दें कि थंडरहॉक की सभी जादुई तोपें रून प्रवर्धित थीं, तो उनकी शक्ति उसी श्रेणी के अन्य प्रमुख जहाजों से कहीं ज्यादा थी। इसलिए जैसे जैसे दोनों पक्ष करीब आते गए और हमले की दर बढ़ती गई, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के एस्कॉर्ट जहाज धीरे धीरे हमले का सामना नहीं कर सके। जब तक थंडरहॉक ने तोपों से अपना तीसरा दौर पूरा किया, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के एक एस्कॉर्ट जहाज पर दो मुख्य तोपों के सीधे प्रहार हो चुके थे, जिससे उसके पतवार में दो बड़े छेद हो गए। चौथे दौर की शुरुआत के कुछ ही देर बाद वह एस्कॉर्ट जहाज डूब गया। इस बीच दोनों पक्षों के बेड़े भी धीरे धीरे पास आ रहे थे। थंडरहॉक, जिसने अभी अभी दुश्मन के एक एस्कॉर्ट जहाज को डुबोया था, स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ से अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो गया। हाल ही में मिली जीत की गति के साथ उसने अपने पीछे चल रहे कई युद्धपोतों का नेतृत्व करते हुए वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के खिलाफ निर्णायक युद्ध में प्रवेश किया। निर्णायक युद्ध में लगातार तोपों की गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों बेड़े के युद्धपोतों से एक साथ होने वाली गोलाबारी की आवाज ने ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र के भीतर जादुई ऊर्जा तूफानों की गड़गड़ाहट को भी दबा दिया। किलो, तुम्हारा वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप खत्म हो गया है। जब दोनों बेड़े निर्णायक युद्ध में लगे थे, तो करीना, जो लगातार किलो से उलझी हुई थी, ने जानबूझकर उनके बीच की दूरी बढ़ा दी और फिर किलो पर ठंडी हंसी उड़ाई। फिर भी उसके शब्दों का सामना करते हुए किलो, जो बहुत थका हुआ लग रहा था, शब्दों के लिए असमर्थ था, क्योंकि करीना ने जो कहा था वह सच था, उसका वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप समाप्त हो गया था। एक बार जब रॉकी का थंडरहॉक लड़ाई में शामिल हो गया और इस अंतरिक्ष युद्ध की अंतिम लड़ाई को सीधे तौर पर शुरू कर दिया, तो हार की अनिवार्यता पहले से ही मंडराने लगी थी। ताकत के लिहाज से वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का बेड़ा थोड़ा बड़ा हो सकता था, लेकिन यह मुख्य रूप से अतिरिक्त तो ही जहाजों की वजह से था। बड़े युद्धपोतों की संख्या में दोनों पक्ष वास्तव में बराबर थे। हालांकि अपने युद्धपोतों की गुणवत्ता के मामले में वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप थोड़ा पिछड़ गया। करीना का बेड़ा प्रमुख जहाजों से लेकर अनुरक्षक जहाजों और टोही जहाजों तक पूरी तरह से चौथी पीढ़ी का था। पूरा बेड़ा चौथी पीढ़ी के मानक का था, शक्ति का एक ऐसा स्तर जो मध्यम आकार के स्काई सिटी के बराबर था। इसके विपरीत वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बेड़े की गुणवत्ता में काफी भिन्नता थी, जिसमें चौथी, तीसरी और यहां तक कि दूसरी पीढ़ी के युद्धपोतों का मिश्रण था। ये प्रभावशाली था कि वे इस बिंदु तक टिके रहने में सफल रहे। यही कारण था कि थंडरहॉक की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण थी। इसने युद्ध क्षेत्र के संतुलन को बिगाड़ दिया, जिससे करीना की सेना को सीधे तौर पर बड़े युद्धपोतों की संख्या में बढ़त मिल गई और यहां तक कि एक अतिरिक्त प्रमुख जहाज भी आगे निकल गया। दूसरे, इसने करीना की सेना का मनोबल काफी बढ़ा दिया। अन्यथा थंडरहॉक के युद्ध क्षेत्र में आगमन के तुरंत बाद उन्होंने निर्णायक लड़ाई शुरू नहीं की होती। और तो और, निर्णायक युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और थंडरहॉक ने वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के एक एस्कॉर्ट जहाज को डुबोकर पहले ही बढ़त बना ली थी। ये बेहद अहम था। थंडरहॉक के शामिल होने से वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बड़े युद्धपोतों का एक जहाज पहले ही डूब चुका था और युद्ध औपचारिक रूप से शुरू होने से पहले ही एक और जहाज डूब गया। नौसेना की गुणवत्ता में इतनी असमानता और संख्या में कमी के बावजूद वे ये निर्णायक युद्ध कैसे जीत सकते थे? ये सब किलो को अच्छी तरह पता था, इसलिए उसके पास करीना के उपहास का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इसके बाद किलो ने एक क्रूर मुस्कान के साथ करीना को देखा और पागलपन के साथ चिल्लाया, तुम कुतिया, मेरा हवाई समुद्री डाकू समूह समाप्त हो गया है, लेकिन तुम कुछ भी बेहतर नहीं करोगे। एक उन्मत्त गर्जना के साथ किलोब द्वारा पहने गए शून्य जादू कवच के कंधे अचानक खुल गए और उसके भीतर छिपे हुए दो मैना लांचर प्रकट हो गए। तू कुतिया, तू भी नरक में जा, मेरा एयर पायरेट ग्रुप खत्म हो गया है और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंतरिक्ष युद्ध में अपने बेड़े को बर्बाद होते देख तथा हार को केवल समय की बात मानते हुए किलोब ने करीना पर बुरी तरह से दहाड़ लगाई और फिर उसने जो शून्य जादू कवच पहना हुआ था उसके कंधे अचानक खुल गए, जिससे उसके अंदर छिपे हुए मैना लांचर प्रकट हो गए। विनाश तोप, किलोव की दहाड़ के साथ उसके कंधों पर रखे मैना लांचर एक चमकदार रोशनी में फट गए और तुरंत दो मैना ऊर्जा किरणें करीना की ओर तेजी से चली। किलोव आर्मर की सबसे बड़ी चाल थी एनिहिलेशन कैनन। चौथी पीढ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादित आर्मर में से एक होने के नाते इसकी जादुई ऊर्जा का मूल्य 3900 पॉइंट तक पहुंच गया था। इसकी सबसे शक्तिशाली चाल एनिहिलेशन कैनन की शक्ति 1000 पॉइंट तक पहुंच गई थी। इसकी शक्ति न केवल जादुई तोपों के बराबर थी बल्कि एक युद्धपोत की मुख्य तोपों के स्तर तक भी पहुंच गई थी। वास्तव में विनाश तोप का उपयोग शून्य जादू योद्धाओं के खिलाफ करने के लिए नहीं किया गया था बल्कि इसे बड़े युद्धपोतों का सीधे मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। दुर्भाग्य से किलोव पहले ही पागल हो चुका था, उसने सीधे करीना के खिलाफ विनाश तोप का उपयोग किया था। सच कहूं तो करीना को उम्मीद नहीं थी कि वह उसके खिलाफ एनिहिलेशन तोप जैसा कोई हथियार इस्तेमाल करेगा। उसने चौथी पीढ़ी का विशेष कवच पहना हुआ था जिसमें गति का स्पष्ट लाभ था, इसलिए जहाजी युद्ध के लिए बने एनिहिलेशन तोप जैसे हथियार से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए थी। हालांकि ठीक इसी विचार के कारण करीना लापरवाह हो गई और इसलिए जब किलोव ने विनाश तोप दागी तो न केवल वे दूरी में बहुत करीब थे बल्कि वह प्रतिक्रिया करने में भी आधी बीत धीमी थी, जिससे बचने का इष्टतम अवसर चूक गया। और इसलिए एक सांस का समय बीतने के बाद विनाश तोप की दो मन ऊर्जा किरणों ने करीना पर हमला किया। एक पल में, सचमुच बस एक पल में, करीना मैना विस्फोट से उत्पन्न प्रकाश में घिर गई। प्रहार से उत्पन्न विस्फोट का दायरा इतना बड़ा था कि करीना के केंद्र में होने के बावजूद इसने दर्जनों मीटर का दायरा घेर लिया। हवा में विस्फोट की प्रचंड लहर एक छोटे सूरज की तरह लग रही थी, भयानक और अंधा कर देने वाली। अचानक हुए विस्फोट ने दोनों बेड़े का ध्यान अपनी ओर खींचा। रॉकी, जिसने अभी अभी एक टोही जहाज को नष्ट किया था, तेज आवाज सुनते ही हवा में ही रुक गया और जल्दी से करीना की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी निगाहें उस पर पड़ी, सूरज जैसा आग का गोला 10 सेकंड से ज्यादा देर तक रहा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। और जैसे जैसे लपटें और रोशनी धीरे धीरे कम होती गईं, सबके सामने एक गोलाकार रक्षात्मक जाल प्रकट हुआ जिसके बीच में करीना तैर रही थी। अगर किलोव का सामना किसी साधारण शून्य जादुई योद्धा से होता जो सिर्फ मानक कवच पहने होता तो निस्संदेह अब तक वह जीत चुका होता। विनाश तोप की अपार शक्ति दुश्मन को पल भर में इस हद तक मिटा देती कि उसका कोई निशान न बचता। दुर्भाग्य से उसका सामना करीना से था और करीना ने चौथी पीढ़ी का विशेष कवच पहना हुआ था। उस पर हमला होने से पहले उसने समय पर आर्मर के रक्षात्मक जाल को सक्रिय कर दिया था जिससे वह बड़ी मुश्किल से हमले को रोक पाए। किलोव, विस्फोट का धुआं छंटने के बाद करीना हवा में गुस्से से चिल्लाई, लेकिन जब तक उसने किलोव की दिशा में देखा उसने पाया कि वह गायब हो चुका था। किलोव भाग गया था। धत्तेरी की, यह महसूस करते हुए कि किलोव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, करीना को तुरंत पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वास्तव में वह सचमुच किलोव द्वारा धोखा खा गई थी। जैसा कि पहले बताया गया है, किलोव एक से ज्यादा बार करीना का सामना कर चुका था और अच्छी तरह जानता था कि कवच युद्ध में उसे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह हताशा में पागल हो गया है, लेकिन असल में वह भागने की योजना बना रहा था और विनाश तोप को एक धुएं के पर्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। करीना पर विनाशकारी तोप के प्रहार से लेकर विस्फोटक धुएं के पूरी तरह बिखरने तक 10 सेकंड से ज्यादा समय बीत चुका था। ये समय ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन चौथी पीढ़ी के कवच पहने किलोव के लिए ये काफी था, कम से कम उसके भागने के लिए तो काफी था। वास्तव में जब करीना को यह एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक किलोव पूरी ताकत से युद्ध क्षेत्र के आधे भाग को पार कर चुका था तथा कुछ ही मिनटों में वह अपने प्रमुख जहाज पर वापस आ गया था। भागो, अभी भागो। फ्लैगशिप पर वापस लौटने पर किलोव ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत फ्लैगशिप को पीछे मुड़कर भागने का आदेश दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हालांकि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप सिर्फ एक डाकू समूह था, लेकिन उसके मुख्य सदस्यों में काफी तालमेल था। उदाहरण के लिए, फ्लैगशिप के कमांडर को रॉकी के युद्ध में शामिल होते ही पता चल गया था कि पासा पलट गया है। इस प्रकार जबकि बेड़े के अन्य युद्धपोत थंडरहॉक की ओर बड़े और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हुए, वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का प्रमुख जहाज धीरे धीरे पीछे की ओर रुका रहा जो स्पष्ट रूप से भागने के लिए तैयार था। ऐसी स्थिति में जब रॉकी, करीना और अन्य लोगों ने देखा कि किलोव अपने प्रमुख जहाज पर वापस भाग गया है, तो जहाज पहले ही युद्ध के मैदान से दूर चला गया था। किलोव को भागते देख करीना उसे जाने देने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सिर्फ एक आदमी और एक युद्धपोत का पीछा नहीं किया, इसके बजाय उसने अपने शून्य जादुई योद्धाओं की टीम को दुश्मन से लड़ते हुए तेजी से युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ान भरने को कहा, जहां दोनों बेड़े आपस में भिड़े हुए थे। पलक झपकते ही करीना युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गई, लेकिन वह अपने प्रमुख जहाज पर वापस नहीं लौटी। इसके बजाय वह सीधे वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के एस्कॉर्ट जहाज की ओर बढ़ गई। एस्कॉर्ट शिप के सामने पहुंचते ही करीना ने बिना कुछ कहे अपना बायां हाथ उठा दिया। बायां हाथ उठाते ही एक तीखी आवाज हुई और उसके बाएं हाथ का कवच किसी खिले हुए फूल की पंखुड़ी की तरह खुल गया। उसके शरीर की सारी जादुई ऊर्जा उसके बाएं हाथ में इकट्ठी हो गई। सूर्य स्लैश जादुई ऊर्जा एकत्रित होते होते कुछ ही सेकंड बीत गए। अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं बांह को सहारा देते हुए करीना ने जोरदार जादुई ऊर्जा की एक विशाल किरण छोड़ी। ये किरण, जिसका व्यास आधा मीटर था और जो सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रही थी, एस्कॉर्ट जहाज की ओर जा रही थी। एक पल बाद किरण एस्कॉर्ट शिप के रक्षात्मक जाल से टकराई, उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया और फिर धनुष के कवच पर जा गिरी। जादुई तोपों की बमबारी को झेलने में सक्षम किरण बिना किसी बाधा के कवच को ऐसे भेद गई मानो वह कागज का बना हो। कुछ ही पलों में किरण पूरे एस्कॉर्ट शिप को आर पार कर गई और उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक विनाशकारी रूप से भेद दिया। सनस्लैश करीना के विशेष कवच की सबसे बड़ी क्षमता, जिसका इस्तेमाल हर लड़ाई में सिर्फ दो बार ही किया जा सकता था। हर बार सक्रिय होने पर 2000 अंकों की जादुई ऊर्जा प्राप्त हो सकती थी। ये सचमुच एक विनाशकारी चाल थी, जिसमें करीना को तैयारी में अपना बायां हाथ उठाते देख के लोगों को भागना पड़ता। यह एक ऐसी चाल भी थी जो एक एस्कॉर्ट शिप को तुरंत नष्ट कर सकती थी। जब सनस्लैश ने एस्कॉर्ट शिप को धनुष से लेकर पिछले भाग तक भेद दिया तो 100 मीटर लंबा युद्धपोत धीरे धीरे हवा में झुका, फिर गिरते समय उसमें विस्फोट हुआ और वह बिखर गया तथा आकाश में 100 मीटर चौड़ा आग का गोला बन गया। विस्फोट की चमक युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर फैल गई और उनके चेहरे रक्त लाल हो गए। उसी क्षण गोलीबारी बंद हो गई और गर्जना बंद हो गई, पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। और इसी सन्नाटे में हवा में तैरती करीना ने धीरे से अपना बायां हाथ फिर उठाया, एक और एस्कॉर्ट शिप की ओर निशाना साधते हुए। फिर वह एक औरत की विशिष्ट डांकती हुई आवाज में चिल्लाए, समर्पण या मर जाओ। पुनश्च याद दिला दून की अध्याय संख्याओं को लेकर कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन सिर्फ अध्याय संख्याएं ही गड़बड़ हैं, कहानी नहीं। ये लिटिल डिटेक्टिव की ओर से एक गलती थी और पाठकों को पढ़ते समय हुई किसी भी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। केवल एक हमले के बाद, जिसने एक अनुरक्षक जहाज को नष्ट कर दिया, करीना और रॉकी ने इस महान लड़ाई में जीत का दावा किया। करीना के स्पष्ट किंतु अंतिम अल्टीमेटम के सामने डाकुओं ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया, जबकि उनके प्रमुख और प्रमुख भी भाग चुके थे। डाकू मूर्ख नहीं थे, वे समझ गए थे कि उनकी जीत की कोई संभावना नहीं है। इस निर्णायक युद्ध में थंडरहॉक के शामिल होने से वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप पहले ही एक प्रमुख युद्धपोत कम होने के कारण नुकसान में आ गया था, और युद्ध शुरू होने से पहले ही थंडरहॉक ने एक और अनुरक्षक जहाज को डुबो दिया, जिससे प्रमुख युद्धपोतों का कुल योग 5:8 हो गया। 5:8 केवल 5 प्रमुख युद्धपोतों के साथ वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का मुकाबला रॉकी और करीना के बेड़े के 8 युद्धपोतों से था। नुकसान इतना स्पष्ट था कि उसे बताने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा भागता हुआ किलोव अपने साथ एक युद्धपोत ले गया, जो पूरे बेड़े का सबसे मजबूत प्रमुख युद्धपोत था। परिणाम स्वरूप वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के प्रमुख युद्धपोतों की संख्या एक और कम हो गई, 5-4 हो गई, और फिर करीना ने युद्ध में शामिल होते ही एक और युद्धपोत को नष्ट कर दिया, जिससे उनके प्रमुख युद्धपोतों की संख्या तुरंत 3 रह गई। वे केवल 3 अनुरक्षक जहाजों और कुछ टोही जहाजों के साथ दुश्मन के 8 युद्धपोतों का सामना कैसे कर सकते थे? डाकू भले ही ज्यादा पढ़े लिखे न रहे हों, लेकिन वे बेवकूफ भी नहीं थे। वे अंडे से पत्थर मारने जैसा पागलपन तो नहीं करेंगे। इसलिए जब करीना ने जोरदार अल्टीमेटम दिया तो वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के युद्धपोतों ने विरोध करना बंद कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। किलोव के भागने, बेड़े के आत्मसमर्पण और उनके अड्डे पर शीघ्र ही कब्जा कर लिए जाने के साथ वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप, ये डाकू समूह जो कई वर्षों से आसमान में घूम रहा था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। सभी युद्धपोत हॉन्चिंग खंडहर पर उतरें और प्रतिरोध करने वालों का सिर काट दें। वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के बेड़े के आत्मसमर्पण करने पर करीना ने तुरंत सभी आत्मसमर्पण करने वाले युद्धपोतों को हॉन्चिंग खंडहर के पास उतरने का आदेश जारी किया, जहां उन्हें हॉन्चिंग के अंदर पकड़े गए डाकुओं के साथ निगरानी में रखा जाएगा। जाहिर है कैदियों को वापस लाना एक बड़ा काम था, क्योंकि हालांकि वे हवाई युद्ध हार चुके थे, वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के बेड़े में अभी भी 3 एस्कॉर्ट जहाज और 20 से ज्यादा टोही जहाज थे। हालांकि जहाज निर्जीव वस्तुएं हैं जो विद्रोह नहीं कर सकती, फिर भी इन जहाजों पर 600-700 डाकू थे, जिन्हें मुसीबत से बचाने के लिए उचित प्रबंधन की जरूरत थी। सौभाग्य से करीना और रॉकी की संयुक्त सेना के पास कर्मियों की कमी नहीं थी, तथा उनके बीच कुलीन गार्ड कोर के होने के कारण जो डाकू कैदी बन गए थे वे अपेक्षाकृत विनम्र थे। जब तक सारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो गईं और उसके सभी अधीनस्थों ने अपना काम शुरू नहीं कर दिया, तब तक करीना की मुलाकात रॉकी से नहीं हुई। चट्टान का करीना वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के मुख्यालय में, जब अन्य लोग कैदियों को इकट्ठा करने या समुद्री डाकू समूह के अड्डे को साफ करने में व्यस्त थे, केवल रॉकी और करीना ही अंदर बचे थे। हम जीत गए, करीना के सामने खड़े होकर रॉकी ने मुस्कुराहट प्रकट की। हाँ, हम जीत गए, जवाब में करीना भी हल्की सी मुस्कुराई, वह भी रॉकी की तरह शांत दिख रही थी। यद्यपि दोनों ही ऊपर से बहुत शांत दिखाई दे रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की आंखों में छिपी दबी हुई उत्तेजना को देख सकते थे। वास्तव में बाहर से तो वे दोनों सामान्य लग रहे थे, लेकिन अंदर से वे दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस बिंदु पर रॉकी का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिलिया वर्तमान में अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए हॉनचेंग खंडहरों के माध्यम से उन सभी मूल्यवान चीजों को जब्त करने जा रही थी जिन्हें वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने वर्षों से लूटा था। ये सभी इस लड़ाई में उसकी लूट थी। हालांकि यह अभी भी अज्ञात था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने अपने बेस में कितना छिपाया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक महत्वपूर्ण राशि थी, क्योंकि रॉकी के जाने के बाद मोटे और लिन फैंग के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने एक एक करके डाकुओं से पूछताछ शुरू कर दी और पूछा कि किलोव ने गोदामों को कहाँ छिपाया था। शायद मोटे और लिन फैंग वाकई बहुत आलसी थे, या शायद वे रॉकी को वापस लौटने पर जरूरी जानकारी जुटाने में लगे थे। खैर, दोनों ने बंदी डाकुओं से गहन पूछताछ की। उन्होंने डाकुओं द्वारा बताई गई जानकारी की दोबारा जांच भी की और झूठ बोलने वालों को तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। आखिरकार वे हर बात की जानकारी निकालने में कामयाब रहे। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार होनचेंग खंडहर में कई बड़े गोदाम थे। हवाई डाकुओं द्वारा लूटा गया माल वहां रखा जाता था और माल बेचकर मिले सोने के सिक्के भी वहां रखे जाते थे। और अब वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के नष्ट हो जाने के बाद ये सभी चीजें रॉकी की युद्ध लूट बन गईं। और इस वजह से उसे जो युद्ध में लूट मिली वह इससे कहीं अधिक थी, क्योंकि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का बेड़ा भी रॉकी का ही था। लॉर्ड करीना के साथ पहले हुए समझौते के अनुसार उसने सिर्फ कर्मियों पर दावा किया था, लोगों के अलावा बाकी सब रॉकी की युद्ध लूट थी। इसलिए एयर पायरेट ग्रुप के अड्डे के अंदर सब कुछ रॉकी का था और इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाला बेड़ा भी शामिल है। यह आय रॉकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक थी, क्योंकि हालांकि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के बेड़े को हवाई युद्ध में भारी नुकसान हुआ था, फिर भी कई युद्धपोत बच गए थे। लगभग 20 तो ही जहाज और बाकी 3 अनुरक्षक जहाज बच गए थे। वे 3 अनुरक्षण जहाज थे। बेशक वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के एस्कॉर्ट जहाज तीसरी पीढ़ी के युद्धपोत थे और चौथी पीढ़ी का एकमात्र प्रमुख जहाज किलोव द्वारा उड़ाया गया था, फिर भी यह अभी भी एक अविश्वसनीय खजाना था। एक बार रॉकी ने इन युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया तो इसकी युद्ध शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच जाएगी, और इतना ही नहीं, ये पहले से भी ज्यादा दुर्जय हो जाएगा। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के 3 अनुरक्षण जहाजों को मिलाकर उसके पास बड़े युद्धपोतों की संख्या 5 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा कृपया यह मत भूलिए कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के 5 शून्य जादू योद्धाओं में से एक युद्ध में मारा गया था, कि लोग खुद भाग गया था, लेकिन अभी भी 3 शेष थे। इन तीनों शून्य जादुई योद्धाओं ने अपने बेड़े के साथ आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने के बाद वे स्वाभाविक रूप से रॉकी और करीना के बीच बंट गए। लोग करीना के थे, जबकि कवच रॉकी के। चौथी पीढ़ी के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रकार के कवच के 3 सेट अब सभी रॉकी के हैं। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि शून्य जादुई कवच के इन 3 सेटों को मिलाकर रॉकी के पास अब शून्य जादुई कवच के 5 सेट थे, जो आधे शून्य जादुई दस्ते के लिए काफी थे। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद रॉकी उत्साहित क्यों ना हो। और इसी तरह करीना भी बेहद खुश थी। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के खात्मे ने उस पर बरसों से हावी एक भारी बोझ उतार दिया था। सिर्फ यही बोझ किसी भी पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा रॉकी की तरह उसे भी इस लड़ाई से बहुत कुछ हासिल हुआ था। पकड़े गए डाकू ही उसकी लूट थे। महायुद्ध के बाद मारे गए या भाग निकले डाकुओं के अलावा बेड़े के साथ हवाई युद्ध में शामिल होने वाले डाकुओं की संख्या लगभग 600-700 थी। गार्ड कोर द्वारा पकड़े गए डाकुओं को मिलाकर ये संख्या लगभग 1000 थी। ये लगभग 1000 डाकू करीना के युद्धबंदी बन जाएंगे, और यदि उसके तरीके काफी कठोर थे तो ये लगभग 1000 डाकू निस्संदेह उसकी कमान के तहत एक शक्तिशाली सेना बन जाएंगे। जीत जीत। जब लॉर्ड करीना ने पहली बार रॉकी को ढूंढा था और साझेदारी का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने कहा था कि यह सहयोगात्मक प्रयास दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अब परिणाम को देखते हुए करीना ने झूठ नहीं बोला था। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप की पराजय के साथ दोनों ने वास्तव में वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वे चाहते थे। ये सचमुच दोनों के लिए फायदेमंद था। रॉकी, लॉर्ड करीना। तभी लिलिया कमरे में दाखिल हुई और करीना को सलाम करने के बाद उसने रॉकी से कहा, हमें वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के गोदाम मिल गए हैं। महाराज, एयर पायरेट ग्रुप का गोदाम मिल गया है। रॉकी और करीना अपनी जीत पर उत्साह महसूस कर रहे थे। लिलिया ने उन्हें खुशखबरी दी, वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का गोदाम मिल गया था। खबर सुनते ही रॉकी और करीना ने एक दूसरे को देखा, फिर वे बिना किसी हिचकिचाहट के लिलिया के साथ कमरे से बाहर निकल गए और सीधे गोदाम की ओर चल पड़े। हालांकि समझौते के मुताबिक गोदाम में सब कुछ रॉकी का था, करीना भी कुछ उत्सुक थी। वह जानना चाहती थी कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के गोदाम में आखिर क्या है, वहां कितनी दौलत छिपी है। इन परिस्थितियों में वे तीनों वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के मुख्यालय से निकलकर एक विशाल शहर के खंडहरों से होकर गुजरे और अंततः गोदाम के स्थान पर पहुंच गए। अरे या वाह! गोदाम में पहुंचकर रॉकी अपने सामने का दृश्य देखकर विस्मय से मुंह खोले बिना नहीं रह सका। वहां 3 विशाल गोदाम थे। हर गोदाम खंडहरों की नींव पर बना था, आकार में अलग अलग, दो गोदाम थोड़े छोटे और एक बहुत बड़ा, कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। उनके सामने 3 गोदाम थे जहां वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने अपनी सारी संपत्ति जमा कर रखी थी। जब रॉकी और अन्य लोग वहां पहुंचे तो गार्ड कोर स्टोर रूम के पास निगरानी कर रहा था और गोदामों के दरवाजे भी नहीं खुले थे। ये निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया था। बंद दरवाजे रॉकी द्वारा खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई तो द्वार खोलो। एक छोटे से गोदाम के दरवाजे के सामने खड़े होकर रॉकी ने दरवाजे पर लगी लोहे की जंजीरों और ताले पर नजर डाली, फिर चिल्लाया, आ रहा। उसके आदेश के बाद मोटे तुरंत उसके पीछे से आगे बढ़ा। बिना कुछ कहे उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ताले पर दे मारी। एक दरार के साथ बेसिन के आकार का ताला ब्रॉडेक्स द्वारा तोड़ दिया गया और तुरंत मोटे और कुछ गार्डों ने जंजीरों को खींच लिया और साथ मिलकर उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे खोल दिए। चरमराहट, 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 चरमराहट। मोटे और गार्डों के संयुक्त प्रयास से गोदाम के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। खट 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 खट। और जैसे जैसे दरवाजे धीरे धीरे खुलते गए, एक कर्कश सुखद ध्वनि निकली, जिसके बाद दरवाजे के चौड़े होते अंतराल से सोने के सिक्के बाहर गिरते दिखाई दिए। ट्रेसलेस बैटलफील्ड साल भर धूप से रहित जगह थी, लेकिन फिर भी जब गोदाम के खुले दरवाजे से सोने के सिक्के बरस रहे थे तो हर कोई उस तेज रोशनी से चकाचौंध हो रहा था। और जब दरवाजा पूरी तरह से खुला तो उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी और भी सोने के सिक्के बाहर निकल आए। ये दिखने में छोटा सा गोदाम पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सोने के सिक्कों की विशाल मात्रा इतनी चमकदार थी कि बाहर खड़े दर्शक दंग रह गए। एक साथ कई घूंटों की आवाजें आईं, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये तो सर्वविदित था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के गोदाम में माल जरूर होगा, क्योंकि वे एक डाकू समूह थे और उन्हें जमाखोरी की आदत थी। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वे इतने बेशर्म होंगे कि सोने के सिक्कों का पूरा भंडार जमा कर लेंगे। यह कोई साधारण गोदाम नहीं था, ये स्पष्टतः एक खजाना था। हा हा हा, दोस्तों सब कुछ जहाज पर लाद लो। गोदाम के सोने की चकाचौंध से जहां सब अंधे हो गए थे, वहीं रॉकी सबसे पहले होश में आया। वह खिलखिलाकर हंसा और फिर पास खड़े मोटे से कहा कि सोने के सिक्कों को जहाज तक पहुंचाने के लिए तुरंत लोगों का इंतजाम करो। हाँ, मोटे ने तुरंत अपने आसपास कई गार्ड तैनात कर दिए और उन्हें तुरंत जाकर मदद के लिए बुलाने का निर्देश दिया। सोने के सिक्कों से भरा गोदाम भले ही बहुत बड़ा न लगे, लेकिन फिर भी यह एक गोदाम था जिसमें शायद लाखों सोने के सिक्के रखे होंगे। ये काम एक या दो लोगों का तो था ही नहीं, इसके लिए एक बड़ी टीम की जरूरत थी। सौभाग्य से इस समय तक गार्ड कोर ने करीना की सेना को सौंपने का काम पूरा कर लिया था और बंदी डाकुओं को करीना की सेना की देखभाल में छोड़ दिया गया था, इसलिए गार्ड कोर के पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी थे। जब मोटे ने गार्डों को उनके व्यस्त काम में नेतृत्व करना शुरू किया तो रॉकी और करीना दूसरे गोदाम में पहुंचे। ये गोदाम सोने के सिक्कों से भरे गोदाम के लगभग बराबर आकार का था और इसका बड़ा दरवाजा भी एक बड़े ताले से बंद था। लिन फेंग, दरवाजा खोलो। समझ गया। अब जबकि मोटे गार्ड कोर को सोने के सिक्के ले जाने का निर्देश दे रहा था, रॉकी ने सीधे लिन फेंग को बुलाया। बुलाए गए लिन फेंग तुरंत गोदाम की ओर बढ़े और अपनी लंबी तलवार उठाकर दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ते हुए जोरदार वार किया। फिर पहले की तरह उन्होंने और कुछ पहरेदारों ने मिलकर गोदाम का दरवाजा खोला। इस बार जैसे ही दरवाजा खोला गया, जमीन पर कोई चमकते हुए सोने के सिक्के नहीं गिरे। जब दरवाजा पूरी तरह से खुला और सबने अंदर देखा तो पाया कि गोदाम एक के बाद एक लकड़ी के बक्सों से भरा पड़ा था। यह क्या है? लकड़ी के बक्सों से भरे गोदाम को देखकर रॉकी थोड़ा दंग रह गया और कुछ हद तक निराश भी। सोने के सिक्कों से भरा पिछला गोदाम इतना चौंकाने वाला था कि उसने उसकी उम्मीदें बढ़ा दी थी, इसलिए जब उसने इस गोदाम में बक्से देखे तो उसे यकीन हो गया कि ये वाकई में कुछ खास हैं। हालांकि थोड़ी निराशा के बाद वह फिर से खुश हो गया। आखिरकार सामान भी तो कीमती था, जिसे एक साधारण लेन देन से आसानी से चमकदार पैसों में बदला जा सकता था। उन सबको बाहर निकालो, देखते हैं वे क्या हैं। रॉकी ने अपना रुख बदलते हुए लिन फेंग की तरफ सिर हिलाया। इसके बाद लिन फेंग कुछ गार्डों को गोदाम में ले गया और हर एक गार्ड एक एक डिब्बा बाहर लाया। खोलो इसे। लिन फेंग और गार्डों को अपने सामने कई लकड़ी के बक्से रखते हुए देखकर रॉकी ने तुरंत उन्हें खोलने का आदेश दिया और फिर गार्डों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल करके एक एक करके बक्से को खोल दिया। ये है सर, ये डायमंड कोर है, डायमंड कोर। जब गार्ड ने पहला लकड़ी का बक्सा खोला तो गार्ड एकदम से दंग रह गया और तुरंत रॉकी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या? गार्ड इतना उत्साहित था कि उसकी आवाज बहुत तेज थी, जिससे आसपास खड़े सभी लोग उसे सुन पा रहे थे। फिर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, जिनमें वे दूसरे गार्ड भी शामिल थे जो बक्सों को खोल रहे थे। इस आदमी ने अभी क्या चिल्लाया? क्या ये डायमंड कोर था? इस पल रॉकी और करीना दोनों को लगा कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से चिल्लाते हुए गार्ड के पास गए। नीचे झुककर देखा तो उन्हें उसके पैरों के पास डायमंड कोर से भरा एक पूरा डिब्बा मिला। छोटे लकड़ी के बक्से में विभिन्न रंगों के दानव कोर बड़े करीने से व्यवस्थित थे, जिनमें से कुछ मुट्ठी जितने बड़े थे दर्जनों की संख्या में रखे हुए थे। वहां खड़े मत रहो, अन्य बक्से भी खोलो। डायमंड कोर से भरे एक बॉक्स के सामने रॉकी एक क्षण के लिए तो चौंका, लेकिन फिर उसने तुरंत अन्य गार्डों को बताया, जो अब तक अपने आश्चर्य से बाहर आ चुके थे और जल्दी से अपने अपने बॉक्स खोलने लगे। ये राक्षस की हड्डियां हैं सर, मेरे पास जो बॉक्स है वह दानव त्वचा है सर, ये बक्सा पूरी तरह से राक्षसों की रीढ़ से बना है सर, ये बॉक्स भी डायमंड कोर है। जैसे जैसे एक के बाद एक लकड़ी के बक्से खोले गए, सभी को अंततः पता चल गया कि दूसरे गोदाम में क्या रखा है। राक्षस, ये गोदाम राक्षसों से प्राप्त वस्तुओं से भरा हुआ था, अत्यधिक मूल्यवान राक्षस कोर, व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली राक्षस खालें और यहाँ तक कि राक्षस हड्डियां, संक्षेप में राक्षस के शरीर से प्राप्त कोई भी चीज यहाँ मिल सकती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस गोदाम की सामग्री पिछले गोदाम के सोने के सिक्कों से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उत्कृष्ट, सामान से भरे एक के बाद एक टोकरे को देखते हुए रॉकी खुद को रोकने की कोशिश करने के बावजूद अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। अब उसका मूड इतना अच्छा था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। करीना ने पहले बताया था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप इतने सालों से आसमान में घूम रहा है और एक बड़ा भंडार बना रहा है, इसलिए इस डकैती से ही 10 लाख से ज्यादा की लूट हो सकती है। हालांकि उसने ऐसा कहा था, रॉकी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, उसने सोचा था कि कुछ लाख की फसल काफी प्रभावशाली होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि करीना ने झूठ नहीं बोला था, वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप के पास वाकई काफी जबरदस्त जखीरा था। ऐसा लगता है कि किलो के पास काफी मात्रा में निजी लूट भी थी। जैसे ही गार्ड ने गोदाम से सभी बक्से बाहर निकालने शुरू किए, करीना ने रॉकी के पास से टिप्पणी की। ओह, ये सुनकर रॉकी ने उसे कुछ उलझन भरी नजरों से देखा। वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप कई वर्षों तक वाइल्ड हॉर्स सिटी के समर्थन पर निर्भर रहकर काम कर सकता है, लेकिन इस तरह के समर्थन की एक कीमत होती है। रॉकी की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ करीना ने बताया, जहां तक मुझे पता है, किलो का कार्लो के साथ समझौता ये था कि वाइल्ड हॉर्स सिटी एयर पायलट ग्रुप को सुरक्षा प्रदान करेगा और बदले में एयर पायलट ग्रुप को प्रत्येक छापे से प्राप्त लूट का 70% वाइल्ड हॉर्स सिटी को सौंपना होगा और किसी भी समय शहर के आदेश और निपटान में रहना होगा। लेकिन अब लगता है कि किलो बहुत स्वार्थी था, वरना इतने सारे लुटेरों को खाना खिलाने और वाइल्ड हॉर्स सिटी को कर देने के चक्कर में वह ज्यादा कुछ नहीं बचा पाता। पास से गुजर रहे एक सैनिक और उसके हाथों में रखे बक्सों की ओर देखते हुए करीना ने कहा। यहां तक कि उसके जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप ने उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सामान छिपा कर रखा था, और यह किसी के लिए भी स्पष्ट था कि चाहे वह पूर्व गोदाम से सोने के सिक्के हों या इस गोदाम से राक्षसी वस्तुएं हों, वे सभी एयर पायलट ग्रुप के संचालन के कई वर्षों के दौरान एकत्रित किए गए थे। दरअसल मामला बिल्कुल ऐसा ही था। एक डाकू होने के नाते किलो वाइल्ड हॉर्स सिटी के नियमों से आसानी से नहीं खेल सकता था। हालांकि वे एकजुट दिखते थे, लेकिन असल में वे एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए किलो पूरी तरह से वाइल्ड हॉर्स सिटी पर निर्भर नहीं था। आगे की सोचते हुए वह वर्षों से वाइल्ड हॉर्स सिटी के साथ संभावित टकराव की तैयारी कर रहा था तथा संघर्ष की स्थिति में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपने निजी खजाने को जमा कर रहा था। दुर्भाग्यवश वाइल्ड हॉर्स सिटी के साथ कोई भी समस्या सामने आने से पहले ही वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का सफाया कर दिया गया और किलो द्वारा सावधानीपूर्वक एकत्रित किया गया सारा माल रॉकी को समृद्ध करने में लग गया। करीना, ये सामान वे सब तुम्हारे हैं, मुझे तो केवल लोग चाहिए। रॉकी की ओर देखते हुए करीना ने पहले ही समझ लिया कि वह क्या कहने वाला है। उसने उसकी बात बीच में ही रोक दी और संकेत दिया कि जो समझौता उनके बीच पहले हुआ था वह अभी भी कायम है, बिक्री से होने वाला मुनाफा उसका है, उसे केवल लोगों की जरूरत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रॉकी बहुत ज्यादा सोच रहा था। वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप द्वारा छिपाई गई दौलत वाकई बहुत ज्यादा थी। यह न सिर्फ उसकी उम्मीदों से परे थी बल्कि करीना की भी, और जब दांव इतना बड़ा हो तो कुछ बातें दिल में जड़ें जमा सकती हैं। सौभाग्यवश करीना धन के मद में अंधी नहीं हुई और उसने इस बात पर जोर दिया कि लूट का माल पहले से तय समझौते के अनुसार बांटा जाए। ठीक है, रॉकी ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा, लेकिन करीना के प्रति उसके दिल में सम्मान एक और स्तर तक बढ़ गया था। उसके बाद समूह तीसरे गोदाम के सामने पहुंचा। तीसरा गोदाम न सिर्फ वाइल्ड हॉर्स एयर पायलट ग्रुप का आखिरी गोदाम था बल्कि तीनों में सबसे बड़ा भी था। बस गोदाम का दरवाजा 7-8 मीटर चौड़ा था। इस बार जब वे गोदाम के दरवाजे के सामने पहुंचे तो लिलिया ने रॉकी के आदेश का इंतजार किए बिना ही पहल कर दी। उसने हाथ हिलाकर दरवाजे का ताला और लोहे की जंजीर काट दी। फिर शून्य जादू कवच से मजबूत होकर उसने अकेले ही दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खोला गया, सभी लोग अंदर देखकर आश्चर्य से हौंफने लगे। इतना सारा सामान, इस तीसरे और सबसे बड़े गोदाम में सभी प्रकार का माल भरा हुआ था। चारों ओर देखने पर भीड़ को यस्क के ढेर, जादुई पत्थरों के बक्से, कवच, हथियार, रेशम, कपड़े, विभिन्न दैनिक आवश्यकताएं तथा कुछ कच्चे माल और पुर्जे आदि दिखाई दिए, जिनका नाम बताना संभव नहीं था। साफ है कि ये सारी चीजें वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप द्वारा लूटी गई थीं। देखने से लग रहा था कि इन्हें बहुत पहले ही चुराया गया था और वाइल्ड हॉर्स सिटी को सौंपने या बेचने का समय नहीं था, इसलिए इन्हें गोदाम में जमा करके रखा गया था। इस वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने कितने व्यापारी जहाजों पर छापा मारा और इतना सारा माल इकट्ठा किया। गोदाम में सामान का विशाल ढेर देखकर रॉकी अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। हालांकि इस गोदाम में रखी चीजें पहले जितनी कीमती नहीं लग रही थी, लेकिन असल में उनकी कीमत जरा भी कम नहीं थी, बल्कि शायद ज्यादा ही थी, क्योंकि ये सामान असल में बाजार में बिकने के लिए तैयार था और जाहिर है ये सब वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने लूटा था। यही वह बात थी जिसने रॉकी की आंखें चौंधिया दी। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप ने इतनी बड़ी मात्रा में माल हासिल करने के लिए कितने व्यापारी जहाजों पर छापा मारा होगा। यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जितना आप सोचते हैं, रॉकी को इतना हंगामा करते देख करीना ने कहा। वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप इतना बड़ा है कि जब वे निकलेंगे तो कई टीमों में बढ़ जाएंगे। वे एक ही ऑपरेशन में कई व्यापारी जहाजों पर धावा बोल सकते हैं। और तो और, ये सामान किसी एक डकैती का तो नहीं है। हो सकता है कि पिछली तिमाही का लूटा हुआ सामान यहीं रखा हो और तुम यूं ही यहां आ गए हो। तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, असाधारण रूप से भाग्यशाली। रॉकी और करीना ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और रॉकी दिल खोलकर हंसा। उसका मूड और भी अधिक खुश हो गया। इस बार उसकी कमाई बहुत ज्यादा थी। उसने न सिर्फ एक बेड़ा, शून्य जादुई कवच, बल्कि ढेर सारा सामान भी हासिल किया था। तीनों गोदामों से सब कुछ मिलाकर उनकी कीमत कम से कम 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, शायद उससे भी ज्यादा। इसलिए इस दौलत से थंडरहॉक शहर का आर्थिक संकट पूरी तरह से हल हो गया माना जाएगा। उसने अंदाजा लगाया कि एलिन बहुत खुश होगी। इतने जोश में रॉकी ने गार्ड कोर को काम में जुट जाने का आदेश दिया। हालांकि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप का पूरी तरह से सफाया हो चुका था, फिर भी ये जगह आखिरकार एक ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र ही थी। न तो करीना और न ही रॉकी ऐसी जगह पर रुकना चाहते थे, इसलिए गार्ड कोर ने तुरंत युद्धपोतों पर सामान लादना शुरू कर दिया। काम में तेजी लाने के लिए करीना ने भी मदद के लिए कुछ लोग तैनात कर दिए। सभी लोग कई घंटों तक व्यस्त रहे, इससे पहले कि तीनों गोदामों की सारी सामग्री अंततः युद्धपोतों पर ला दी गई, जिससे 4 एस्कॉर्ट जहाज भर गए। इसके बाद विशाल बेड़ा धीरे धीरे उड़ान भरने लगा। होनचेंग के खंडहरों पर बमबारी करके वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप के अड्डे को पूरी तरह से तबाह करने के बाद रॉकी और करीना उस लदे हुए बेड़े को वापस घर ले गए। थंडरहॉक के अगले हिस्से पर खड़े होकर जब रॉकी ने दूर तक देखा तो उसे लगा कि उसके सामने जादुई ऊर्जा का तूफान भी अब उतना भयावह नहीं रहा। उसके विचार अब यहाँ नहीं थे। अचानक उसे मेरेंटे परिवार और लेक्सिंगटन का ख्याल आया। सच कहूं तो एक पल के लिए उसने सोचा कि लेक्सिंगटन का बदला जल्दी आ जाए। लेक्सिंगटन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसने इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है, इसलिए जब उसका बदला लेने का समय आया तो रॉकी को विश्वास था कि वह उसे निश्चित रूप से एक बड़ा आश्चर्य देगा। अच्छी फसल के साथ रॉकी और लिलिया ने होनचेंग खंडहर को छोड़ दिया और जाने से पहले उन्होंने सदियों पुराने खंडहरों पर पूरी तरह से बमबारी की, जिससे वे ईंटों और टाइलों के ढेर में बदल गए। हालांकि पूरा बेड़ा ऊपर चढ़ जाने के बाद वे मूल मार्ग से वापस नहीं लौटे। रॉकी और करीना ने कुछ देर विचार विमर्श किया और फिर ऑटन को बुलाया। अंततः उन्होंने ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र से सीधे होनचेंग खंडहर की दिशा में निकलने और फिर युद्ध क्षेत्र के बाहर स्काई सिटी की ओर चक्कर लगाने का फैसला किया। इस रास्ते से स्वाभाविक रूप से उनकी यात्रा की दूरी बढ़ जाती और उन्हें कम से कम 2-3 दिन की देरी हो जाती। चूंकि होनचेंग खंडहर ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र के उत्तरार्ध में स्थित थे और वे पहले आधे भाग से ही वहां पहुंचे थे, इसका मतलब था कि उत्तरार्ध से निकलने के बाद उन्हें अपने स्काई सिटी लौटने के लिए पूरे ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र का चक्कर लगाना पड़ता। हालांकि ऐसा करने का लाभ यह हुआ कि सुरक्षा बढ़ गई। अगर वे मूल मार्ग से लौटते तो बेड़े को जादुई ऊर्जा तूफान से घिरे क्षेत्र से फिर से गुजरना पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें जादुई ऊर्जा तूफान का सामना उसी तरह करना पड़ता जैसे रास्ते में करना पड़ा था, और एक बड़े युद्ध के बाद किसी को नहीं पता था कि बेड़ा तूफान के हमले का सामना कर पाएगा या नहीं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सभी ने अंततः लंबा रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार उड़ान भरने के बाद बेड़ा होनचेंग खंडहर की दिशा में आगे बढ़ा और तेजी से ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। फिर वे युद्ध क्षेत्र के किनारे किनारे चलने लगे, स्काई सिटी लौटने की तैयारी में। ट्रेसलेस बैटलफील्ड का दायरा बहुत विशाल था। यद्यपि इसे युद्ध क्षेत्र कहा जाता था, पर वास्तव में यह एक संपूर्ण क्षेत्र था और इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कम से कम 2-3 दिन लगते थे। हालांकि ये समय उन सभी के लिए स्पष्ट रूप से नगण्य था जो बहुत उत्साहित थे। एक बड़ी जीत हासिल करने और लाखों डॉलर मूल्य की युद्ध लूट पर कब्जा करने के बाद, रॉकी और अन्य लोग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय बिताने के लिए पूरी तरह तैयार थे। फिर भी कुछ चीजें टाली नहीं जा सकती। जब बेड़ा ट्रेसले इस युद्ध क्षेत्र से निकला, तब तक शाम हो चुकी थी। विशाल बेड़ा रात के आकाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, न तेज न धीमा, क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी। थंडहॉप पर रॉकी और लिलिया धनुष पर एक साथ खड़े होकर रात के दृश्य का आनंद ले रहे थे। रॉकी के पास खड़ी लिलिया, जो चुपचाप तारों भरे आकाश को देख रही थी, अचानक बोल पड़ी, क्या चल रहा है? आप और लॉर्ड करीना बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। रॉकी के पास खड़ी लिलिया अभी भी अपने शून्य जादू कवच में लिपटी हुई थी, शायद इसलिए क्योंकि हेलमेट ने उसकी आवाज को धीमा कर दिया था, उसे बहुत धीमा और लगभग अश्रव्य बना दिया था। लेकिन रॉकी ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। फिर भी जब उसने ये शब्द सुने तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने सिर हिला दिया। हाँ, मैं रोज सिटी को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए करीना की सचमुच प्रशंसा करती हूँ। उन्हें महिलाओं की नायिका कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओह, रॉकी की यह बात सुनकर लिलिया ने सिर हिलाया और फिर चुप हो गई। उसके चेहरे के भाव हेलमेट के कारण छिप गए। हाहा, लेकिन इसके बाद रॉकी जोर से हंसा और अचानक अपना हाथ बढ़ाकर लिलिया को अपनी बाहों में खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? रॉकी के अचानक गले लगने से चौंक कर लिलिया तुरंत घबरा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह छूटना चाहती थी, लेकिन उसने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। इस पर रॉकी की हंसी और भी अधिक आनंददायक हो गई। क्या तुम्हें करीना से जलन हो रही है? उसने अपना हाथ लिलिया की पतली लेकिन शक्तिशाली कमर पर रखा और प्रसन्नतापूर्वक पूछा, मैं नहीं हूं। जब ये पूछा गया तो लिलिया के गाल रसीले सेब की तरह लाल हो गए, जो इतना स्पष्ट था कि उसके हेलमेट के नीचे भी देखा जा सकता था। और इस नजर ने रॉकी को और भी अधिक खुशी से हंसने पर मजबूर कर दिया। देखो नगर स्वामी और कप्तान क्या कर रहे हैं। चुप, क्या तुम मरना चाहते हो? जब रॉकी और करीना जहाज के अगले हिस्से पर इश्कबाजी कर रहे थे, डेक पर खड़े गार्ड दूर से इकट्ठा होकर उनकी हर हरकत पर उत्साह से नजर रख रहे थे। तुम बदमाश लोग, तुम सब क्या कर रहे हो? जैसे ही गार्ड रॉकी पर हंस रहे थे, ओल्ड जैक अचानक प्रकट हुआ और उसने पीछे से उनमें से प्रत्येक को एक लात मारी। तुम बच्चों का झुंड हो, जो नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो, आंखों में जलन से सावधान रहो, जल्दी से तितर बितर हो जाओ। गार्डों पर चिल्लाने के बाद ओल्ड जैक ने उन्हें बलपूर्वक भगा दिया और फिर धनुष पर रॉकी और लिलिया की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया और केबिन में वापस आ गया। रॉकी ने अपने पीछे हो रही हलचल जरूर सुनी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि थंडरहॉक सिटी में लगभग सभी जानते थे कि वह और लिलिया बचपन के प्रेमी हैं और उन्हें पहले से ही एक जोड़ा मानते थे। इसलिए रॉकी को देखे जाने का डर नहीं था और सिटी लॉर्ड होने के नाते उसे कौन नियंत्रित कर सकता था। तभी जब रॉकी लिलिया को छेड़खानी करते हुए शर्मिंदा कर रहा था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया, अचानक एक भयंकर दहाड़ उठी। दहाड़ दहाड़, यह अचानक हुई गर्जना आकाश में गूंज उठी। एक बार जब ये सुनाई दी तो पूरे बेड़े में फैल गई, जिससे बेड़े का हर व्यक्ति इसे सुन सका। जो सैनिक गहरी नींद में थे वे तुरंत जाग गए और जो नहीं सोए थे वे गर्जना से चौंक गए। साथ ही ऐसा प्रतीत होता था कि दहाड़ में किसी प्रकार की जादुई शक्ति थी, जिससे जो कोई भी इसे सुनता था उसे अनियंत्रित रूप से ठंड लगने लगती थी, मानो वह बुरी तरह डर गया हो। रॉकी और लिलिया, जो धनुष पर थे, ने भी स्वाभाविक रूप से यह भयानक दहाड़ सुनी और जैसे ही उन्होंने इसे सुना, दोनों के मन में एक ही बात आई, उच्च स्तरीय राक्षस। यह एक उच्च स्तरीय राक्षस की दहाड़ थी। रॉकी को याद आया कि जब उसने पहली बार किसी राक्षस से लड़ाई की थी, जब उसने एक ग्ररॉक दानव को मारा था, तो उसने और लिलिया ने एक उच्च स्तरीय राक्षस की दहाड़ सुनी थी। इसलिए दोनों उच्च स्तरीय राक्षसों की आवाज से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने तुरंत उसके स्रोत को पहचान लिया। क्या आसपास कोई उच्च स्तरीय राक्षस हो सकता है? इस संभावना के बारे में सोचते ही रॉकी का चेहरा पीला पड़ गया। अगर यह सच था तो वे बड़ी मुसीबत में थे। रॉकी के पास एक पूरा बेड़ा होने, 40 से 50 युद्धपोत होने तथा बेड़े में उसके साथ 60 जादू योद्धाओं के शामिल होने के बावजूद, ये सब एक उच्च स्तरीय दानव के सामने कुछ भी नहीं थे। उच्च स्तरीय राक्षसों का विकराल स्वरूप अवर्णनीय था। हालांकि ये विकराल जीव भी राक्षस ही थे, लेकिन वे सामान्य राक्षसों जैसे बिल्कुल नहीं थे। अगर रॉकी और उसकी टीम का सामना सिर्फ एक उच्च स्तरीय राक्षस से भी होता तो परिणाम निश्चित रूप से विनाश ही होता। इन परिस्थितियों में उसने तुरंत थंडरहॉक को ऊंचाई बढ़ाने और जमीन से दूर जाने का आदेश दिया। फिर वह और लिलिया दोनों धनुष से उतरकर बाहर गए और देखा कि असल में क्या हो रहा है। जैसे ही वे थंडरहॉक से बाहर उड़े, करीना 30 जादू कवच के साथ कोडरोज से बाहर उड़ गईं। करीना, यह एक उच्च स्तरीय राक्षस की आवाज है। 60 जादू योद्धा हवा में मिले और रॉकी ने जल्दी से कहा, मैंने इसे पहचान लिया। करीना ने उसकी याद दिलाने पर सिर हिलाया और कहा, मैंने बेड़े को जमीन से दूर रहने के लिए यथासंभव ऊंचाई बढ़ाने का निर्देश दे दिया है, इसलिए ज्यादा चिंता न करें। उड़ने में सक्षम उच्च स्तरीय राक्षस कम ही है। करीना रॉकी को दिलासा देना चाहती थी, उसे याद दिलाते हुए कि वह ज्यादा चिंतित न हो। आखिरकार राक्षसों में उच्च स्तरीय राक्षसों की संख्या बेहद कम है और इन दुर्लभ उच्च स्तरीय राक्षसों में से भी कम उड़ सकते हैं। इसका मतलब था कि अगर उनका सामना किसी उच्च स्तरीय राक्षस से हुआ भी तो जब तक बेड़ा पर्याप्त ऊंचाई पर रहे और तेजी से दूर चला जाए उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती दहाड़ फिर से सुनाई दी। दहाड़ दहाड़ दहाड़, एक बार फिर गड़गड़ाहट से भी अधिक तेज गर्जना हुई जिससे सभी के सिर और कानों में तीव्र दर्द होने लगा, यहां तक कि एक क्षण के लिए चक्कर भी आ गया। जब गर्जना शांत हो गई तो सभी के चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि इस गर्जना से उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह भयानक आवाज जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से आ रही थी। जल्दी देखो, जैसे ही सभी को इस बात का पता चला लिलिया ने अचानक दूर की ओर इशारा किया और चीख पड़ी। रॉकी और अन्य लोगों ने जल्दी से उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रही थी और तब ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी उच्च स्तरीय राक्षस से भी अधिक भयानक चीज देख ली हो। उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। लिलिया ने जिस दिशा में इशारा किया उस ओर देखते हुए रॉकी और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उनकी दृष्टि में क्षितिज पर एक विशाल स्काई सिटी उभरी, इतनी बड़ी कि दूर से भी रॉकी और करीना बता सकते थे कि यह एक बड़ा स्काई सिटी होगा जिसकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक होगी। बेशक हालांकि बड़े स्काई सिटी ज्यादा संख्या में नहीं थे फिर भी वे दुर्लभ भी नहीं थे। कम से कम रॉकी ने इटर्नल सिटी जाते हुए कई देखे थे, इसलिए उसे इस बात से कोई झटका नहीं लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने देखा कि विशाल स्काई सिटी पर दर्जनों जादुई ड्रैगन का घेराव हो गया है। जादुई ड्रैगन उच्च स्तरीय राक्षस और उनमें से एक जो अस्तित्व में सबसे अधिक भयानक है। इन उच्च स्तरीय राक्षसों की लंबाई सैकड़ों मीटर तक होती थी और आकार में भी भिन्नता होती थी। वयस्क जादुई ड्रैगन 300 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते थे और छोटे ड्रैगन 150 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते थे। दूसरे शब्दों में एक जादुई ड्रैगन आकार में एक अनुरक्षक जहाज के बराबर होता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैजिक ड्रैगन उन कुछ उच्च स्तरीय राक्षसों में से थे जो उड़ान भरने में सक्षम थे। राक्षस कई प्रकार के थे लेकिन उनमें से ज्यादातर उड़ नहीं सकते थे। 90% से ज्यादा राक्षस जमीन तक ही सीमित थे और कुछ ही आकाश में उड़ सकते थे। जादुई ड्रैगन इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों में से एक थे और उनमें से सबसे खतरनाक भी। जादुई ड्रैगन के विशाल शरीर से धोखा मत खाए, एक बार हवा में उड़ने के बाद यह अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला हो जाता है। एक उच्च स्तरीय राक्षस के मजबूत शरीर के साथ इसके पंजे का एक हल्का सा वार या इसकी पूंछ का एक झटका किसी बड़े युद्धपोत को आसानी से नष्ट कर सकता था, लेकिन ये तो बस हमले के सबसे बुनियादी तरीके थे। मैजिक ड्रैगन का सबसे खतरनाक हमला उसके आग के गोले थे। सिर्फ एक सांस से एक युद्धपोत की मुख्य तोप से भी अधिक विनाशकारी आग का गोला निकल सकता था और एक आग का गोला आसानी से एक युद्धपोत को नष्ट कर सकता था। उच्च स्तरीय राक्षसों के रूप में जादुई ड्रैगन्स का कवच सामान्य राक्षसों की तुलना में बहुत मोटा था, इतना कि युद्धपोत की मुख्य तोप का उन पर प्रहार भी गुदगुदी जैसा लगता था। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक 5,000 से ज्यादा ताकत वाले हमले का सामना न करना पड़े जादुई ड्रैगन पर कोई भी प्रहार इस विशालकाय जानवर की नजर में नहीं आता, क्योंकि वह बहुत हल्का होता था। अपनी जबरदस्त विनाशकारी शक्ति और लगभग अजेय रक्षात्मक शक्ति के साथ जादुई ड्रैगन एक ऐसा नाम बन गया था जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। यहां तक कहा जाता था कि अगर राक्षसों के बीच अचानक 1,000 जादुई ड्रैगन आ जाएं तो आधे आकाश नगर गायब हो जाएंगे। अगर उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो जाए तो आकाश ही राक्षसों से भर जाएगा। शुक्र है कि ऐसे भयानक जीव ज्यादा संख्या में नहीं थे। ज्ञात अभिलेखों के अनुसार पिछले 100 सालों में जादुई ड्रैगन की संख्या कभी भी 500 से ज्यादा नहीं हुई। जब ये पूरी दुनिया में फैले होते तो ये फीनिक्स के पंखों और गैंडे के सींगों जितने दुर्लभ होते। अगर कोई बहुत बदकिस्मत न हो तो जिंदगी भर इनका सामना किए बिना ही गुजर जाता। हालांकि इस बार रॉकी करीना और अन्य लोग असाधारण रूप से बदकिस्मत थे। उन्होंने न केवल दुर्लभ मैजिक ड्रैगन का सामना किया बल्कि एक साथ दर्जनों मैजिक ड्रैगन का भी सामना किया। दर्जनों जादुई ड्रैगन का सामना करने का क्या मतलब था? क्षमा करें, ज्ञात इतिहास में ऐसी कोई पूर्व घटना नहीं थी, इसलिए इसका वर्णन करने के लिए कोई अवधारणा नहीं थी। और दर्जनों जादुई ड्रैगनों द्वारा एक साथ मिलकर एक बड़े आकाश शहर को घेरने का क्या मतलब था? क्षमा करें, लेकिन ये धारणा इतनी काल्पनिक थी कि अत्यंत कल्पनाशील लोगों ने भी इस पर कभी विचार नहीं किया था। फिर भी आज रॉकी और करीना ने सदी में एक बार होने वाले इस तमाशे को देखा। उन्होंने दूर क्षितिज पर दर्जनों जादुई ड्रैगन को विशाल आकाश नगरी के चक्कर लगाते देखा जो अपने विशाल जबड़े खोलकर कानफोड़ू दहाड़ते हुए विशाल आग के गोले उगल रहे थे। ये आग के गोले आकाश नगरी के रक्षात्मक जाल से उल्कापिंडों की तरह टकरा रहे थे और उसे चमकीले रंगों की चमक से जगमगा रहे थे। विशाल स्काई सिटी का रक्षात्मक जाल ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो इतने भयंकर हमले का सामना कर सकती थी। अगर ये थंडरहॉक सिटी या रोज सिटी जैसा कोई छोटा स्काई सिटी होता तो इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। इतनी तेज बौछार में रक्षात्मक जाल तुरंत चकनाचूर हो जाता। लेकिन एक बड़े स्काई सिटी को भी एक या दो मैजिक ड्रैगन के हमले का सामना करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि दर्जनों मैजिक ड्रैगन के भयंकर हमले का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि अभी है, ये केवल कुछ ही क्षणों तक टिक सकता है और निश्चित रूप से अनिश्चित काल तक इसका सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार कुछ ही समय बाद रॉकी और बाकी लोगों ने डिफेंसिव नेट से अनगिनत छोटे काले बिंदु उड़ते हुए देखे। ये काले बिंदु युद्धपोत थे। दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण 100 मीटर से ज्यादा लंबे युद्धपोत रॉकी और उसके साथियों की नजरों में बस बिंदु मात्र रह गए। हालांकि उनके बीच की बारीकियां समझना आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि ये बिंदु जरूर बेहतरीन युद्धपोतों के बेड़े का प्रतिनिधित्व करते होंगे। एक विशाल स्काई सिटी की ताकत को देखते हुए इसका बेड़ा निश्चित रूप से मुख्य रूप से टोही जहाजों से बना नहीं होगा। यहां तक कि बुनियादी जहाज भी कम से कम एस्कॉर्ट जहाज ही होंगे और बेड़े की गुणवत्ता तीसरी पीढ़ी से कम नहीं होगी। नहीं, एक साधारण विशाल स्काई सिटी का बेड़ा भी पूरी तरह से पांचवीं पीढ़ी के युद्धपोतों से बना होगा। बेड़े की संख्या के बारे में तो और भी कम कहना था। दूरी ज्यादा होने के कारण रॉकी और बाकी लोग साफ देख पा रहे थे कि डिफेंसिव नेट से उड़ते काले बिंदु तेजी से 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 को पार कर गए। कुछ ही मिनटों में 1000 से अधिक युद्धपोत रक्षात्मक जाल से बाहर निकल गए। निस्संदेह इस अनाम स्काई सिटी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि बड़े स्काई सिटीज में भी जो 1000 से ज्यादा जहाजों का बेड़ा जुटा सकते थे वे दुर्जेय थे और उन्हें विशालकाय भी कहा जा सकता था। ये स्काई सिटी भी ऐसी ही एक विशालकाय थी। और जब 1000 से अधिक युद्धपोत रक्षात्मक जाल से बाहर निकल आए तो दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के साथ युद्ध तुरंत शुरू हो गया। उस क्षण से आकाश लगातार प्रकाश की चमक से जगमगा रहा था, जो जादुई तोपों से नहीं बल्कि नष्ट होने के बाद हवा में ही विघटित और विस्फोट हो रहे युद्धपोतों से आ रही थी। इसमें कोई मदद नहीं थी, जादुई ड्रैगन की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर सिर्फ एक ही जादुई ड्रैगन होता, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, 1000 युद्धपोतों का बेड़ा उसे छलनी बना सकता था। लेकिन अब दर्जनों जादुई ड्रैगन आसमान में तांडव मचा रहे थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। इस तरह युद्ध शुरू ही हुआ था कि बेड़े को भारी नुकसान हुआ। बैकवर्ड। हालांकि किसी को इन हजारों युद्धपोतों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। यद्यपि युद्ध शुरू होते ही बेड़े का विनाश जारी रहा, 1000 से अधिक युद्धपोतों की भीषण बमबारी के तहत मैजिक ड्रैगन्स हमेशा के लिए अछूते नहीं रह सकते थे। वास्तव में लगभग 10 मिनट की लड़ाई के बाद पहला मैजिक ड्रैगन आसमान से नीचे गिरा दिया गया, उसके तुरंत बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और लड़ाई के दौरान अधिक से अधिक मैजिक ड्रैगन गिराए जाने लगे। ये है कि जब एक और मैजिक ड्रैगन को मार गिराया गया तो रॉकी स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मैजिक ड्रैगन कैसे मर गया। उसकी नजर में वह गंभीर चोटों के कारण भागने की कोशिश कर रहा था और युद्ध क्षेत्र से पहले ही निकल चुका था, लेकिन बिना किसी चेतावनी के वह बीच उड़ान में ही जमीन पर गिर पड़ा। ये शून्य जादू योद्धा है, तभी करीना ने उसके बगल से टिप्पणी की और रॉकी को अचानक एहसास हुआ कि यह वाकई शून्य जादू योद्धाओं का काम हो सकता है, क्योंकि वे युद्ध के मैदान से बहुत दूर थे। सबकी नजरों में सैकड़ों मीटर लंबे युद्धपोत भी बस छोटे छोटे बिंदु थे जो शून्य जादू योद्धाओं को पूरी तरह से अदृश्य बना रहे थे। लेकिन ये सोचकर कि एक शून्य जादुई योद्धा ने जादुई ड्रैगन को मार डाला है, रॉकी को ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगी। आखिरकार वह एक जादुई ड्रैगन ही तो था। इसलिए उसने अपना सिर घुमाकर करीना की तरफ देखा। शून्य जादुई योद्धा, क्या वे जादुई ड्रैगन को मार सकते हैं? हाँ, सिर हिलाते हुए करीना ने निश्चितता के साथ कहा, यदि वे पांचवीं पीढ़ी के शीर्ष विशेष कवच पहने हुए हैं और उनके पास पर्याप्त अनुभव है तो एक शून्य जादू योद्धा के लिए अकेले एक जादू ड्रैगन से लड़ना और उसे मारना पूरी तरह से संभव है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रॉकी ने सिर हिलाया और फिर गहरी सांस लेकर अपनी नजरें युद्ध क्षेत्र की ओर घुमा ली। इस समय युद्ध क्षेत्र गतिरोध के दौर में प्रवेश कर चुका था, जहां एक के बाद एक जादुई ड्रैगन मारे जा रहे थे और बेड़े को भी उतना ही भारी नुकसान हो रहा था। कुछ ही मिनटों की लड़ाई में स्काई सिटी से भेजा गया बेड़ा पहले ही सैकड़ों युद्धपोत खो चुका था। भारी क्षति के बावजूद बेड़े ने धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और ऐसा लग रहा था कि अब समय की ही बात है कि शेष मैजिक ड्रैगन्स को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन उसी समय दूर से एक बार फिर गर्जना की आवाजें आईं, जिसके बाद दूर क्षितिज से उड़ते हुए मैजिक ड्रैगन की एक नई लहर आई और स्काई सिटी की घेराबंदी में शामिल हो गई। हे भगवान, ये जैसे ही मैजिक ड्रैगन्स का एक नया समूह प्रकट हुआ, जिनकी संख्या अभी भी दर्जनों में थी, रॉकी, करीना और आसपास के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से तेज सांस ली। आखिर दुनिया में क्या हो रहा था? क्या आज रात दुनिया के सभी जादुई ड्रैगन इसी स्काई सिटी को घेरने के लिए एकत्रित हो रहे थे? इतनी बड़ी संख्या में जादुई ड्रैगन क्यों प्रकट हुए और उन्होंने स्काई सिटी को क्यों निशाना बनाया, ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब रॉकी और बाकी लोग नहीं दे पाए। उन्हें बस इतना पता था कि जैसे ही जादुई ड्रैगन की दूसरी लहर प्रकट हुई और तुरंत युद्ध के मैदान में शामिल हो गई, उन्होंने स्थिति पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया। जादुई ड्रैगन की दूसरी लहर के युद्ध में शामिल होने के साथ ही विस्फोटों की एक श्रृंखला ने आकाश को जगमगा दिया और अनगिनत युद्धपोत जादुई ड्रैगन के हमले में नष्ट हो गए। कुछ ही मिनटों में 500-600 की संख्या वाला बेड़ा लगभग खत्म हो गया और फिर दर्जनों जादुई ड्रैगन एक साथ विशाल आकाश नगर पर हमला करने लगे। इतने सारे जादुई ड्रैगन एक साथ हमला करने लगे जिससे स्काई सिटी का रक्षात्मक जाल, जो उसके अस्तित्व की कुंजी था, कुछ ही मिनटों तक टिक पाया और फिर टूट गया। इस आखिरी बाधा के हते ही जादुई ड्रैगन तेजी से स्काई सिटी के ऊपर उड़ गए और अपनी इच्छानुसार आग के गोले छोड़ने लगे। पल भर में स्काई सिटी आग की लपटों से धधक उठी और दूर होने के बावजूद रॉकी और बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे वे शहर के निवासियों की चीखें सुन सकते हैं। हालांकि वे एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, फिर भी जादुई ड्रैगन के हमले में 1,00,000 निवासियों के मरने के विचार ने उनके दिलों में एक अवर्णनीय पीड़ा पैदा कर दी। खत्म हो गया ये स्काई सिटी, खत्म हो गई। रक्षात्मक जाल के टूटने के बाद इस विशाल स्काई सिटी का विनाश निश्चित था। यह अभी भी आसमान में तैर रहा होगा, लेकिन शहर का केंद्र सुपर क्रिस्टल नष्ट होते ही स्काई सिटी आसमान से नीचे गिर जाएगा और यह भाग्य तो बस समय की बात थी। दरअसल वो वक्त ज्यादा लंबा नहीं खींचा, 20 मिनट नहीं, शायद सिर्फ 12 मिनट बाद ही कम से कम 1,00,000 निवासियों वाला ये विशाल स्काई सिटी हवा में धीरे धीरे झुकने लगा और फिर सीधे आसमान से नीचे गिर गया। एक स्काई सिटी, 1,00,000 निवासियों वाला एक बड़ा स्काई सिटी दर्जनों मैजिक ड्रैगन की घेराबंदी के तहत नष्ट हो गया। और स्काई सिटी के विनाश के बाद एकत्रित दर्जनों मैजिक ड्रैगन हवा में बिखर गए और प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में उड़ गया। ये तो बुरा हुआ, स्काई सिटी के विनाश का दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि रॉकी और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन जैसे ही मैजिक ड्रैगन तितर बितर हुए, चकित भीड़ अंततः वास्तविकता में वापस आ गई और तुरंत महसूस किया कि कुछ भयानक घटित हो रहा था। विभिन्न दिशाओं में उड़ रहे अनेक जादुई ड्रैगनों में से 3 सीधे अपने स्थान की ओर बढ़ रहे थे। ये पता चलने पर कि बिखरे हुए जादुई ड्रैगन में से 3 उनकी दिशा में उड़ रहे हैं, रॉकी और करीना तथा अन्य लोग तुरंत घबरा गए और 6-0 जादुई योद्धा तुरंत 2 दिशाओं में उड़ गए। करीना ने अपने गार्डों को कोड रोज की ओर उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया, जबकि रॉकी और लिलिया थंडहॉक की ओर बढ़े। इस समय वे अपनी सबसे तेज गति से उड़ रहे थे, यहां तक कि उस समय से भी तेज जब रॉकी ने बैरन बोलिन का सामना किया था या जब करीना ने किलोव का सामना किया था, मानो वे अपने अपने प्रमुख जहाजों पर लौटने के लिए अपनी सारी आदिम शक्ति लगा रहे हों। उतरें, उतरें, जल्दी, शीघ्र। जैसे ही वह थंडहॉक के डेक पर उतरा, रॉकी ने तुरंत चालक दल पर चिल्लाकर कहा कि थंडहॉक को तुरंत नीचे उतारा जाए। उसकी दहाड़ सुनकर चालक दल के सदस्य दंग रह गए, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले वे थंडहॉक के साथ ऊंचाई हासिल करने का प्रयास कर रहे थे, फिर अचानक नीचे उतरना क्यों शुरू हो गया। सौभाग्य से फेली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लगभग तुरंत ही होश में आ गया। फिर उसने जोर से चालक दल से कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिससे थंडहॉक को ऊपर चढ़ने और तेजी से नीचे उतरने से रोका जा सका। इस बीच करीना, जो कोड रोज पर वापस आ गई थी, वही आदेश दे रही थी, पूरे बेड़े को तुरंत ऊपर चढ़ना बंद करने और नीचे उतरने का आदेश दे रही थी। एक विशाल स्काई सिटी को तबाह होते देखकर रॉकी और करीना को एहसास हुआ कि मैजिक ड्रैगन्स कितने भयानक हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे बेड़े को हवा में ही रहने देने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। वे बस यही कर सकते थे कि बेड़े को तुरंत नीचे उतारें, ऊंचाई कम करें और फिर उम्मीद करें कि मैजिक ड्रैगन्स की नज़र इतनी तेज न हो कि उन्हें देख सकें। कुछ ही मिनटों में जो युद्धपोत लगातार ऊपर की ओर जा रहे थे, वे जमीन से मात्र 10 मीटर ऊपर उतर आए और इस सीमा पर पहुंच गए कि वे वास्तव में उतरे बिना ही कितना नीचे जा सकते थे। दुर्भाग्यवश जिस युद्ध क्षेत्र में मैजिक ड्रैगन्स और विशाल स्काई सिटी के बीच संघर्ष हुआ, वह लगभग उस सीमा के अंत में था जिसे हर कोई देख सकता था। इसलिए जब 3 मैजिक ड्रैगन्स उनकी ओर उड़े, तो उन्हें करीब पहुंचने में कुछ समय लगा, जिससे निसंदेह सभी को छिपने का मौका मिल गया। और जब बेड़ा कम ऊंचाई पर उतरा, तो 1,000 से अधिक लोग केबिनों के अंदर छिप गए और उन्हें सख्त आदेश दिया गया कि वे चुप रहें, किसी भी प्रकार का शोर करने से मना किया गया। उसके बाद एक लंबा इंतजार शुरू हुआ। केबिनों में छिपे गार्ड और क्रू ने शायद पहले हुए उस विनाशकारी युद्ध को नहीं देखा होगा, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे जानते थे कि रॉकी और करीना को इतना डराने वाला कोई उच्च स्तरीय राक्षस ही होगा, इसलिए केबिनों में सब चुप रहे। कुछ तो मन ही मन प्रार्थना भी कर रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद किस्मत उन पर थोड़ा साथ दे। सिद्धांततः जादुई ड्रैगन की गति को देखते हुए उन्हें बेड़े के स्थान तक पहुंचने में केवल 15 मिनट लगेंगे, इसलिए जीवन या मृत्यु का फैसला इतने कम समय में ही हो जाएगा। लेकिन शायद अत्यधिक तनाव और भय के कारण ये कुछ ही मिनट पूरे दिन से भी लंबे लग रहे थे। कप्तान, क्या ये पहले ही पारित हो चुका है? केबिन में छिपे हुए अनंत काल के बाद एक गार्ड अब इसे सहन नहीं कर सकता था। भारी मनोवैज्ञानिक दबाव ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया और बोलते समय उसने अपने स्क्वाड लीडर सैंड्रो की ओर देखा। बात मत करो। हालांकि वह भी काफी दबाव और भय में था, फिर भी सैंड्रो दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत शांत रहने में कामयाब रहा तथा बोलने वाले गार्ड को उसने तीखी नजरों से घूरा, जिससे वह तुरंत चुप हो गया। इसी समय केबिन के अंदर अचानक एक जोरदार झटका आया, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग लड़खड़ा गए और गिरने लगे, मानो वे किसी भयंकर तूफान में हों। जादुई ड्रैगन, वे आ गए थे। हालांकि केबिन में बैठे लोगों को ये काफी लंबा समय लग रहा था, लेकिन ये केवल उनकी धारणा थी। वास्तव में कुछ ही मिनट बीते थे और दूर से उड़ते हुए मैजिक ड्रैगन्स बेड़े के ऊपर हवाई क्षेत्र में पहुंच गए थे। उसी क्षण तीन विशालकाय जादुई ड्रैगन बेड़े के ऊपर मंडरा रहे थे और गुजरते हुए अपने पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। दो आगे और एक पीछे था, दोनों की लंबाई 300 मीटर से ज्यादा थी। उनके विशाल पंख आसमान को ढंक रहे थे और हर फड़फड़ाहट से हवा के झोंके आ रहे थे। इन तीनों मैजिक ड्रैगन्स की उड़ान की ऊंचाई विशेष रूप से अधिक नहीं थी, केवल जमीन से लगभग 300 से 500 मीटर ऊपर थी और वे विशेष रूप से तेज नहीं बल्कि लगभग आराम से उड़ रहे थे। इस कारण जब ये तीन विशाल जीव धीरे धीरे बेड़े के ऊपर से उड़े तो उनके पंखों से उठे तूफान ने तुरंत नीचे के जहाजों को प्रभावित किया, जिससे कम ऊंचाई पर लटके कई युद्धपोतों को झटका लगा। ये बुरी खबर थी। इस समय बेड़ा जमीन से केवल कुछ दर्जन मीटर ऊपर था और तेज हवा चल रही थी, जिससे कुछ युद्धपोतों को स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, यहां तक कि आपातकालीन लैंडिंग के संकेत भी दिखाई दिए। मत उतरो, मत उतरो, कृपया इस समय मत उतरो। यहां तक कि केबिन के अंदर बैठे कुछ अनुभवी चालक दल के सदस्यों ने भी जैसे ही महसूस किया कि जहाज डगमगाने लगा है, समझ गए कि क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपने दिल में लगातार प्रार्थना करने के कि इस समय कोई युद्धपोत न उतरे। स्वाभाविक रूप से हवा में कई दर्जन मीटर की ऊंचाई से गिरने पर युद्धपोत को बहुत अधिक क्षति नहीं होगी, लेकिन उत्पन्न होने वाला शोर मैजिक ड्रैगन्स का ध्यान आकर्षित कर सकता है और इसका अर्थ होगा उनका अंत। सौभाग्य से इस बार ऐसा लग रहा था कि भाग्य ने सचमुच उन पर कृपा दृष्टि डाली थी, क्योंकि तूफान के बीच कुछ टोही जहाज जो अत्यधिक खतरे में दिखाई दे रहे थे अपनी स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहे और बेड़े के ऊपर से उड़ रहे तीन जादुई ड्रैगन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ क्षण बीतने के बाद वे उड़ गए। हम सुरक्षित हैं, रॉकी, जो थंडरहॉक के कैप्टन के केबिन के अंदर छिपा हुआ था, व्यापक दृश्य क्षेत्र के कारण सबसे पहले मैजिक ड्रैगन्स को दूर उड़ते हुए देख पाया और जब विशालकाय जीव धीरे धीरे दूर चले गए तभी उसने राहत की लंबी सांस ली। चालक दल को बताएं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन किसी को भी तेज आवाज नहीं करनी चाहिए। राहत की सांस लेने के बाद रॉकी ने फेली को निर्देश दिया जो उसके बगल में था, फिर वह लिलिया के साथ कप्तान के केबिन से बाहर निकला और थंडरहॉक के रक्षात्मक जाल से बाहर निकल गया। जैसे ही दोनों रक्षात्मक जाल से बाहर निकले, करीना पहले से ही अपने गार्ड के साथ हवा में इंतजार कर रही थी। स्पष्टतः इस अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण उनकी पिछली योजनाएं पूरी तरह से बाधित हो गई थी और उन्हें तुरंत निर्णय लेना पड़ा कि आगे क्या करना है। इससे पहले उन्होंने इत्मीनान से ट्रेसलेस बैटलफील्ड का चक्कर लगाकर अपने स्काई सिटी वापस उड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब लग रहा था कि वे इतना इत्मीनान नहीं कर सकते। दर्जनों जादुई ड्रैगन अभी अभी तितर बितर हुए थे और अगर वे ट्रेसलेस बैटलफील्ड का चक्कर लगाते रहे तो उनका फिर से उनसे सामना हो सकता था, भले ही संभावना सिर्फ 1% ही क्यों न हो, वे इतने गंभीर परिणाम नहीं झेल सकते थे। और यह मत भूलिए कि थंडरहॉक सिटी और रोज सिटी ट्रेसलेस बैटलफील्ड के पास ही स्थित थे। अगर बिखरे हुए मैजिक ड्रैगन्स गलती से इन दो आकाशीय शहरों में घुस गए तो रॉकी और करीना के लिए यह एक असहनीय आपदा होगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपने शहरों में लौटना होगा और इस भयानक जगह को छोड़ना होगा। चलो ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र से होकर चलें, अभी यही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। सहमत हूँ, ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में जादुई ऊर्जा तूफान है और जादुई ड्रैगन इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ देर की बातचीत के बाद रॉकी और लिलिया ने बेड़े को ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में वापस ले जाने का फैसला किया। युद्ध क्षेत्र से होकर लौटना सबसे तेज रास्ता था और उसमें मौजूद जादुई ऊर्जा के तूफानों के कारण जादुई ड्रैगन निश्चित रूप से अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, जिससे ये रास्ता अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित था। ये निर्णय लेने के बाद दोनों पक्ष अपने अपने प्रमुख जहाजों पर लौट आए तथा बेड़े को वापस मोड़कर ट्रेसलेस युद्ध क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस समय जब रॉकी और लिलिया डेक पर वापस आए ही थे, फेली, जो उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थी, ने बोलना भी शुरू नहीं किया था कि अचानक उसने आश्चर्य से अपनी आंखें खोल दी और जोर से उनके पीछे की ओर इशारा किया। क्या गलत? फेली के अजीब भाव को देखकर रॉकी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और फिर दूर से एक आकृति को तेजी से आते देखा। पलक झपकते ही कहीं से प्रकट हुई वह आकृति अब थंडरहॉक के ऊपर थी और उसके बाद वह डेक पर जोर से गिर गई। जैसे ही उन्होंने उस आकृति को हवा से डेक पर गिरते देखा, रॉकी और अन्य लोग बिना किसी आश्चर्य के दौड़े और पाया कि वह व्यक्ति एक शून्य जादू योद्धा था। जल्दी जाकर स्काई अलायंस को सूचित करो, ट्यूलिप सिटी पर कब्जा कर लिया गया है। जब रॉकी और अन्य लोग अचानक प्रकट हुए शून्य जादू योद्धा के पास पहुंचे और उसे डेक से ऊपर आने में मदद की, तो गंभीर रूप से घायल शून्य जादू कवच बेहोश होने से पहले कमजोर आवाज में बोलने में कामयाब रहा। आकाश युग, वर्ष 117 अक्टूबर में एक विश्व चौंकाने वाली घटना घटी। पृथ्वी पर बचे हुए अंतिम तीन शहरों में से एक ट्यूलिप सिटी गिर गया था। आकाश युग, वर्ष 117 अक्टूबर एक चौंकाने वाली घटना घटी जिसने दुनिया को चौंका दिया। ट्यूलिप सिटी जमीन पर अंतिम तीन शहरों में से एक गिर गया। आज राक्षसों द्वारा धरती पर कब्जा करने के 100 साल बाद भी केवल तीन जगहों को ही शहर कहा जा सकता है, गैसिया शहर, ट्यूलिप शहर और माउंट वानशान शहर। ये शहर एक सदी तक अडिग रहे, धरती पर मानवता के आखिरी गढ़ बन गए और सामूहिक रूप से तीन पवित्र शहरों के रूप में पूजनीय रहे। लेकिन आकाश युग वर्ष 117 के अक्टूबर में तीन पवित्र शहरों में से एक ट्यूलिप सिटी गिर गया। लोगों के लिए यह अकल्पनीय था क्योंकि राक्षसों द्वारा 100 वर्षों तक भूमि पर कब्जा करने के बाद इन तीन शहरों का अस्तित्व भाग्य के कारण नहीं बल्कि उनकी अविनाशी शक्ति के कारण था। गैसिया शहर, जिसकी आबादी कई लाख है, करीना महान दलदल के केंद्र में स्थित है। चारों ओर से विशाल दलदलों से घिरा हुआ है जिससे राक्षसों के लिए इसे पार करना असंभव है, और भले ही उच्च स्तरीय राक्षस दलदल के ऊपर से उड़ते हों, लगभग 10,000 युद्धपोत और हजारों शून्य जादू योद्धा उन्हें मारने के लिए वहां मौजूद हैं। माउंट वानशान शहर, जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट वानशान के ऊपर स्थित है। पूरा शहर बादलों के बीच बसा हुआ है जिससे ये राक्षसों के लिए अजेय है। तीनों शहरों में सबसे बड़ी आबादी वाला ट्यूलिप सिटी, जिसकी आबादी लगभग 10 लाख थी, क्लिफ कैनियन में स्थित था जो सुरक्षा के लिए पहाड़ी चट्टानों पर निर्भर था और 100 मील गहरी घाटी के सामने एक अवरोधक के रूप में था जिसने एक शताब्दी तक राक्षसों को शहर में घुसने से रोका था। तीनों शहर न केवल शक्तिशाली थे बल्कि विशिष्ट लाभप्रद स्थानों पर स्थित थे जिसके कारण वे 100 वर्षों तक टिके रहे। फिर भी अब ट्यूलिप सिटी में घुसपैठ हो चुकी थी। ट्यूलिप सिटी का पतन सिर्फ एक भयानक खबर नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। जब तक ये तीन शहर बचे रहे, इसका मतलब था कि जमीन पूरी तरह से नहीं गिरी थी। जमीन पर अभी भी लोगों के गढ़ थे और आसमान में बैठे लोग इन शहरों के साथ मिलकर कभी भी जमीन पर जवाबी हमला कर सकते थे। इसलिए भूमि पर स्थित ये तीन शहर न केवल प्रतीकात्मक थे बल्कि सामरिक महत्व के भी थे जो सभी के लिए अपूरणीय थे। इतने महत्वपूर्ण होने के कारण कई वर्षों तक आकाश और धरती दोनों जगह सभी ने इन शहरों की कड़ी मेहनत से देखभाल की थी और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकाश से तीन महागठबंधनों ने दूसरा जवाबी हमला भी छेड़ दिया था। इससे पता चलता है कि ये शहर कितने महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब ट्यूलिप सिटी का पतन हो चुका था, एक ऐसी घटना जिसने न केवल पूरे विश्व को प्रभावित किया बल्कि इसके बाद तीसरे जवाबी युद्ध को भी जन्म दिया। बेशक ये सब बाद की बातें हैं क्योंकि रॉकी और बाकियों के अलावा आसमान में अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि ट्यूलिप सिटी गिर गई है। यहां तक कि रॉकी और उसके साथियों को भी इस खबर पर शक था। रॉकी को ट्यूलिप सिटी के बारे में जरूर पता था लेकिन बाकियों की तरह उसे भी इसके पतन की खबर पर शक था। इसीलिए उसने बेहोश पड़े वॉर्ड मैजिक वॉरियर को तुरंत अपने केबिन में ले जाकर करीना और ऑटन समेत सभी को एक बार फिर इकट्ठा किया। ये कहना जरूरी है कि वाइल्ड हॉर्स एयर पायरेट ग्रुप को खत्म करने का अभियान अप्रत्याशित मोड़ों से भरा था। एयर पायरेट ग्रुप का सफाया अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उनके खात्मे के बाद से एक के बाद एक अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला सामने आई। सबसे पहले एक जादुई ड्रैगन द्वारा एक शहर को नष्ट करने का दुर्लभ दृश्य देखा गया, उसके बाद एक गंभीर रूप से घायल शून्य जादुई योद्धा का अचानक प्रकट होना जिसने तब सभी को बताया कि ट्यूलिप शहर, जो 100 वर्षों से भूमि पर अजेय खड़ा था, वास्तव में गिर गया था। इन सभी अप्रत्याशित घटनाओं ने रॉकी और अन्य लोगों को कुछ हद तक असमंजस में डाल दिया। यह आदमी वास्तव में कौन है? रॉकी ने जिन लोगों को बुलाया था वे सभी उसके केबिन में इकट्ठा हो गए और बिस्तर पर लेटे अजनबी को देखने लगे। वह कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण तो वह संदेश है जो वह लेकर आया है। ट्यूलिप सिटी पर कब्जा कर लिया गया है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? तुम मजाक कर रहे हो है ना, ट्यूलिप सिटी कैसे गिर सकती है? बिल्कुल, यह आदमी अपनी गंभीर चोटों के कारण भ्रमित हो रहा होगा। रोगी के बिस्तर के चारों ओर खड़े होकर सभी लोग एक एक करके बोल रहे थे तथा उन्हें उस व्यक्ति की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, यह सच हो सकता है। हालांकि इस समय ऑटन की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया जिससे वे अपनी निगाहें उसकी ओर मोड़ने को प्रेरित हुए। अध्यापक, ऑटन की ओर देखते हुए रॉकी ने पाया कि उसके हाथ में शून्य जादू कवच का एक टुकड़ा था और वह उसका बारीकी से अध्ययन करने में तल्लीन था। उसके हाथ में जो शून्य जादुई कवच था वह असल में उस अजनबी का कवच था। जब वह आदमी बेहोश हो गया और उसे केबिन में ले जाया गया तो रॉकी ने अपने आदमियों को उसकी चोटों का इलाज करने के लिए कवच उतारने का आदेश दिया। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का कवच है? अपनी ओर देख रही भीड़ पर नजर डालते हुए ऑटन ने अपने हाथ में कवच की ओर इशारा किया और पूछा, ये पांचवीं पीढ़ी का कवच होना चाहिए, है ना? मेज पर रखे कवच के पूरे सेट पर एक नजर डालने के बाद रॉकी बोला, हालांकि वह कवच के विशिष्ट मॉडल को नहीं पहचान पाया, लेकिन वह बता सकता था कि यह निश्चित रूप से पांचवीं पीढ़ी का कवच था। आप आधे ही सही हैं, ऑटन ने अपना सिर हिलाया और उसे सही किया, ये वास्तव में पांचवीं पीढ़ी का कवच है, लेकिन ये कोई साधारण पांचवीं पीढ़ी का कवच नहीं है। ये पांचवीं पीढ़ी का विशेष कवच है और इसे विशेष रूप से बनाया गया है। क्या यह असंभव है? उसके शब्द सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए, फिर जल्दी से ऑटन के पास पहुंचे और उसके हाथों में मौजूद कवच पर ध्यान केंद्रित किया। पांचवीं पीढ़ी का कवच उस समय का सबसे उन्नत कवच था और उसमें मौजूद विशेष कवच तो और भी बेहतरीन था। इसे सभी कवचों में सबसे मजबूत कवच कहा जा सकता था। हालांकि ये कवच और भी ज्यादा मजबूत लग रहा था क्योंकि यह खास तौर पर बनाया गया था। कस्टम मेड कवच पांचवीं पीढ़ी के कवच की एक अनूठी तकनीक थी, जिसका अर्थ था कि इसे उपयोगकर्ता के शारीरिक कार्यों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। इस प्रकार के कवच का उपयोग केवल एक विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकता था और इसका निर्माण बेहद महंगा था। लेकिन चूंकि इसे उपयोगकर्ता की विशिष्टताओं और जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था, इसलिए इसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, अक्सर स्पेशल आर्मर से भी कहीं ज्यादा। ये शीर्ष कवचों में सर्वश्रेष्ठ था। रॉकी और करीना ने इस तरह के कस्टम मेड कवच के बारे में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। यह अजीब नहीं था क्योंकि कस्टम मेड कवच का स्तर स्पेशल कवच से ऊंचा था और सिर्फ पांचवीं पीढ़ी के कवच ही कस्टमाइज किए जा सकते थे। वे इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा सकते थे। इसलिए जब सभी को पता चला कि यह साधारण सा दिखने वाला कवच वास्तव में विशेष रूप से निर्मित कवच था, तो वे आश्चर्यचकित होकर इसे देखने के लिए वहां आ गए। मास्टर ऑटन, आपको वास्तव में किसी भी चीज के बारे में अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। जैसे ही रॉकी और अन्य लोग इस शीर्ष स्तरीय कवच से मोहित हुए, शून्य जादू योद्धा, जो बिस्तर पर बेहोश था, अचानक बोल पड़ा। पीछे से आए आवाज ने सभी को चौंका दिया, जिससे वे तुरंत पीछे मुड़े और पाया कि बिस्तर पर लेटा हुआ शून्य जादू योद्धा पहले ही उठ बैठा था। अब जागे हुए शून्य जादू योद्धा का सामना करते हुए ऑटन ने अपने हाथों से कवच को एक तरफ रख दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, कस्टम निर्मित कवच की तकनीक कुछ ऐसी थी जिसमें मैं शामिल था। स्वाभाविक रूप से आप इसे मुझसे नहीं छिपा सकते, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कस्टम निर्मित कवच के इस सेट को पवित्र नाइट कवच कहा जाता है ना? पवित्र शूरवीर कवच। ऑटन की बात सुनकर रॉकी और करीना एक पल के लिए चौंक गए क्योंकि नाम उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, सबके मन में एक ही नाम उभर आया, होली नाइट विल्टन। जैसे ही उन्होंने नाम सोचा, सबकी नजरें बिस्तर पर लेटे शून्य जादुई योद्धा पर टिक गईं और उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति प्रसिद्ध पवित्र योद्धा हो सकता है? भूतकाल और वर्तमान काल में राक्षसों के विरुद्ध संघर्ष में अनेक नायक पैदा हुए हैं। पवित्र नाइट विल्टन एक नायक है। विल्टन आज 50 साल का भी नहीं हुआ है। उसकी शक्ल सूरत और कदकाठी साधारण है। अगर उसने शून्य जादुई कवच ना पहना होता तो वह किसी साधारण इंसान से अलग नहीं लगता। फिर भी ये साधारण इंसान किसी महापुरुष जैसा है। विल्टन के कारनामों की कहानियां कई सालों से आसमान में घूम रही हैं। कहा जाता है कि वह जन्म से एक आम इंसान था, फिर भी जन्मजात शून्य जादुई योद्धा था। उसने 15 साल की उम्र में अपना पहला कवच प्राप्त किया, जल्द ही अपनी अलग पहचान बनाने लगा और दूसरे जवाबी हमले के युद्ध में अपना नाम कमाया। उस युद्ध में विल्टन ने अंगिनत सामान्य राक्षसों को मार गिराया और यहां तक कि अकेले ही 13 उच्च स्तरीय राक्षसों का वध करने में भी सक्षम रहा। इस उपलब्धि ने उसे पूरे युद्ध में सबसे अधिक उच्च स्तरीय राक्षसों को मारने वाला शून्य जादुई योद्धा बना दिया और इस प्रकार वह दूसरे पलटवार का सच्चा नायक बन गया। युद्ध नायक बनने के बावजूद विल्टन अपनी शानदार विरासत को गढ़ने से नहीं रुके। उनके कार्यों की गिनती करना मुश्किल है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक वह था जब उन्होंने अपने शून्य जादू दस्ते का नेतृत्व करते हुए एक पूरे गांव की आबादी को दूसरी जगह बसाने में मदद की, एक अद्भुत उपलब्धि। इस स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा होने में आधा महीना लगा। ये पूरी तरह से जमीन पर था, 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, स्काई सिटी से कोई सुरक्षा नहीं थी, युद्धपोत का समर्थन नहीं था, केवल विल्टन और उनके शून्य जादू दस्ते के साथ। इस आधे महीने के दौरान उन्होंने रास्ते में आने वाले हर राक्षस को मार गिराते हुए ग्रामीणों की रक्षा की, कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा राक्षसों का वध किया और अंततः ग्रामीणों को गैसिया शहर तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। गैसिया शहर पहुंचने पर उनके द्वारा पहुंचाए गए किसी भी ग्रामीण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस कृत्य से विल्टन को पवित्र नाइट का नाम मिला और उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। इतनी प्रसिद्ध हस्ती होने के नाते रॉकी और करीना ने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना होगा। वजह साफ थी, क्योंकि पवित्र शूरवीर विल्टन के कारनामों के बारे में किताबों में लिखा हुआ था। यहां तक कि जिन लोगों ने उसे कभी देखा भी नहीं था, उन्होंने भी उसके कारनामों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसलिए जब सभी को पता चला कि उनके सामने गंभीर रूप से घायल शून्य जादू योद्धा कोई और नहीं बल्कि पवित्र नाइट विल्टन था, तो वे सभी अचंभित रह गए। एक क्षण के लिए विल्टन के सामने सभी लोग असहाय हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। सभी लोग, मुझे आशा है कि आप मुझे तुरंत स्काई अलायंस में भेज देंगे। और जब रॉकी और अन्य लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो विल्टन ने सीधे बोल दिया, ट्यूलिप सिटी में घुसपैठ हो गई है और यह जानकारी स्काई अलायंस तक जल्द से जल्द पहुंचाई जानी चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से मुझे अलायंस के हवाई क्षेत्र में ले जाएंगे। जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको जरूर बहुत बड़ा इनाम दूंगा। यह विल्टन की बातें सुनकर रॉकी और करीना ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये सच हो सकता है कि ट्यूलिप सिटी, जो 100 साल से अखंड खड़ी थी, सचमुच गिर गई हो? अगर यह खबर किसी और से आती तो रॉकी और बाकी लोग शायद पहले की तरह ही संशय में होते और इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर ये शब्द खुद होली नाइट विल्टन से आते तो सब कुछ बदल जाता। इसलिए बाद में सभी ने सर्वसम्मति से अपनी निगाहें एक ही दिशा में घुमाई, ऑटन की ओर। विल्टन और ऑटन दोनों ही महान व्यक्तित्व थे और यह स्पष्ट था कि वे एक दूसरे को जानते थे। कुछ मामलों को ऑटन के लिए सुलझाना ज्यादा आसान था। इस समय ऑटन पहले ही आगे बढ़कर विल्टन के सामने आ चुका था। विल्टन, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम स्काई सिटी लौटने की प्रक्रिया में हैं। अगर हम तुम्हें स्काई अलायंस में भेजना भी चाहें तो हमें पहले स्काई सिटी वापस जाना होगा। ऐसा ही है, फिर तो मुझे तुम सबको परेशान करना पड़ेगा। ऑटन की बातें सुनकर विल्टन अंततः शांत हो गया। हालांकि ऑटन ने पूछना जारी रखा, विल्टन, स्काई सिटी जिसे मैजिक ड्रैगन ने नष्ट कर दिया था, वह आपका शहर था, है ना? हाँ, जादुई ड्रैगन द्वारा नष्ट किए गए स्काई सिटी का उल्लेख करते ही विल्टन के चेहरे पर एक हताश भाव आ गया, जो स्पष्ट रूप से उसकी परेशानी को दर्शाता था। हमारे पास अभी भी समय है, हमें विस्तार से बताइए कि क्या हो रहा है। एक कुर्सी लेकर आवधु उसके सामने बैठ गया और बोलने लगा। जाहिर है कि वह अभी जो कुछ हुआ था उसमें तथा जिन विषयों पर वह बात कर रहा था उनमें बहुत रुचि ले रहा था। ये शब्द सुनकर विल्टन ने ऑटन की ओर देखा, फिर रॉकी और अन्य लोगों की ओर देखा और तुरंत ही सारी घटनाओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। जमीन पर स्थित तीन शहरों का आकाश में स्थित तीन महान गठबंधनों के साथ घनिष्ठ संबंध था। तीनों महान गठबंधनों में से प्रत्येक एक शहर के सीधे संपर्क में था। विशेष रूप से आकाशीय गठबंधन ट्यूलिप शहर की सहायता के लिए जिम्मेदार था। 3 दिन पहले ट्यूलिप सिटी और स्काई अलायंस के बीच अचानक सारा संचार टूट गया, जिससे स्काई अलायंस को बुरा लगा। उन्होंने तुरंत स्काई सिटी को, जहां विल्टन था और जो अभी अभी नष्ट हुआ था, ट्यूलिप सिटी की स्थिति का जायजा लेने और जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। हालांकि जब विल्टन क्लिफ कैनियन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ट्यूलिप सिटी, जिसका संपर्क केवल 3 दिनों से टूटा था, पहले ही राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था। इस घटनाक्रम ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बड़ी संख्या में जादुई ड्रैगन अचानक प्रकट हुए और स्काई सिटी पर भीषण हमला बोल दिया। उनके हमले के प्रहार से बचने के लिए स्काई सिटी, जहां विल्टन था, तुरंत ट्यूलिप सिटी के आसपास से हट गया, हमलावरों को चकमा देने की उम्मीद में, लेकिन यह नामुमकिन साबित हुआ। दर्जनों मैजिक ड्रैगन्स ने स्काई सिटी का लगातार पीछा किया और उस पर हमला किया। पूरे दिन और रात तक उसका पीछा करते रहे, जब तक कि स्काई सिटी के पास उनसे युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। युद्ध के दौरान विल्टन ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया, जो किसी और में नहीं थी, और अकेले ही 3 जादुई ड्रैगन को मार गिराया। दुर्भाग्य से जादुई ड्रैगन बहुत ज्यादा थे। वह अपनी ताकत के बल पर जादुई ड्रैगन से मुकाबला कर सकता था, लेकिन बाकी शून्य जादुई योद्धा और साथ ही बेड़ा ड्रैगन का सामना नहीं कर सके। इसके बाद जो हुआ उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रॉकी और अन्य लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। स्काई सिटी नष्ट हो गई, बेड़ा और सभी शून्य जादू योद्धा युद्ध में मारे गए, केवल विल्टन ही बचा, जो मुश्किल से थंडहॉक तक बच पाया। विल्टन ने कुछ ही शब्दों में वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए पूरी घटना का सारांश प्रस्तुत कर दिया, और जबकि मामला सीधा सादा था, बिना किसी घुमाव फिराव के इसे सुनने वाला हर व्यक्ति हैरान रह गया। लोहे की तरह मजबूत और रणनीतिक रूप से अभेद्य स्थिति में स्थित ट्यूलिप सिटी पर इस तरह से भ्रामक तरीके से कब्जा कर लिया गया, ये कैसे संभव हो सकता है? वहां मौजूद हर कोई जानता था कि ट्यूलिप सिटी के पतन का क्या मतलब था। इसका मतलब न सिर्फ जमीन पर एक शहर कम होना था, बल्कि इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह थी कि ट्यूलिप सिटी 100 साल तक जमीन पर बिना किसी रुकावट के खड़ी रही थी, फिर भी अब कुछ ही दिनों में बेवजह रह गई। ये निश्चित रूप से इस बात का संकेत था कि राक्षस किसी की कल्पना से परे कोई गतिविधि कर रहे थे। ये परिवर्तन संभवतः सभी को प्रभावित कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेल्श इस संदेश को स्काई अलायंस तक पहुंचाने के लिए इतने उत्सुक थे। मामला वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। वेल्श, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। स्काई सिटी लौटने के बाद हम तुम्हें स्काई अलायंस से जल्द संपर्क करने में मदद करेंगे, विल्टन की बात खत्म होने के बाद ऑटन ने उससे कहा। फिर उसने रॉकी को देखा और सब उसके पीछे केबिन से बाहर आ गए। अध्यापक, केबिन से निकलकर डेक पर वापस आकर रॉकी और करीना दोनों ने ऑटन की ओर देखा और समझ गए कि वह उनसे कुछ कहना चाहता है। आप दोनों को क्या लगता है इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? ऑटन के अजीबोगरीब व्यवहार के बावजूद वह मुश्किल समय में निर्णायक साबित हुए। उन्होंने रॉकी और करीना के लिए कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उनकी राय ली। बेशक हमें विल्टन को स्काई अलायंस के हवाले करना होगा। ट्यूलिप सिटी का पतन बहुत गंभीर मामला है, हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, न ही इसमें देरी कर सकते हैं। इस प्रश्न पर रॉकी ने तुरंत अपना उत्तर दिया, जो स्वाभाविक रूप से विल्टन की मदद करने के लिए था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी बात खत्म होते ही करीना उसके पास से बोली, माफ़ कीजिए, मैं इस मामले में शामिल नहीं होंगी।